نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دار قرآن 2021 DQ 21. آج ہم اس میں سے پارا نمبر 15 کریں گے, 15th پارا, اور ہر پارے کا نام ایک بڑا ہی اہم نام ہوتا ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس پارے میں کیا پڑھنے والے ہیں. تو اس پارے کا نام ہے سبحان, پاک. اتنا کچھ ہے اس پارے میں بھی باقی پاروں کی طرح کہ واقعی میں تو اس وقت اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہوئے اللہ کو کہتی ہوں پھر اللہ جو بھی ہے وہ تو بتا دے. ہیں جیسے انا علینا جمعہ وبیانا ثم انا علینا بیانا, اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالتا ہے, اللہ ہی زبان پہ لاتا ہے. تو اسی سے دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو سبحان الذی سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ببرکت ذات وہی ہے سبحان, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پاکیوں کو بیان کرنے کی توفیق دے رہا ہے اس وقت قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے کی صورت میں. دور قرآن کا موضوع القلب الباحث عن الہدایہ, اس پارے میں اس کا اتمام حجت ہونے والا ہے. مشرکین مکہ نے بہت کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا, ہدایت کی باتیں, اچھا یہ کر دیں وہ کر دیں, اور یہ وہی دور ہے جبکہ واقعی چاروں طرف موجزے کی باتیں تھی. آپ کو اس پارے میں اتنا دو ٹوک انداز ملے گا کہ ماننا تو مانو, نہیں مانتے تو بھاگ جاؤ. یقین کریں, ابھی بھی میں دوبارہ آتے ہوئے جب رستے میں سن رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تو ہم پہ نہ کوئی وقت ایسا لے آنا کہ اللہ ہمیں یہ کہہ دے کہ اب میں اور کچھ نہیں تمہیں دکھا سکتا. اب دکھا تو سکتا ہوں پر میں دکھاؤں گا نہیں, کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہونا. تو مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو سننے ماننے کے باوجود بھی جب نخرے کیے, اور جس کو کہہ لیا جائے کہ دل میں طلب نہ ہو تو پھر نخرے سوچتے ہیں. کچھ لوگ بھی ہدایت کے معاملے میں اتنے ہی بے راہ رو قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے اور وہ ہدایت کی بات کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کو بہت بھرپور طریقے سے انداز دکھے گا اتمام حجت کا کہ اب ہو گئی جو ہونی تھی. اور یہاں ایک پہلا جم آج کے اس بارے کا لکھ لیجئے اور اس کو پانی کی طرح سے بہا دیجئے, القلب الباخسو عن الہدایہ کے طور پہ, اور وہ یہ ہے کہ ہدایت نئے چاند کی طرح ہوتی ہے, ہر ایک کو نظر نہیں آتی, صرف اس کو دکھتی ہے جو ہدایت کی طلب رکھ کے بیٹھا ہو, آپ لوگوں کی طرح القلب الباحث عن الہدایہ. اور پھر ایک خاص رخ سے دیکھنے پہ نظر آتی ہے, اور وہ رخ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول کی صورت میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے. اس کے علاوہ ہدایت نظر نہیں آتی. بہت کچھ پڑھیں گے اس بارے میں ہدایت سے متعلق بھی. پھر اگر اس پارے کے مرکزی خیال پہ چلیں تو وہ بھی ایک سمندر ہے, اور وہ کیا ہے؟ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. ذرا سا اس کو فوکس ہو کے ترجمہ سنیے کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس وقت کہیں آپ ساری تیاریاں اور لاسٹ مومنٹ بھاگ دوڑ میں نہ بیٹھے ہوں اور یہ نکل گیا تو پھر باقی تو پتہ نہیں کہاں سے ہمیں کتنا کو ملے گا. ترجمہ سنیے گا, ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب کہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے, نہ ممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں, اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. تو آج کے پارے کا ٹاپک ہے ارتباط القلب فی زمن الضیقات, یا دعات سے پڑھیں گے تو ضیقات. یہ کیا ہوتا ہے؟ تنگی کے وقت دل کا تھم جانا. کوئی مشکل آ گئی, پریشانی آ گئی, تکلیف آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تھام کے رکھنا ہے. یہ ہے ربطنا علی قلوبہم, इर्तबात। हकीकत यह है कि हम इन अपनी जिंदगी पे गौर करके देखें तो हमें दो किस्म के लोग दिखते हैं। एक वो हैं जो हर वक्त ही परेशान रहते हैं, हलू, हलू का लफ्ज़ पढ़ेंगे तीसरे पारे में, एंग्जाइटी को कहते हैं अरबिक में। और कुछ हैं कि वो बड़ी से बड़ी चीज के वक्त भी मुतमईन है। तो आज हम इस पूरे पारे में से इर्तबात देखेंगे। पहला ही पारा, पहला ही वाक्या जो इस वकायत में आपके सामने अस्हाबे कहफ का है, लेकिन हम इसको जाकर इंशाल्लाह आगे जाकर लेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। लेकिन बात यह है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को संभाल के रखें, पहले से हर मुश्किल के आने के लिए जहनी तौर पे तैयार होकर बैठें तो घबराएंगे नहीं। और हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से एक इंसान अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को जब सीधा कर लेता है, जब अकीदा दुरुस्त हो जाता है, तो फिर इर्तबात होने लगता है। और ये अगर आपके अंदर आ गया तो ये इस बात की खबर है कि आप हकीकत में मोमिन हैं। रबत अल्लाहु अला कल्बी अरबी में कहते हैं, अल्लाह ने इसके दिल को कुव्वत और अजीमत दे दी। काम बड़ा मुश्किल था, जान जोखों का काम था। अगर थोड़ी सीधर ही बात कर लें तो फिर वहां इतनी नहीं करनी पड़ेगी। असाबे कहफ का किस्सा आज इस बारे में आने वाला है, कैसे वक्त के बदलते हुए माहौल में से उन्होंने अपने आप को इस्तकामत की जमीन पर खड़ा किया और अल्लाह ताला ने इनका जो तारुफ कराया फितरियतुन से कराया, जो फतुन की जमा होती है, जमा किल्लत है, तकरीबन 10 से 20 के बीच के अंदर होता है या 10 से कम पे भी रहता है। 8 से 9 किस्म के लोग थे और फतन की उम्र तकरीबन 20 से नीचे की होती है। बिल्कुल नौखेज नौजवान कह लीजिए कि जब मसलें भी भीग रही होती हैं, जिनकी उठती हुई जवानियां भी शायद तूफानों से आशना नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ईमान की वो दौलत दी, इतना जरी बना दिया कि वो ये देखते हुए कि वक्त की हुकूमत इन्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो बुत परस्ती के मुकाबले में तौहीद को अपने लिए मौत समझते हैं। लिखिए, बुत परस्ती के मुकाबले में तौहीद को अपने लिए मौत समझते हैं। लेकिन जवान बच्चे चूंकि मुफादात के बोझ तले दबे हुए नहीं होते और मसलियत परस्ती इनका शुआर नहीं होता, ये भी बात लिख लीजिए। हिदायत को कबूल करने की असल उम्र जो है ना, ये जवानी की है। बुढ़ापे में एक तो कवा कमजोर हो जाते हैं, कुव्वतें नहीं रहती, मसलियत परस्ती हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि नबी सल्लम पर ईमान लाने वालों में अक्सर जवान थे। बूढ़े लोग मसलियत पसंद होते हैं, तभी तो अल्लामा इकबाल कह गए ना कि जब जवानों में अपनी रूह पैदा होती है तो उनको अपनी मंजिल ऊपर आसमानों पे दिखती है, और जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। तो जवान की एक अपनी कुव्वत होती है। जवानों को जब कोई बात बस समझ आ जाए, उसके बाद ना वो किसी से डरते हैं, ना वो किसी से कोई बात करते हैं। और यही वो वक्त होता है जिसको हम असल में शैतान के पीछे और दजल में डालकर इस दुनिया के धोखे में लगा देते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह सुभान व तआला यहां पेश करता है। कैसे इनको अल्लाह ताला ने दुनिया में रखा, और ये एक वक्त का बादशाह था जो अपनी बादशाही के साथ साथ खुदाई का भी दावेदार था। वाकयात की जरूरत नहीं, तफसील से हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन बस कह लीजिए कि इन्होंने अल्लाह के मुकाबले में किसी चीज को कबूल करना पसंद नहीं किया। और जब जवानी में बंदा किसी हकीकत को हकीकत समझकर कबूल कर लेता है ना, तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने इस बात को जब तस्लीम कर लिया कि शिर्क सरासर एक वहम है और तौहीद इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है, फिर हर तरह की मसलतों का जाल तोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए खड़े हो गए। लेकिन वक्त के इक्तदार ने जब देखा कि इन लोगों ने हम सबसे एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर लिया, तो हर दौर की तरह जबर के साथ, तकलीफों के साथ उनको दबाना चाहा। बाज़ रिवायत से यह भी पता चलता है कि बादशाह ने इन्हें अपने दरबार में तलब किया। अगर आप आयत सामने रखें तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी ये बातें। खैर, जब उन्होंने बादशाह के सामने जाकर भी झूठ ना बोला और अपने सामने वो मौकफ रखा कि जो हकीकत में उनको रखना था, तो उस वक्त बादशाह को तो गुस्सा आया, लेकिन रब कायनात को इतना प्यार आ गया कि अल्लाह ताला ने इनकी बात कुरान पाक में रहती दुनिया तक के लिए इंसानों के लिए क्या रख दी, क्या कर दी कि लोग इनको देखकर हिदायत पाएंगे। और हकीकत यह है कि ये न दबे न झुके न बिके, और डॉक्टर बादशाह ने ये तक कह दिया कि 3 दिन की मोहलत देता हूं, वापस आ जाओ, पिछले पिछले मजहब पर वापस आ जाओ वरना तुम्हें संसार कर दिया जाएगा। अब आप देखिए ये बिल्कुल नौखेज किस्म के जो जवान हैं इनके लिए धमकी को मामूली बात नहीं थी। खैर आज अपने ऊपर लीजिए, वक्त का बादशाह हो, एक धमकी दे, इंसान का रेशा रेशा काम उठता है। लेकिन अल्लाह ताला इस आयत में जो हम अभी ऊपर अपनी थीम आयत देख रहे हैं उसके अंदर अल्लाह ताला हमें ये बात बता रहे हैं कि कैसे जब उन्होंने हमारी तरफ आने का रास्ता इख्तियार किया तो हमने इनकी हिदायत में इजाफा कर दिया, इनके दिलों की गिरह को बांध दिया। ये जो लफ्ज है ना इर्तबात, रबतना रबता, ये मुहावरा भी है, मतलब क्या है कि अजीमत के रास्ते पे चलने का हौसला दिया। पिछले पारे में आपको बताया था कि जीने के दो ही रास्ते होते हैं, एक फराइज का और एक अजीमत का। वक्त के साथ चलो, चलो तुम इधर हवा हो जिधर, तो ये फराइज का रास्ता होता है अमूमन। लेकिन अजीमत का रास्ता वो होता है कि तुम हवाओं के मुखालिफ चलो, अगेंस्ट द विंड चलो, अगेंस्ट द टाइड चलो, और फिर हर तरह के खतरात से बेनियाज होकर आगे बढ़ने की अल्लाह ने इनको हिम्मत दी। लिखिए एक जैम, अल्लाह का कानून है, जब कोई शख्स उसके रास्ते पर असबाब से बेनियाज होकर चल पड़ता है तो वो उसके लिए असबाब भी खुद ही फ्राहम कर देता है। अल्लाह ताला में ये तो नहीं कहता कि आप असबाब तर्क कर दो, लेकिन जब ईमान के रास्ते पर चलने के लिए असबाब को छोड़ना जरूरी हो जाए तो फिर वो इसकी हौसला अफजाई भी करता है। यही बात कुरान में आती है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। याद रखिए आपका ईमान आपको नीचे नहीं रहने देता, ये आपको ऊपर और आता है। जो शख्स अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसके लिए बंद गलियों में से रास्ते निकाल देता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अजीज मिस्र की बीवी ने दरवाजे सारे बंद कर दिए, गुनाह की दावत दे रही थी। लेकिन चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ईमान और हया को बचाने के लिए संजीदा थे और सिर्फ एक ही रास्ता देखा तो कहा कि मुझे इसी रास्ते पे जाना है, और इसी तरह से उन्होंने अपने आप को इन चीजों से अपने दूर किया या कैसे किया। जिंदगी का एक असूल बना लीजिए और वो ये है कि जितनी ज्यादा आपको अल्लाह सुभान व तआला की मार्फत होती जाती है उतने आप वोकल होते जाते हैं, और जब फिर इंसान रास्ता चाहता है तो अल्लाह ताला दरवाजों को भी तोड़ देता है, कुफल भी टूट के गिर जाते हैं। ये वो हिदायत में इजाफे और बरकत की बात है जो इन आयतों में हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। जो जितना अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसको उतना अता करेगा। लेकिन याद रखिए इस रास्ते पे चलने के लिए मजबूत हौसले की जरूरत होती है। किसी ने ऐसे तो नहीं कह दिया ना कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। और नौजवान बेचारे अपनी ना तजुर्बा कारी के वायस इससे आगाह नहीं होते, तो अल्लाह कहता है कि जो काम ये ना कर सके वो हमने खुद कर दिया। रबत नाला खुलूबिहिम के साथ इर्तबातुल कल्ब फी ज़मनिद दैयिकात, इसको दिल पे रख ले। आपके मेरा आपका मामला किसी बादशाह के सामने नहीं होगा, याद रखिए इसको अपने हालात के साथ लीजिए। अभी असहाबे कहफ का ये किस्सा हम सब के लिए यहाँ एक पैगाम देता है, और वो पैगाम क्या है कि जब अल्लाह के रस्ते में एक बंदा संजीदा हो जाता है तो फिर अल्लाह दिल को बांध देता है। और आप लफ्ज रबता को देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, गिरा लगा दी, दिल मजबूत कर दिया, ठोक दिया। क्योंकि जो लोग अल्लाह के लिए किसी काम का अज़्म पुख्ता कर लेते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से इनकी ऐसी ही मदद होती है। और आप देखिए कि अल्लाह सुभान व तआला यहां ये जो फितरत उनके लफ्ज को खास तौर पर हाईलाइट करते हैं, इससे पता चलता है कि जितना ज्यादा जल्दी हिदायत को लब्बैक कह लेंगे उतना ज्यादा हक के साथ आपका ज्यादा अच्छा वक्त गुजरेगा, वरना पीछे तो फिर सिर्फ अर्जुल उमर होगी। साहबे किराम में अक्सर ईमान लाने वाले थे, और ये वयजीदुल्लाहुल्लज़ीनहतदौहुदा, अल्लाह हिदायत को बढ़ा देता है। एक तरफ हिजरत की, अपने प्यारों को छोड़ा, घर छोड़े, और ये अमीर घरों के अफराद थे, घरों के महल्लात को छोड़कर उन्होंने गार में पना लेना पसंद किया, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र की खवातीन के चुंगल से निकलकर खुद को जेल की सलाखों में बंद करना पड़ा। तो लिखिए एक ऐसा भी दौर जिंदगी में आता है कि सच्चा ईमान आपको घर में बंद कर देता है, उस वक्त फिर अल्लाह दिलों को मजबूत करता है। जैसे आज भी कोरोना के लॉकडाउन ने कई लोगों को मजबूर कर दिया कि वो किसी न किसी जगह अपने आप को मुकय्यद कर लें, आज भी ये बात याद रखिए, इर्तबातुल क़ल्ब फी ज़मनिद दय्यिकात, इस एक साल के लॉकडाउन, अल्लाह ना करे ये 3 साल के शब अबी तालिब की घाटी वाले लॉकडाउन में बदल जाए। दिल उनके ही खुश हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने थामा हुआ। बड़े से बड़े सदमे को इंसान बर्दाश्त कर लेता है, फिर हक बात कहने की जरूरत भी मिलती है, हौसले भी होते हैं। इसके बरक्स अब अपने ऊपर लीजिए, छोड़िए सबको। आपका मेरा मामला क्या होगा? क्या कोई बादशाह हमें अपने दरबार में बुलाएगा, धमकियां देगा, 3 दिन की मोहलत देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंसान जितना बड़ा होता है ना, उसे उतनी बड़ी मुश्किल आती है, और जितना छोटा होता है ना, उतनी छोटी मुश्किल आती है। ज्यादा ईमान के साथ ज्यादा बड़ी मुश्किल, और थोड़े ईमान के साथ थोड़ी मुश्किल। मुझे आज से कोई 15-20 साल पहले का दिया हुआ एक लेक्चर याद आ गया कि ईमान और आजमाइश का साथ। जितनी बड़ी ईमान की डिग्री होगी, उतना आजमाइश ज्यादा आएगी। हमारा हाल क्या कि हम बंद मुठ्ठियों से जन्नत लेना चाहते हैं। इन्होंने सब छोड़ा, इस कामू जब वो खड़े हुए तो फिर अल्लाह ने भी इनको थाम लिया। और कामू का लफ्ज जब तक नहीं आपके सामने आयत में है, तो तब तक बात नहीं बनती। आप कह लीजिए कि वो तो खड़े हुए, उन्होंने तो जन्नत की पूरी कीमत चुका दी, वो दुनिया की हकीकत पहचान गए, और अपने पांव की जो बेड़ियां थी ना, उनको उन्होंने तोड़ दिया। इसके बरक्स हम क्या करते हैं? हम बंद मुठ्ठियों से जन्नत चाहते हैं, हम दुनिया की हकीकत जानकर फिर उसके पीछे भागते हैं। हम जन्नत को समझ चुके हैं कुरान के अंदर देख सुनकर भड़के, लेकिन अभी इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने सबको नाराज किया कि अल्लाह राजी हो जाए। हम सबको राजी करके अल्लाह को बात में राजी करना चाहते हैं, यानी हम भी चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो, लेकिन पहले सारे राजी हो जाएं। वो 7-8-9 रिश्तों की जो सूरह तौबा में आपने आयत पढ़ी थी ना, याद कर लीजिए, मोहब्बतों की तराजू, और वो सब कुछ देकर अब अल्लाह की रहमत का सवाल करें। आगे हम दुआ में सीखेंगे भी इंशाल्लाह। तो याद रखिए, कुछ दिए बगैर सब कुछ नहीं लिया जाएगा, कुछ दिए बगैर सब कुछ लेना चाहने वाले ईमान के कमजोर दर्जों पे होते हैं। मजलूम भी थे और मोमिन भी थे, इसलिए फिर अल्लाह ने उनकी पुकार को सीधा अर्श पे पहुंचाकर उनके लिए गार में जो रास्ते बनाए, हम इंशाल्लाह वास्ते पढ़ेंगे तर्जमे के अंदर। और ये सारी चीजें आपको मुझे इस वक्त अपने मामलात की दुरुस्तगी की तरफ बात करने पे ले चलती हैं। आपने मैंने क्या करना है? अपने आप को ठकोना, ठका के रखिए। ठुके हुए लोग चाहिए अल्लाह को, कच्चे पक्के नहीं। एक कील भी ढीला होता है ना, तो आप उस पर घड़ी भी नहीं लटकाते। आप कहते हैं क्यों, पता नहीं इसके अंदर मेरी घड़ी ना गिर जाए। तो क्या अल्लाह ताला कच्चे पक्के लोगों के ऊपर अपने दीन का काम डाल दे? तो याद रखिए कि जो लफ्ज़ रबत ना है ना, ये यहाँ एक तो हमें इधर मिल रहा है। आप पूछिए मुझसे कि इस पारे के अंदर मैंने इसको आपके लिए क्यों रखा। शुरू से आप देखेंगे कि सूरत बनी इसराइल के आगाज से ही वाकई मेराज है। यहां भी अल्लाह ने दिल को थामा था नबी सल्लम के, तभी तो आपने आसमानों की वो चीजें देखी जो आम तौर पे नहीं देखी जा सकती। फिर बनी इसराइल की तारीख के 2 वाकयात हैं जिसका तस्करा हम देखेंगे, इसमें भी अल्लाह ताला का यही कानून है। और उसके बाद फिर वो खूबसूरत अहकाम अशरा की का कुरानिक वर्जन हम इंशाल्लाह साथ साथ लेंगे, वरना टाइम बहुत लगेगा अगर मैं आपको पूरे पारे का भी गो थ्रू करा दूं। लेकिन याद रखिये, ये जिसका हुक्म इस वक्त आपको मुझे दिया जा रहा है, और मैंने आपके लिए आज ये थीम चूज कर लिया अल्लाह की रहमत से, तो इसी का हुक्म अल्लाह ने नबी को इस बारे में सूरत बनी इसराइल का 73 में भी दिया। वलौला अनसबतनाका लकद कित तरकनु इलैहिम शैयन कलीलन। ए नबी, अगर आपका दिल हम ना बांधते तो शायद आप भी इनकी तरफ बन जाते। क्या पता चला, दीन के रस्ते में जब तक अल्लाह दिल ना बांधे बात नहीं बनती। और जिंदगी की मुश्किलात, चाहे वो कोरोना हो, बीमारी हो, प्यारों की मौत हो, जब तक अल्लाह ना चाहे दिल नहीं बनता। बल्कि आज आपको मैं बता दूं ना, हम क्या पढ़ने लगे हैं, तो ये वो लोग हैं जो बड़े से बड़े सदमे में भी अपने आप को ठार लेते हैं, संभाल लेते हैं। झगड़ा हो रहा है, संभाल लेते हैं। कोई इनके साथ बदतमीजी कर रहा है, ये रबत वाली कैफियत में आते हैं। थोड़ा सा इसको डिक्शनरी में देखे तो रबतुल फरस कहते हैं घोड़े को किसी जगह पर हिफाजत के लिए बांध देना। इसी तरह रिबातुल जैश कहते हैं फौज का किसी जगह पर मुतय्यन कर देना। और रबत्तु व राबत्तु का मस्तर भी रिबात होता है। मुराबता एक बड़ी प्यारी टर्म है, इस पे भी आज फिर दिल में आ रहा है कि आपको रमजान के बाद कुछ सिखा दूं। तो मुराबता असल में हिफाजत की कैफियत है। घोड़ों को सरहदों पे बांधाना आपका मेरा काम तो नहीं है। कुरान ने मिर रिबातिल खैली तुरहिबू नबी अदुवल्लाहि व अदुवकुम की बात सूरह तौबा में की, کہ گھوڑوں کے سرحدوں پر باندھے رکھنے سے، جس سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو مربوط کرو۔ یہ تو ایک خاص نہریوں میں تھا، لیکن سورت آل عمران کے بالکل آخر میں آپ بڑے خوبصورت انداز میں یہ لفظ سن چکے ہیں، جو شاید آپ کو اس وقت یاد آ رہا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ یہ جو لفظ ہے نا رابطوا، یہ آج پڑھنے والے ہیں، کہ ان تکلیفوں کو جو اللہ کی راہ میں تم کو پیش آئیں برداشت کرو، اور ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دو، اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو مرابط کیا ہے؟ انسان اللہ کے کام کا ہو جائے۔ لکھیے، مرابطے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اسلامی سرحدوں پر دفاع کے لیے پہرا دینا۔ اتنی خوبصورت حدیثیں ہیں کہ دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو سناؤں، لیکن ابھی موقع نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ ایک رات کا پہرا اسلامی سرحدوں کا دینا انسان کو کتنی نفل عبادات سے اوپر کر دیتا ہے۔ مرابط کے لیے قبر کے عذاب سے بخشش کی وعدہ ہے، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایسی جگہ پہ بس کھڑے رہتے ہیں، کبھی ضرورت پڑی تو ہم چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ سرحدیں دشمنوں کے خلاف جو جنگوں کی صورت میں ہوتی تھی، آج کی سرحدیں وہ ہیں جس وقت آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہر پلیٹ فارم پہ آپ بالکل کانشیس ہو کر بیٹھے ہیں۔ میں آپ سب کو دعا دوں گی جو آن ڈیوٹی ہیں کہ اللہ آپ کو مرابط کا ثواب دے، کیونکہ آپ بھی تو اللہ کے دین پہنچانے کی کوششوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں کسی جگہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اللہ کو یہ عمل بڑا پیارا لگتا ہے، اس کے دین کو پھیلانا، اس کے راستے میں نکلنا، اور پھر اس پہ اپنی جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیز کو نہ چھوڑ دینا، یہ ایک قسم کا مرابط بن جاتا ہے بندہ۔ اور دوسرا، نفس کو ناجائز خواہشات سے روکنا۔ یہ لکھیے، آپ کا میرا رواج کیا ہے کہ اپنے نفس کو ٹیمپٹیشن سے روکے۔ یہ سارا مضمون ہم پڑھیں گے اسی نام کے ناطے سے سورت کہف میں۔ یہ دجل کیا ہے؟ یہ دھوکہ کیا ہے؟ یہ دنیا دجل ہے، اسی سے لفظ دجال ہے۔ تو مجاہدہ نفس کی صورت میں ثواب بھی جہاد فی سبیل اللہ کا ملے گا۔ اور یہ آپ میں سے جو ہدایت کی طرف آپ چلتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل آج ٹاپ موسٹ پہ 15ویں پارے پہ کھڑے ہیں، ان کے لیے بھی برکت کی دعا کیا ہے اس میں، کہ آپ اگر واقعی اپنے آپ کو سنجیدگی سے بدلنے کی خواہش کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر دے گا۔ کیونکہ جہاد اصل میں چل شروع ادھر سے ہی ہوتا ہے، جہاں سے نفس شروع ہوتا ہے۔ لکھ لیجئے، جہاد کے دو درجے ہیں، ایک اہم ترین اور دوسرا بلند ترین۔ اہم ترین جہاد ہے مجاہدہ بن نفس، جہاد بن نفس۔ یہ اپنے اپنے آپ سے کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ اس میں آپ نے اللہ کی مرضی کا بننا ہے، اپنی برائیاں چھوڑنی ہے، اپنے اچھے کاموں کی خواہش کرنی ہے، اور پھر اس کا بلند ترین کیا ذروہ، وہ ہے دشمن کے ساتھ جہاد، جس کو قتال کہتے ہیں۔ تو اہم ترین سب نے کرنا ہے، جو اس وقت میں اور آپ سن رہے ہیں، جنہوں نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے۔ ہاں، بلند ترین کا مقام ہر ایک کی زندگی میں نہیں آتا، اور اس کا تقاضا بھی نہیں ہے کسی سے بھی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان یہ دعا کر لے کہ اللہ مجھے اپنے نفس کے اس گھوڑے کو ٹیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ جتنا زیادہ نفس کا یہ گھوڑا، یہ سرکش گھوڑا میرے ہاتھ میں آ گیا، اتنا میں لوں گا۔ اور آئیے سنیے ایک خوبصورت سی حدیث، جس سے آپ کو مرابط کے بارے میں مزید باتیں پتہ چلیں گی۔ 251 سے صحیح مسلم، ابو ہریرہ راوی ہیں۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا اور درجات کو بلند کر دیتا؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں میں سے ایک، لکھے، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، -20 ہے باہر، وضو ٹوٹ گیا اور ساکس بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، یا کوئی مسئلہ تھا، یا پانی بھی ٹھنڈا ہے، کرنا پڑے گا وضو۔ اور اسی طرح میک اپ کیا ہوا تھا اور اب وضو کرنا ہے، مغرب کی نماز جا رہی ہے، تو شادی ہال میں جا کر واش بیسن پہ وضو کیا۔ اللہ آپ کو اس پر گناہوں کے مٹنے اور درجات کی بلندی کا اجر دیتا ہے۔ پھر مسجد تک زیادہ قدم چلنا، چل کے جائیے، دور ہے تو قریب چلے جائیں تاکہ پیدل جا سکیں، اور اگر گاڑی پہ جا سکتے ہیں تو گاڑی چھوڑ کر پیدل جائیے۔ اللہ ایک ایک قدم پہ آپ کے گناہوں کو مٹا کر آپ کو درجے عطا کرے گا۔ اور پھر تیسرا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اللہ ہمارے مردوں، ہمارے بیٹوں، ہمارے بھائیوں کو اس کی توفیق دے دے۔ कैसे लोग आईफोन 20, 15 या 10X खुलने के इंतजार में एक रात पहले ही बाहर खड़े होते हैं कि पहला फोन हम ही ले लें, खत्म ही ना हो जाए। अल्लाह हमें नमाजों का इतना शौक लगा दे, हमें भी और हमारे बच्चों और हमारे मर्दों को भी। फरमाया यही रिबात है, यानी वो सरहद की पहरादारी करना तो फिर कभी होगा। तुम ये काम करो तो क्या आप अपने बेटों को ये सिखा सकते हैं? तो अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे। तो अलकवी राबितिल जाइश, आपने मैंने उस लश्कर में शामिल होना है जिनको अल्लाह ताला मजबूत कर देता है। और अनजल सकीना तफी कुलूबिल मोमिनीन, मोमिनों को सूरत कहफ पढ़कर सकीनत मिलती है। ये हम सूरत कहफ में पढ़ेंगे। फिर ये जिक्र और भी बड़ा खूबसूरत अंदाज से आपको कुरान में अल्लाह के नबी के साथ मिलता है। मसलन लौला अन रबतना अला कल्बिहा, अगर हम इसके दिल को मजबूत ना कर देते। उम्मे मूसा की बात है, बच्चे को दूध पीते बच्चे को दरिया की मौजों के सुपुर्द करना ये काम औरत के बस की बात ही नहीं है। ये मूसा की मां के भी बस की बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने रबतना अला कल्बिहा किया। लिखिए अपने लिए, छोटे बच्चों को दिल में ना बिठाइए, उनको छोड़ दीजिए, जरा थोड़ी देर अलग कर दें, अल्लाह आपके दिल को संभाल देगा। ये हर उस मां के लिए जो बच्चे को वजह बना के दीन से दूर हटती है। अल्लाह कहते है मूसा की मां ने तो मेरे कहने पर कहां डाल दिया बच्चे को, तो तुम्हें क्या हो गया? तुम वाकई अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझती हो? तुम्हें क्यों ये सब लगता है कि तुम्हारे लिए तुम ही अपने बच्चे को देखोगी? फिर इसी तरह वाली यरबिता ला खुलूबिकुम, आप पीछे पढ़कर आए हैं ताकि तुम्हारे दिलों को ढारस बंधा दे। इसी तरह उलाय का कतब फी कुलूबिहिम अलईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, अल्लाह अकबर कबीरा, वो अल्लाह ही तो था जिसने मुसलमानों के दिलों में तहम्मुल डाला। तो लिखिए रिबात कल्ब क्या है, दिल में तहम्मुल आना। और मुझे अपने साथियों में और अपने प्यारों में जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है वो तहम्मुल चाहिए होता है। मैं कहती हूँ पहाड़ भी गुजर जाए ना तो आपके चेहरों पे परेशानी ना आए, सब कुछ भी सारे चैनल भी बंद हो जाए ना तो आपके अंदर हलू वाली कैफियत ना। और बास लोगों के लिए तो मारूफ है, हर वक्त उनके पेट में मरोड़ उठते रहते हैं। हाय हाय ये हो गया, बच्चा गिर गया, ये हो गया, मियाँ को फोन करती है, हाय ये हो गया, नहीं ठीक हो गया, अच्छा ये हो गया, टूटी नहीं। अल्लाह की बंदी हो क्या? आपने जिंदगी जीरन की हुई है एक शरीफ बंदे की, तो अपनी जिंदगी में रब्त लाइए। और ये रब्त से होगा, ये रबतों से होगा, जुड़े रहने से होगा। आपको मुझे अपनी जिंदगी में इसको ढूंढना है। और फिर आप देखिए कि फिजान गैबी से अल्लाह ताइद करता, क्योंकि इनके दिल ऐसे नहीं थे, तो साहबा के दिलों में था तो आपके मेरे भी होगा। इसके अलावा आप देखिए वाफिदतुहुम हवाउन, उनके दिल हैं कि हवा हुए जाते हैं, दिल उड़ते हैं। तो कुछ लोगों के दिल उड़ते हैं और कुछ के दिल जमते हैं। अल्लाह हमें आज तो दिल का जमाव दे दे, और माजरत के साथ कुछ सारी जिंदगी से, जिंदगी ना भी पूरी हो, पिछली जिंदगी जब से शौरी तौर पे कुरान से जुड़े हैं उस वक्त से दीन के कामों में, लेकिन रब्त नहीं है, बेतुके काम है, बेतरतीबी दीन की खिदमतें हैं, बेतरतीबा दीन सीख रहे हैं, आगे से पीछे, पीछे से आगे जाते हैं, आगा दौड़ पीछा जोड़, यानी तरतीब के बगैर रब्त नहीं मिलता। मैंने तो ये सोच लिया, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खाना खाते हुए आप देखिए तरतीब से खाते हैं ना, खाना भी खाया, साथ पानी लिया, साथ सैलड लिया, फिर मीठा लिया, और कि उल्टा शुरू कर दे, पहले सारा स्वीट ही खा ले तो खाना कहाँ खाएगा। तो याद रखिये कि अपने दिलों को सीधा करने के लिए इस बारे को सुनिए। फुलान और राबितुल जश मुहावरतन कहते हैं, फुलां बड़े मजबूत दिल का आदमी है। हम भी लोगों के अंदर जानते हुए कहते हैं कुछ लोगों को कि फुलां कैसा है और फुलां का दिल बड़ा मजबूत है, मेरा तो दिल बड़ा ही नरम है। नरम नहीं, असल में कुछ लोग घबराहट को नरमी कहते हैं, वो घबराहट होती है असल में, लेकिन जो दिल की नरमी, जो दिल की मोहब्बत है ना, उसको यहां अगर आप महसूस कर गए तो इंशाल्लाह ताला आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ने इसके लिए आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ है। फिर आप देखिए इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह का एक बड़ा ही खूबसूरत सा कौल है जिसका खुलासा बस आपको दे सकती हूँ। कहते हैं कि बेशक गार वाले काफिर कौम से थे, वो ईमान लाए, उन्होंने ईमान और सच्चाई, कामयाबी की सच्चाई को पा लिया, उन्होंने ये ईमान की मिठास का मजा चखा और इनके दिलों ने इसे कबूल कर लिया। इनके दिलों को थाम लिया शिद्दतों के वक्त में, ये जो मैंने दयक लिखा ना इसको आप शिद्द भी कह सकते हैं, शिद्दतों में, जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स में, एडवर्सिटी में, जब बहुत जिंदगी के अंदर हालात अप्स एंड डाउन होते हैं, हम उस वक्त नहीं रहते। कुछ लोग बड़े सीधे चल रहे होते हैं, कंप्यूटर की तरह, गाड़ी की तरह, जहां जिंदगी में जरा सी 19-20 आई, वो सारे काम छोड़ भूल भाल, अब नहीं जी नहीं, जज्बात मुझे करना है, मुझे जाना है, मैं नहीं रह सकती, मेरे से नहीं होता। सब्र तो कीजिए, जरा सोचिए आपके जाने से क्या होगा, फायदा ज्यादा कि नुकसान। तो लिखिए, जिंदगी में कभी कोई मौत की भी खबर आ जाए ना, तो सोच समझ अल्लाह हमारी साबित रखे, ये है रबतना ला खलूबिहिम। आम तौर पे लोगों के ऐसे वक्त में मत मरी जाती है, असाबे कहफ की मत खुल गई। और ईमान की दलीला जब आयते आएंगी तो आपको कुछ कोट्स लिखाऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे। आज आप अपने ईमान को देखने वाले, कुछ का ईमान असली होता है, कुछ का नकली होता है। तो इब्ने कय्यम की बात हम पढ़ रहे थे, कहते हैं कि उन्हें ईमान के नूर से मजबूती मिली, दीन की खातिर घर बार छोड़कर गार में बंद हुए, क्योंकि उन्होंने ईमान का मजा चख लिया था, दिलों को इस पर राजी कर लिया, अल्लाह की खुशनुदी की पैरवी की, रब के साथ मजबूत ताल्लुक की ये दलील बन गई। तो ये सब तो राज खुलने वाले हैं आज आपके मेरे ईमान के। तीन चीजों पे पूरा परा भागेगा, आप देखेंगे। हिदायत, यानी अब लेनी है तो लो, नहीं तो हम छोड़ने लगे, तुम्हें जाओ मजे करो, और मजीद मुतालबे और हम तुम्हारी मजीद प्लाट तुम्हारे हम नहीं देखेंगे। और दूसरी बात यह है रिबात, और तीसरी चीज आपको साथ इंसानी मामलात भी दिखेंगे, क्योंकि हमारा ईमान, लिखिए ये भी एक जेम है, हमारा ईमान इबादात के जरिए आता है, यानी नमाज पढ़ते हैं तो ईमान मिलता है, रोजा रखते हैं तो ईमान मिलता है। कभी इफ्तारी के वक्त अपनी वो भीगी बिल्ली वाली कैफियत तो देखा करें, कैसे उस वक्त अपने आप को हम कितना नेक समझते हैं। बच्चे भी जो मर्जी करें हम कहते हैं कर लो, अच्छा जरा रोजा खोल के पूछूंगी, हाँ तो वो उस वक्त दिल में लग ऐसे ही रहा होता है कि हम बड़े ही रूली हुए हैं, लेकिन असल में वो ईमान मिल रहा होता है। तो लिखिए, हमारा ईमान इबादात के जरिए आता है और मामलात के नाम पर निकल जाता है। हम मामलात के पर्चे में अक्सर फेल हो जाते हैं, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे, हमें इस बात की तौफीक दे दे कि हम अपने ईमान की इस्लाह करें। तो आइए फिर आज की दुआ, जो साबे कहफ की दुआ है, और इसको पल्लू से बांध लें, हिर्ज़े जान बना लीजिए, ये अक्सीर नुस्खा है। अल्लाह के रस्ते के काम इसके बगैर नहीं होंगे, दुख सुख तकलीफ सदमों में आप अपने आप को नहीं थाम सकती इस दुआ के बगैर, आपके अपने शौहर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते इस दुआ को मांगे बगैर, और दुख सुख प्यारे भाई बहनों माँ बाप के दुख सुख को सुनना सहना बर्दाश्त नहीं होगा जब तक ये दुआ नहीं मांगेंगे कि रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा वहैय्या लना मिन अम्रिना रशदा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे। ये तो लफ्ज है ना लदुन, लदुन कहते हैं वो चीज जो मेरे पास नहीं है, अल्लाह तू दे दे, और हमारे पास रबात नहीं होता। बिल्कुल यही दुआ पीछे सूरत आले इमरान में भी पढ़ के आए ना, रब्बना हब लना, वो क्या है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिल लदुन का। ये लफ्ज लदुन पे भी कम अज कम 15 मिनट बात कर सकती हूँ अगर आप इसको समझ, और इस पे कई लोग उलट पुलट भी चले गए। तसव्वुफ जो बड़ी खूबसूरत चीज थी, उसमें कुछ लोगों ने कुछ चीजों को मिस कोट करके इस लफ्ज को इल्म लदुन्नी और न जाने क्या कहा, यानी अल्लाह मेरे पास नहीं है, मैं तो जो दे सकता था दे दिया, घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, अब मैं अपना सारा लुटा के आ गया हूं, अब बाकी तू रहमतें दे दे। ये है ईमान का सौदा, वह है ये लाना, ये है ये वो है जिसका उर्दू में कहते मुहैया कीजिए आसानी। ऐ अल्लाह तू मेरे हर काम में सीधा रास्ता कर दे, जहां समझ ना आए क्या करूं क्या ना करूं, ये दुआ मांग लीजिए, अल्लाह रास्ते खोल देगा। और आज की हदीस सही बुखारी की रिवायत है 1895, हुज़ैफा इसके रावी हैं। उमर बिन खत्ताब ने पूछा, फितने के बारे में रसूलुल्लाह की हदीस किसको याद है, क्योंकि इस बारे में हम बहुत सारे फितनों का भी तस्करा जानने वाले हैं। हुज़ैफा बोले कि मुझे ज्यादा याद है जिस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया था। उमर ने कहा याद है तो फिर बयान करो, माशाल्लाह तुम तो बहुत ही जरी हो। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की एक आजमाइश यानी फितना तो इसके घर माल और पड़ोस में होता है, जिसका कफारा नमाज रोजा सदका और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जैसी नेकियां बन जाती हैं। तो क्या पता चला, आज आप मैं घर के माल के पड़ोस के اور دین کے رستے کے مختلف فتنوں کا حل پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں اس بارے میں موجود دلوں کی مختلف اقسام, بہت سارے دل ہیں اس میں, اور ہدایت کی بھی آیتیں بہت سی ہیں. آیت 36 سورۃ بنی اسرائیل, جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا القلب المسئولیۃ. یعنی دلوں کے بارے میں سوال ہوگا, آپ کے کانوں کا, آپ کی آنکھوں کا اور آپ کے دل کا کل قیامت کے دن سوال ہوگا, کیا ہم مسئولیت کے لیے تیار ہیں؟ سوچیے ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. دعا کیجیے اللہ کبھی دل کا سوال نہ کرنا, مارے جائیں گے اندر تو پتہ نہیں کتنے بت پڑے ہوئے ہمارے. پھر آیت 46 سورۃ بنی اسرائیل, وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا, اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے, اور ان کے کانوں میں گرانی یعنی بوجھ پیدا کر دیتے ہیں. تو القلب المکنون, اکنہ لفظ ہے. سورۃ کہف 14, وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا, یہ ہے القلب المربوط. دعا کریے آج کا پارہ پڑھنے کے دوران میرا دل قلب المربوط میں ڈھل جائے. بڑا خوش رہتے ہیں ایسے لوگ, پہاڑ بھی اوپر سے یقین کرے گزر جائے, رولر کوسٹر سے گزر رہے ہوں, ایموشنلی اندر سے ڈیمولش ہوئے ہوں, اندر آنسو گر رہے ہوں, ساری رات رو رو کے گزری ہو, صبح ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو, باہر آتے ہیں تو تعریفیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی, شوہر بیوی. دعا کیجئے ہمارے دل کے اندر کیا ہو رہا ہے, کسی کو پاس بیٹھے خبر نہ ملے, ساتھ سوئے شوہر کو نہ پتا چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسا ہی مربوط دل دے دے. آج مانگنا اللہ سے, پھر بڑے کام لے گا اللہ آپ سے. کچے دل والے, سینسٹیو, بات بات پہ رونے والے, ناک سے پانی بہ رہا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے, اور سسکیاں اور ہچکیاں, میرے سے اب اور باتیں نہیں سنی جاتی, میں اور قربانیاں نہیں دے سکتی, نہیں کریں, پھر چلے جائیں, وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو پیاری. اللہ اپنے رستے کے کام القلب المربوط سے کراتا ہے. بڑے فیصلے کرنے والے, بڑے حوصلوں والے لوگ, بڑی پکچر میں دیکھنے والے, پھر اللہ ان کے لیے ناممکن کو ممکن بناتا ہے. آج کے پورے پارے میں آپ یہ سبق لے لیں, ناممکنات کو ممکن بنانے کا ایک ہی راز ہے کہ دل کو مربوط کر لیجئے. پھر آیت 28, الکہف, من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا, جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا, اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی, اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر ہے. تو القلب الغافل یہ ہے اس کا اپوزٹ. آج ہمارے دل افراط اور تفریط میں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑے. پھر 57, کہف, ان نجال نالا قلوب مکنت نہیں یفقہوہ وفی آذانہم وقرا القلب المکنون. یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے, خود نہیں چڑھتا پھر اللہ چڑھاتا کہ بیٹھو گھر, تمہیں کچھ نہیں چاہیے, تم مزے کرو, تمہارے دل کا تعفن اندر ہی رہے گا اور تمہیں ہدایت کی بات نہیں ملے گی, اور پھر ان کو قرآن کی بات سمجھ ہی نہیں آتی اور کانوں میں بوجھ ہوتا ہے. 12-15 میں دیکھیے گا, 8 آیتیں اور ایک سے ایک پروفاؤنڈ قسم کے, آپ کہہ لیے کہ بہت ہی بڑی ہوئی آیتیں, جس میں سب سے پہلے اگر بنی اسرائیل سورت کی آیتیں دیکھے تو اس میں آیت نمبر 2 ہے, وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ, پھر آیت نمبر 9 ہے, يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, آیت 84 ہے, هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا, اور 94 ہے, جَاءَهُمُ الْهُدَى. اور آیت سورت کہف میں چلیے تو آپ کو دکھے گا سورت کہف کی آیت 13, 24, 55 اور 57 میں, آمنوا بربهم وزدناهم هدى, پھر اسی طرح یہدینی ربی لیقرب, اور اس جاہم الہدا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے. تو یہ تو تھا ہدایت سے متعلق. اب چلتے ہیں سورت بنی اسرائیل پہ. یہاں سے آپ کو پاروں کا وہ حصہ بھی دکھے گا کہ پارے کے شروع میں بھی ایک سورت ہوتی ہے اور پارے کے اینڈ پر بھی ایک سورت ختم ہوتی ہے. تو ذرا سا آپ سورت بنی اسرائیل کو لینے کے لیے لیں, مجھے پتا ہے کہ انفارمیشن ٹو مچ ہے آپ کے لیے, لیکن یہ میرا آپ سے پیار اور محبت ہے. میں اس سوچ کے ساتھ کہ اگر ابھی آپ نہیں بھی ابزارب کر رہے تو کوئی بات نہیں, ایک دفعہ جمع کر لیں. ہم بھی تو بہت سارا کھانا فریز کر لیتے ہیں نا, پھر تھوڑا تھوڑا نکال کر کھاتے رہتے ہیں, تو بعد میں آپ کو جو عید کی چھٹیاں ملتی ہیں اس میں جا کر بعد میں ایک ایک چیز کو دوبارہ سنیے گا, لیکن کم از کم ایک چیز محفوظ ہو جائے اور میرے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. سورت بنی اسرائیل, جس کا دوسرا نام सूरत अल इसरा भी है। इसरा और असरा में फर्क होता है। यहाँ कुरान में असरा है ले गया, असरा की सूरत में आए तो ये और फॉर्म देता है, इसरा की सूरत में आए तो और फॉर्म है। ये फेल है, वो नाउन है। सूरत के शुरू और आखिर में बनी इसराइल का जिक्र है। इस सूरत में ये सूरत नबी सल्लम पर हिजरत से थोड़ा सा अरसा पहले के दौर में नाजिल हुई, क्योंकि मदनी दौर में यहूद से साबिका पड़ने वाला था। अल्लाह ने पहले से यहूद की हिस्ट्री सुनाकर मुसलमानों को जहनी तौर पर तैयार कर दिया कि तुम्हारा किससे वास्ता डालने वाले हैं तुम्हारा हम। दूसरी बात यह है कि इस सूरत के बाद के दौर में हिजरत चूंकि होनी थी, तो इस सूरत में आपको हिजरत का तस्करा भी मिलेगा। अल्लाह के नबी ने हिजरत के बाद मदीना में जाकर एक ऐसी बुनियाद डालनी थी जिसको पहला इस्लामी मुआशरा कहते हैं। लिहाजा इस सूरत में उन बेसिक्स का यानी इस्लामिक फाउंडेशंस का या फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम का तस्करा है जो किसी भी मुस्लिम मुआशरे की बुनियाद होते हैं। तो इस सूरत के तीसरे और चौथे रुकू में इसका तस्करा है। चूंकि मक्की सूरत है इसलिए इसमें असूले सलासा भी हैं, जिनका सवाल कब्र में जाकर तीन सवालों की सूरत में होना है। और बड़ी दिलचस्प बात नोट कर लीजिए, पूरे कुरान पाक में लफ्ज कुरान 60 टाइम है, उसमें से 16 टाइम सिर्फ सूरत बनी इसराइल में। फिर आप देख लीजिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हिदायत और कुरान को आप अलग कर ही नहीं सकते। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह सुबहान ताला कैसे ये चीजें आपके मेरे सामने लाते हैं। फिर पूरी सूरत का अगर हम एक ब्रेक डाउन करें मजामीन के एतबार से, जो बड़ा अहम होता है, क्योंकि इसके साथ आपकी भी राय से सूरतों के साथ मोहब्बत भी बढ़ती जाएगी, और जैसे अपनी कजन्स को और अपनी बहनों को आप जानते हैं, उनका मिजाज समझ आता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको देती हूँ, इससे इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप कुरान दोस्त हो जाएंगे, ये कह लीजिए। तो आयत नंबर एक में सफरे मेराज है, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक, ये जमीनी सफर था। इसको असरा कहते हैं, ठीक है, या इसरा कहते हैं, एक फेल और एक कह लीजिए कि इस्म की सूरत में दिखता है। और इसके बाद जो अगला सफर है वो इंशाल्लाह हम सूरत नजम में पढ़ेंगे। फिर आयत दो से लेकर दस तक बनी इसराइल के लिए इबरत है और नसीहत है। आयत 11 से 22 तक पूरी नौ इंसानी के लिए कुरान इबरत और नसीहत है। 23 से 40 तक इस्लाम की माशरती हिदायत का तस्करा। 41 से 60 मुश्रिकीन मक्का के साथ कशमकश है। 61 से 65 इबलीस की इंसान दुश्मनी। और 66 टू 70 अल्लाह के एहसानात और इंसानों की नशुक्री। 71 टू 100 मुश्रिकीन मक्का के साथ कशमकश। और 101 से 104 बनी इसराइल का माजी और मुस्तकबिल, यानी सूरत के शुरू में भी इनका तस्करा और बाद में भी। और आयत 105 से 109 तक अजमत व तासीर कुरान है। और इसी तरह से आयत 110 से 111 तौहीद बारी ताला। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खूबसूरत सूरत आपके मेरे सामने है। अल्लाह ताला हमें इस पे गौर व फिक्र की तौफीक दे। आइए अब टेक्स्ट के साथ चलते हैं। सूरतुल असरा 111 आयतें हैं, 111 और 17th नंबर की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। सफरे मेराज है, जमीनी सफर है। आप इस सफर की तफसीलात लेना चाहें तो हमारा एक लेक्चर है रजब के महीने के नाते से सफरे मेराज, बहुत ही डिटेल से और हर साल प्ले होता है और मैंने उसको हमेशा ही फायदा मंद पाया है। आप भी अगर इस वाकये की डिटेल्स लेना चाहें तो वहां से ले सकते हैं। पाक है वो अल्लाह ताला जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाद नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला खूब सुनने देखने वाला है। क्या पता चला कि नबी सल्लम को हिजरत से पहले ही वाक़े मेराज की सूरत में एक तो तसल्ली दी गई, आमुल हुज़न था, हजरत खदीजा और अबू तालिब का इंतकाल हुआ, और शब अबी तालिब के 3 साल के लॉकडाउन के अंदर ही सेहत खराब हुई और वो दुनिया से चल दी। अल्लाह के नबी के लिए दुख का साल था जिसको आमुल हुजन कहा जाता है। तो जैसे रोते बच्चे को बहलाने के लिए बाहर ले आया जाता है, अल्लाह अपने प्यारे नबी की तालीफ कल्ब के लिए और इरबात कल्ब के लिए आपको मेराज पे ले गया। तो लिखिए रबतना ला कुलूबिहिम, सिर्फ कहा वालों के साथ नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने मक्का के उन 11 सालों के जुल्मो सितम और मुश्किल दौर से गुजरने और बाहर की दुनिया के सहारे अबू तालिब और अंदर की दुनिया का सहारा अपनी बीवी खदीजा जो आपकी प्यारी जौजा थी, उनकी जुदाई का वक्त ऐसे गुजार दिया कि अपने नबी को आसमानों की सैर करा दी। और इसी में रस्ते में मदीना की गलियां भी या उसके रस्ते दिखा दिए कि ये आपका महजर बनने वाला है। तो ये तो जब आप सुनेंगे वो लेक्चर तो आपको उसमें से बहुत कुछ मिलेगा। तो ये इरबात कल्ब लिखिए अपने लिए, जब आप भी दुखी हों, जब आप भी परेशान हों, तो आप भी ये मेराज अताकर हासिल कर लें। और वो क्या है, लिखिए एक जुमला, अल्लाह के नबी सल्लम की मेराज आसमानों पे बुलाकर हुई, बंदे मोमिन की मेराज नमाज है। इसीलिए कहा कि वस्तईन बिस्सब्री वस्सला, आप नमाज पढ़ लिया करें, 2 नफिल पढ़ लें, कोई भी दुआ कर लें, और अगर माँ बाप मौजूद हैं तो उनके आगे जाकर जिल्लत के बाजू फैलाकर झुक जाएं, उनकी गोद में आकर आपका सारा गम गलत हो जाएगा जो जैसे अपने दिल को रब्त में रखना चाहे। अल्लाह ताला ने आपको मुझे मौके दिए। आयत 2 से 8 लिखिए, अब आपको आगे दिखेगा इसमें दुनिया में इज्जत दीन पर अमल करने से मिलती है, और खास तौर पे जब आयत नंबर 2 से 3 को देखेंगे तो हिदायत रब्बानी का लुबे लुबाब, और वो है अल्लाह पर भरोसा। जितना अल्लाह पे तवक्कुल करते जाएंगे उतना ज्यादा अल्लाह ताला आपको काफी होता जाएगा। हमने मूसा को किताब दी और उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बना दिया कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज ना बनाना। ए इन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ सवार कर दिया था, वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था, हमने बनी इसराइल के लिए इनकी किताब में साफ फैसला कर दिया था कि तुम जमीन में 2 बार फसाद बर्पा करोगे और तुम बड़ी जबरदस्त ज्यादतियां करोगे। इन दोनों वादों में से पहले के आते ही हमने तुम्हारे मुकाबले पर अपने बंदे भेज दिए जो बड़े ही लड़ाके थे, बस वो तुम्हारे घरों के अंदर तक फैल गए और अल्लाह का वादा पूरा होना ही था। फिर हमने इन पर तुम्हारा गलबा देकर तुम्हारे दिन फेरे और माल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बड़े जत्थे वाला बना दिया, यानी गिरोह वाला बना दिया। अगर तुमने अच्छे काम किए तो खुद अपने ही फायदे के लिए किए, और अगर तुमने बुराइयां की तो भी अपने ही लिए। सोचिए हमारे साथ भी अल्लाह का यही मामला। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे बंदों को भेज दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और पहली दफा की तरह फिर मस्जिद में घुस जाएं और जिस जिस चीज पर काबू पाएं तोड़ फोड़ कर जड़ से उखाड़ दें। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, हाँ अगर तुम फिर भी वही करने लगो जो तुम कर रहे हो, यानी तुम फिर भी वही करने लगे तो हम भी दोबारा ऐसा ही करेंगे। और हमने मुनकिरों का कैद खाना जहन्नुम को बना रखा है। क्या पता चला बनी इसराइल की तारीख की कुछ बातें अल्लाह की किताब हिदायत और रहनुमाई की है। ये बता दिया आयत 2 में बनी इसराइल को जो किताब दी उसके नाते से, लेकिन हमने इन आयात को जो भी मैंने आपके सामने रखी हैं अपने रबी कल्बी के, मेरा गुमान है कि डे 2 के बिल्कुल आखिरी हाफ एन आवर में रिलेट किया था। एडमिन उसका लिंक दे दीजिए, और जो हमारे नए साथी हैं जिन्होंने रबी कल्बी कोर्स नहीं किया कोई बात नहीं, आप जो भी डे ये अभी चैट में लिखेंगे आप वो, मुझे तो गुमान है कि डे 2 था वो आखिरी आधा घंटा, यानी ये आयात थी और आज के हालात कोरोना था। यहां भी 2 वादे हैं, वहां भी 2 हैं, इधर भी 2 वेव्स हैं, उधर भी 2 दफा अल्लाह की पकड़ है, उधर भी चेहरों के बिगाड़ने की बात है, इधर भी चेहरों को छुपाने की बात है चाहे मास्क की सूरत में, और उधर भी दुश्मन घुस आया था, इधर भी कोई ना कोई रंग है। यानी इसको रिलेट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ। अल्लाह सुबहान तआला आपको मुझे बेहतरीन तरीके से अपने पे राजी रखे। इसमें आपने जो अल्लाह ताला पे तवक्कुल और भरोसे की बात पढ़ी है ना, तो याद रखिए ارباط قلب حسی کو ملتا ہے جس کا بھروسہ اللہ پہ ہے, جس کی امیدیں ہیں, جس کا خوف اللہ سے. یہ کرونا کا لاک ڈاؤن ہے, یہ سیکنڈ ویو ہے, اب تھرڈ آ گئی, اب انڈیا سے ایک آ گیا, اب ادھر کی راستے بند, اب ادھر کے, یہ دیکھ رہے ہیں ہم, عادی ہو رہے ہیں ان چیزوں کے. لیکن ان سب میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. آپ کو ارباط قلب چاہیے, ہر فیصلے کو تسلیم و رضا کے ساتھ قبول کیجیے. کوئی اپنا جاتا ہے, کوئی بیگانہ جاتا ہے, ماں باپ جاتے ہیں, بھائی بہن جاتے ہیں, اللہ سب کو بچائے. دعا کرتی ہوں ادھر بیٹھ کر قرآن کی محفل میں کہ اللہ سب سننے والے ہمارے ساتھی اور جو بات میں بھی جو بھی لوگ امت مسلمہ کے لوگ ہیں, یا اللہ ان کے پیاروں کو بھی محفوظ رکھنا, اور ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ ہم توبہ بھی نہ کر سکیں, اور اللہ ہمیں اپنی رضا دے. وہ کہتے ہیں نا کہ رضا حق پہ راضی رہ, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. یعنی من نہ پڑے گا تو مان لیجئے. پھر بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کے جو دو ادوار ہم نے دیکھے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ قومیں جب اللہ کی کتاب سے جڑتی ہیں تبھی ہدایت پاتی ہیں, اور جب کتاب سے کٹتی ہیں تو ہدایت ان سے چھن جاتی ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آیت 9 سے 10 میں دیتے ہیں. ٹاپک لکھئے, سیدھی راہ قرآن ہی بتاتا ہے, یعنی عروج کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم. بہت پیاری آیت ہے, اور ہدایت کی طلب رکھنے والا دل تو ضرور اس کو سنے, کیونکہ یہ قرآن ہے جس کے بغیر ہدایت ملنے کا تصور بھی نہیں. ان نہازل قرآن یہدی للتی ہی اقوم. میرے ذہن میں ترازو آ جاتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے, نہ جانے کیوں, کہ اس ترازو میں ڈال ڈال کر پلڑوں میں رکھتے ہوئے دیکھ لو کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, کس کا کیا وزن ہے. یہی کام قرآن کرتا ہے. تو یہاں آپ انالوجی ذہن میں رکھیے, قرآن کو ایک ترازو بنا کر پیش کیا گیا. کیسے؟ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے, اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے, ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. زندگی میں اب جب ٹیڑے ہونے لگتے ہیں نا, قرآن آپ کا نیویگیٹر بنتا ہے. لکھے لفظ اقوام کو نیویگیٹر, کیا کرتا ہے آپ کا ٹام ٹام؟ یو کے میں ٹام ٹام کہتے ہیں, امریکہ میں جی پی ایس کہتے ہیں, اور کسی ملک میں کچھ اور کہتے ہوں گے. ذرا سا راستہ ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے نا, تو وہ بولنے لگ جاتی ہیں باجی اندر سے, پلیز ٹیک اے یو ٹرن یو ٹرن. قرآن بھی یہی کرتا ہے. آپ اس وقت ہدایت کی طلب لے کر ماشاءاللہ 15ویں پارے تک پہنچ گئے نا, تو اب اتریے گا نہیں. اگر ذرا سے زندگی میں کوئی مستی یا کوئی خرمستی آئی بھی نا, تو قرآن خود بخود آپ کو سیدھا لے آئے گا. یہی اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل سیدھا لاتا ہے, اور وہ تو دو بار بگڑ کے بدلے کے نہ بدلے, لیکن اے امت مسلمہ, تم عروج حاصل کرنا چاہتے ہو, عزت حاصل کرنا چاہتے ہو, اور آخرت میں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہو, تو اس قرآن کو اپنا نیویگیٹر بنا لو. اس کی نقدری کرنے والا دنیا آخرت میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے, جیسا کہ آج مسلمان کسی حد تک ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ پہلا عروج مسلمانوں کو عربوں کی قیادت میں ملا, دوسرا عروج ترکوں کے ذریعے ملا, اور پہلا زوال تاتاریوں کے ہاتھوں آیا, اور دوسرے زوال سے یورپی اقوام نے دوچار کیا. ہمیں بھی پھر سے عروج کے لیے اس قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین. بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا, اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال سے دوچار کرے گا. دعا کیجئے اللہ ہمیں زوال سے بچانے کے لیے اس کتاب سے جوڑ دے, اور دل تھمتا ہی اس کتاب کو لے کر ہے, ورنہ تو دنیا کے لیے آپ ہڑبونگ مچائے پھرتے ہیں, ہر وقت چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 11, انسان بڑا جلد باز ہے, یعنی اللہ سے معین شے نہیں بلکہ بھلائی مانگو. وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ. اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح. انسان ہے ہی بڑا جلد باز. دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے آیت 11, انسان اور اس کی جلد بازی کیا ہے. پہلے تو اس کو ارتباط قلب کے ساتھ سمجھیے, اپوزٹ ہے. جن کے دل مربوط ہو جاتے ہیں نا, پھر عجول نکل جاتا ہے, عجول کی کیفیت نہیں رہتی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آجلہ شیطان کی طرف سے ہے, سکینت اللہ کی طرف سے ہے. جلدی جلدی نماز پڑھنا, جلدی جلدی بولنا, تیز تیز کام کرنا, چل رہے ہیں تو آدھی چیزیں گرا رہے ہیں, ہوا ورولے کی طرح گرتے پڑتے, چولہا کھولا آدھا گرا آدھا ڈالا, چمچہ ادھر گرا ہانڈی ادھر گر, کیا ہو گیا ہے آپ کیوں اتنے عجول ہیں؟ لکھیے ارتباط قلب لیجیے, ٹھہراؤ لائیے, जितना नसीब में मिल जाएगा, जो कर सके कर लेंगे, जो पक गया जो नसीब में खा लेंगे, जिंदगी से ये बेचैनियां निकालिए। हाँ, हांपना है कांपना है तो अल्लाह के इस दीन के लिए हांपिए कामिए। तो इंसान के दिल को जिस सरगर्मी के साथ खैर का तालिब होना चाहिए, इस सरगर्मी के साथ वो अपने लिए आफत और तबाही का मुतालबा करता है। जी सच कह रही हूं, वो माएं जो अपने बच्चों के लिए न जाने क्या क्या तकाजे करती हैं अपने शोहरों से, बच्चे को ये चाहिए वो चाहिए, इसका सरेलक नहीं, इसकी चमची टूट गई, इसका खाना चला गया, बड़े हुए बैग नहीं है, पेंसिल नहीं है, जाइए लेकर आइए, क्या हुआ, टमाटर नहीं है फ्रिज में, ये नहीं है, जल्दी करे, दूध लेकर आए, भाई सब्र तो कीजिए। आज अपने अंदर एक तबात लाइए, जिंदगी की जो मोहलत मिली हुई है इससे फायदा उठाने की बजाय जल्द से जल्द इस अजाब को देखना चाहता है इंसान जिससे इसको आगाह किया जा रहा है, यानी इस दुनिया से ज्यादा लेना चाहता है अपने नसीब से बढ़कर। अल्लाह आपको मुझे इससे निकालकर इत्तबात कल्ब अता फरमा दे। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना, इसीलिए सिखा दिया कि जो मिल जाता है उसको ले लो, बाकी छोड़ दो, अल्लाह पे डाल दो। सब कुछ तुम्हें थोड़ी मिलना है, आपका एक सेल का साइन मिस हो जाए और आपकी दोस्तें चार जोड़े ले आए जो आपको नहीं मिले, आप परेशान। इर्तबात रब्बित राबितु, थमके रहो, दिल की धड़कने तेज हो गई तो हो सकता है दिल पे बोझ पड़ के दिल का दौरा ही ना पड़ जाए। छोटी छोटी चीज पे क्यों मरते हो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कर ख्वाहिश पे दम निकले। बस लोगों को तो इर्तबात कल्ब की जरूरत होती, बाजार जाकर हौके भरती है, हाय मेरी दोस्त ने ले ली, और आप तो बाहर भी नहीं जाना पड़ता, फेसबुक ही बहुत है आपको, घर बैठे आपको वो दिखाए मैं मर गई, हाय मैं मर गई, क्या हुआ, हाय ये जोड़ा मैंने लेना, वो किसी की बात इतना प्यारा जोड़ा ला के दे जो देखे वो मर जाए, तो कहा जो मर ही जाना है तो तुमने दिखाना किसको है, इतना प्यारा जोड़ा मुझे चाहिए, इर्तबात चाहिए। जो जोड़ा पहने क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई आज तक तुम इस वर्ड का खिताब किसी ने दिया ना आपको मुझे, आप मेहमानों के आने पे क्यों होकलाते रहते हैं बुकलाते हैं, मियां गरीब बेचारा बुद्धू बन के जो पहले ही आपको देख रहा था आप उसको एन वक्त पे भेजिए, जाए नहीं नहीं लेकर आए, जाइए जल्दी करें दही लेकर, भाई नहीं दही होगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा रायता तो क्या होगा, सारे सब थोड़ी खाते, नहीं खाना खा मैं, खाना खा मैं, जल्दी करो जल्दी करो। इर्तबात प्लीज ठहराओ लाइए, और बहनों को इसकी बड़ी जरूरत है और भाइयों को भी जरूरत है जो गुस्से में आकर बीवी को छोटी सी बात पे कुछ ना कुछ कहने लग जाते हैं, क्या हुआ अगर आज थोड़ा सा नमक तेज हो गया फिर के बैठ जाइए, इट्स ओके। तो बहरहाल ये बात तो आपके किचन में चली गई, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम कुरान पे रहें, लेकिन आपको अमली जिंदगी की मिसालें देना फर्ज है मेरा, क्योंकि आप बहुत कीमती वक्त दे रही हैं इस वक्त कुरान को। आगे देखिए आयत 12 से 15, रात और दिन अल्लाह की दो रहमत भरी निशानियों की सूरत में है, और इसी में आपको फिर आगे इंसान की जिंदगी की किताब दिखेगी। وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ, हमने रात और दिन को अपनी कुदरत की निशानियां बनाई हैं, यानी हमने रात और दिन को अपनी कुदरत की निशानियां बनाया है, और रात की निशानी को तो हम बेनूर कर देते हैं, यानी रात को तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता, और दिन को निशानी यानी दिन की निशानी को रोशन बनाया है ताकि तुम लोग अल्लाह का फजल तलाश करो, और इसलिए भी कि बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर सको, और हर हर चीज को हमने खूब तफसील से बयान कर दिया, यानी रात दिन के आने जाने की बात एक को सिया एक को रोशन करके बता दिया कि रात को आराम करो दिन को काम करो, जो रात के सोने और दिन के काम को सेटल नहीं करता उसके अंदर कभी इर्तबात नहीं आएगा, उसके काम कभी पूरे नहीं होंगे, वो कभी फारिग नहीं होगा, हर वक्त एक ही कहेगा वक्त नहीं मिलता। तो वक्त लेने के लिए इस आयत पे नोट कीजिए अपने लिए कि सोने जागने के औकात को मैनेज कीजिए, और फिर इसके बाद जब रात दिन का फेर चलता है ना तो आपका मेरा नाम अमाल उसके मुताबिक ढलता है, कैसे देखिएगा, हमने हर इंसान की भलाई और बुराई को इसके गले लगा दिया है, और बरोज क्यामत हम इसके सामने इसका अमाल नामा निकालेंगे जिससे वो अपने ऊपर खुला हुआ पाएगा, और कहा जाएगा इकरा किताब कफा बि नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, ले खुद अपनी किताब आप पढ़ ले, आज तो तू अपना खुद ही हिसाब करने के लिए काफी है, जो राह रास्त हासिल कर ले वो खुद अपने ही भले के लिए राह याफ्ता होता है, और जो भटक जाए इसका बोझ इसी के ऊपर है, कोई बोझ वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर ना ला देगा, और हमारी सुन्नत नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही अजाब करने लगे, तो खूबसूरत आया था। इसे बहुत ही दफा लेक्चर दिए हैं डेलस में और अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स में, जिसमें अमालनामे का तस्करा होता था। तो आप सुनना चाहें तो वो पुराना एक लेक्चर को निकाल कर इनको दे दीजिए। इसी एक आयत पे बीसियों बार दर्ज दिया, एक खरा किताब बकफा बिनफ्सी कल यौम अलैका हसीबा। अभी आज सिर्फ इतना समझ लीजिए, पहली तो बात है कि कोई चीज मनहूस नहीं होती। नखुसत इंसान के अपने बुरे आमाल के साथ है। बाज लोग अच्छे बुरे मामलात को तकदीर के साथ रखते हैं, हालांकि शायद से आपको पता चला आपके आपके बुरे काम आपकी नखुसत है। किसी गुनाह की सजा में अल्लाह आपको पकड़ रहा होता है या आपके दर्जे बुलंद करता है। दूसरी बात है कि हमें से हर एक किताब लिख रहा है। किताब जिंदगी के नाम पर भी कोई लेक्चर अगर आपको दिखा है वेबसाइट पर तो वो इसी आयत के ऊपर है। आज चली हुई है, सुबह रोज उठते हैं एक नया पेज खुल जाता है। रात दिन की आयत के साथ देखिए इसको जोड़कर, हर रोज सुबह उठते हो तो तुम्हारी जिंदगी का एक सफा खोल दिया जाता है और कहते हैं लिखो। जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं लिखा जा रहा है। शाम को सो जाते हैं, सफा पलट दिया जाता है, अगले दिन एक और सफा खुल जाता है। तो हर इंसान का अमलनामा उसकी गर्दन में लटका हुआ है। क़यामत के दिन एक किताब की सूरत में कंपाइल्ड होगा और कहा जाएगा आज तुम अपने हिसाब के लिए काफी हो। दुनिया में दूसरों का हिसाब लेने वाले, हर वक्त दूसरों को शक की निगाह से देखने वाले, गिले शिकवे करने वाले और उनके बारे में कहने वाले कि इनको पता नहीं अल्लाह ने किधर भेजना है, ये वो और दी फुला, और खासतौर पर अगर वो नेक भी हो तो कहा जा रहा है अपना हिसाब ले लो। और हिसाब के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह आपको मुझे आज दुनिया में उतना ही बोझ लादने वाला बना दे जो कल हम उठा सकें आराम से। आगे आयत नंबर 16 से 17 में ऐश परस्ती की कुछ बातें हैं और अल्लाह ताला बता रहे इन आयतों का मैसेज कि कौमों पर अजाब इत्माम हुज्जत के बाद आता है। कैसे, आइए देखिए। वह इजारत ना नुहली का करियत न मर्द ना मुतरफी हा। और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा कर लेते हैं तो वहां के खुशहाल लोगों को कुछ हुक्म देते हैं और वो इस बस्ती में खुली नाफरमानी करने लगते हैं, तो इन पर अजाब की बात साबित हो जाती है, फिर हम इसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। दुआ कीजिए हम पर इत्माम में हुज्जत ना हो जाए क्योंकि उसके बाद अजाब होगा। कल फिर आपके इसी शहर में एक घर जमीन के अंदर गया है, क्या बनेगा? आपके मेरे घरों के करीब खसफ हो रहे हैं। रात को दुआएं मांगकर, तौबा कर माफियां मांगकर, इंसानों से मामले सीधे करके सोए, नहीं पता कि जमीन के अंदर ही हमारे घर की कब्र आ जाए कि इसी में रहो। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बिग़ज़बिक, वला तुहलिकना बिअज़ाबिक, वाफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। क्या हो रहा है दुनिया में हर लम्हे, क्या कुछ अल्लाह दिखा रहा है। तो ये अज़ाब की आयतों पर दुआएं मांग लिया करे कि अल्लाह मुझे अपने अज़ाब में ना लेना। जम लिखिए, अल्लाह मुझे किताब से ही हिदायत दे दे, अजाब से ना देना। जो कौमें किताबों से हिदायत नहीं लेती फिर अल्लाह ऐसे अजाबों के झटकों से कहता है सीधे होते हो कि नहीं? और साथियों ने कहा कि हम सीधे हो गए थोड़ी देर में, जबकि अपनी गली के दूसरे गली के पास ये सब दिखा। क्या पता नहीं अगला घर हमारे ही ना, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ। उस वक्त हम सीधे होते हैं, अल्लाह चाहता है जब मुतमईन हो तब सीधे हो जाओ। इर्तबात दिल को थामिए, किसी लम्हे कुछ हो सकता है। आगे कौमे नूह का तस्करा किया गया। हमने नूह के बाद भी बहुत सी कौमें हलाक की और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार और खूब देखने भालने वाला है। किसी पे कोई उंगली ना उठाए कि किसका क्या गुनाह था, कैसे हुआ, अपनी फिक्र कर लो। और अपनी फिक्र में फिर आगे आयत आ रही है 18 से 21, दुनिया के चाहने वाले और आखरत के तलबगार में फर्क क्या है। अल्लाह कहता है कि तय कर लो आज। अगली आयतों को सुनने से पहले खुद से दुआ कीजिए कि आज एक फैसला करके उठूंगी यहां से। तय कीजिए, तलबगारे दुनिया हूं या तलबगारे आखरत हूं। सूरत बकरा से ये मजमून चलते हुए यहां कितनी दफा आ गया, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज की आयतें ही आपके मेरे दिल से इस दुनिया की गंदगियों को निकाल दें और इसी के हलू में परेशान होते हुए अपने दिलों को बेचैन करने की बजाय दिलों को थाम लें, दिलों को बांध लें, पट्टियां बांध लें अपने दिलों पे, दुनिया की मोहब्बत को बाहर फेंक दें। आइए सुनते हैं। मन का न युरी तुला जिला तजलना लहू फी हा। दुनिया को यहां देखिए आजिला कहा गया, जिसका इरादा सिर्फ इस जल्दी वाली दुनिया यानी फौरी फायदे का ही हो, इसे हम यहां जिस कदर जिसके लिए चाहें सरे दस्त देते हैं। बिलाखिर इसके लिए हम जहन्नम मुकर्रर कर देते हैं जहां वो बुरे हालों में धुतकारा हुआ दाखिल होगा। यह है दुनिया का हलू। आज से नियत कीजिए और आज की इफ्तारी से इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी वक्त पे ग्रोसरी नहीं आएगी, आखिरी वक्त पे मियां बीवी का झगड़ा नहीं होगा, आखिरी वक्त पे बच्चे गरीब को नहीं भेजूंगी कि जाओ जाओ लेकर आओ, कुछ नहीं होता, एक खजूर ले लो रस्ते में खा लेना। इत्तबात चाहिए, क्या हुआ? वहां तो एक खजूर से रोजा खुलता था, जहां से रोजे शुरू हुए। आपके घर में रोज इफ्तारी के वक्त पे एक हलू क्यों होता है? आज की इफ्तारी को आपने एक एक्टिविटी के तौर पर तहम्मुल से गुजारना है। घर वाले भी महसूस करें कि आज बेगम क्या हो गया, कहना आज इर्तबात कल्ब हो गया, मेरे दिल को अल्लाह ने थाम लिया। ये जो सारा कुछ लेने की ख्वाहिश करते हैं ना, यही है असल में हलू, परेशानियां इसके बार। और जब दुनिया में थोड़े पे राजी है ना, तो फिर आखिरत का आगे फैसला सुन लीजिए। और जिसका इरादा आखिरत का हो और जैसी कोशिश इसके लिए करनी हो या जैसी कोशिश इसके लिए होनी चाहिए वो करता भी हो और वो बेईमान भी हो, बस यही लोग हैं जिनकी कोशिश की अल्लाह के यहां पूरी कदरदानी की जाएगी। तकाबुल कीजिएगा रमजान के बाद इस आयत की स्लाइड पे अपने आप को रोक कर कि दुनिया के लिए सिर्फ ये ख्वाहिश है इरादे और आखिरत के लिए फिर कोशिश है, और वो भी जेरे वो इतनी कोशिशें कि जितनी होनी चाहिए। और रह गई बात कि फिर दुनिया या आखिरत मिलती किसको कितनी है, तो फरमा दिया हर एक को हम बहम पहुंचाए देते हैं, यानी दुनिया और आखिरत, इन्हें भी और उन्हें भी। तेरे परवरदिगार के इनामात से तेरे परवरदिगार की बख्शिश रुकी हुई नहीं है। देख ले कि इनमें से हर एक को एक पर हमने, यानी देख ले कि इनमें एक को एक पर हमने किस तरह फजीलत दे रखी है, और आखिरत तो दर्जों में और भी बढ़कर और फजीलत के एतबार से और भी बहुत बड़ी है। क्या पता चला इस 19 में आपको कि नेकी की कोशिश करने वालों की कदरदानी होगी, और जितनी आज दुनिया में थोड़ी चीज पे अपने आप को जमा के रखेंगे उतना ज्यादा आखिरत में आपको सुकून और इत्मीनान मिलेगा। अल्लाह ताला ने आपको मुझे यहां यही पैगाम दिया। आगे से थोड़ा सा आपको तारुफ करवा दूं, आयत नंबर 22 से ऑनवर्ड आपके सामने एक नया रुकू शुरू हो रहा है, यानी 22 आयत के बाद 23 से आगे चलेगा। तो अभी से ले लीजिए, ये दो रुकू इकट्ठे चलेंगे। अभी भी देख लीजिए, तौहीद का तस्करा है पहली आयत में 22 में, और आगे देखेंगे तो इन दो रुकू के एंड पे भी तौहीद का जिक्र है। तौहीद के तस्करों के बीच में ये आयत 23 से ऑनवर्ड जो पूरे दो रुकू हैं, इसके बारे में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि ये तौरात का कुरानिक वर्जन है। 10 कमांडमेंट्स यानी अहकाम अशरा का कुरानी वर्जन इन आयात में मौजूद है, और आप देखेंगे कि इसमें तरतीब वही है जो अल्लाह ताला ने पीछे भी दी। पहले पढ़ लेते हैं फिर थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। लिखिए आयत 22 से 26, टॉपिक है मुसलमानों के लिए अहकामाते अशरा, और साथ ही साथ फिर तरतीब को देखेंगे तो आयत 23 से 25 में टॉपिक क्या है, अल्लाह के बाद हक वालदैन का है। ला तजल माल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को माबूत न ठहराओ कि आखिर में तुम बुरे हालों बेकस होकर बैठे रहोगे। लिखिए मुशरिक को कभी इर्तबात कल्ब नहीं मिलता, बेचैन होगा, इस दरगाह से नहीं मिला उधर चलते हैं, यहां से इस पीर साहब से नहीं मिला उस बाबा जी, उस दरगाह उस कब्र उधर, वो कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात। तो मुशरिक का दिल कभी जमता नहीं है क्योंकि उसके लिए और बड़े दर खुले हैं ना। ये ऐसे ही जैसे एक सिस्टर एक दुकान पे गई, उधर नहीं मिला उधर जा रही है, अच्छा उधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, क्या जरूरत है? जब आपको होता है जो लेना मैंने इसी दुकान से लेना, तो ठंडे होके बैठिए। देखिए दीन भी अगर आप इर्तबात के साथ एक ही दर पे लगे हुए लेते रहेंगे ना, और अगर वो तरतीब के साथ आपको दे दें तो आपके लिए वही काफी है, ताकि आपका एक माइंडसेट तो बने। प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक आप एक ही स्कूल में रहें तो मुतमईन होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी तरतीब से चलती है तो आपको एमए तक पहुंचते हुए सब कुछ मिल चुका होता है, और अगर आप इधर से उधर उधर से उधर भड़कते और लुढ़कते हैं ना, तो उसका नुकसान होता है कि आप एंड पे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। फिर इसके बाद देखिए कि अब आयात को सुनते वक्त जरा सर रखाए के कल्बी है, ये पारा आपको बूढ़े माँ बाप के बारे में कुछ बताने वाला है। पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने माँ बाप का बहुत जगह तज़किरा किया, 5 मरतबा कम अज कम कुरान पाक में लिखिए, ये भी आपके लिए याद दहानी है, यानी पूरे कुरान में कमो बेश 5 बार अल्लाह ताला ने अपने हक के फौरन बात माँ बाप के हक की बात की है, मुताबकत है दोनों में, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक हकीकी है तो माँ बाप दुनिया में तखलीक का जरिया बनते हैं, अल्लाह ताला राज़िक हकीकी है लेकिन बच्चे को देखना पालना पोसना माँ बाप उसके मजाजी राज़िक होते हैं, अल्लाह ताला मुहाफिज़ हकीकी है लेकिन जाहिर में देखा जाए तो माँ बाप गर्मी सर्दी से बचाते, पेट के दर्द से बचाते, छोटा सा बेबी कैसे बड़ा होता है देखिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला दिए चला जाता है बगैर किसी तवक्को के, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, इसी तरह माँ बाप भी अपनी औलाद को देते ही रहते हैं, उनको उनसे उम्मीद नहीं है। और अगर आप कहते हैं नहीं इनको हमसे उम्मीदें थी कि हम इनको बुढ़ापे में देखेंगे, तो कभी उस माँ को देखिए जो अपने हैंडीकैप बच्चे को देखती है, वो बच्चे तो माओं को और भी प्यारे हो जाते हैं जिनको जिनसे कोई कुछ भी उम्मीद नहीं होती। फिर इसी तरह हम अल्लाह के ना शुक्रे बनते हैं, इसी तरह माँ बाप को भी हम कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अपने लिए ये सारी बातें सामने रखते हुए सुनिएगा, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा और किसी की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों यानी बोथ और वन सिंगल बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनके आगे उफ तक न कहना, न इन्हें डांट डिपट करना, बल्कि इनके साथ अदब और एहतराम से बात करना, और जब जरूरत पड़े तो फिर दुआ कर लो वालदैन के साथ। I 24:23 देखिए, 24 में रब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। ये लफ्ज रब्बयानी है ना, इसकी तरकीब पर चली जाऊं तो 10 मिनट चाहिए मुझे आपको बात सुनने के लिए। अल्लाह सुबहान तआला यहां हमें माँ बाप के हक पहचानने की दावत देता। बात तो सच है कि औलाद अपने आप को माँ बाप से बड़ा ही समझती है। कुरान पाक में जहां भी माँ बाप की बात हुई, लेकिन यहां बूढ़े माँ बाप की बात हुई तो जरा सा समझिएगा इस बात को। माँ बाप जवानी से पहले के दौर में जब हम छोटे और माँ बाप जवान होते, बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, क्योंकि दे जुड़े होते हैं। इवन पॉकेट मनी तक तो हम उनसे लेकर स्कूल में जाते हैं, और अब्बा और अम्मा से कितने मुतालबे हैं हमारे अभी तक, बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चे के लिए तो माँ बाप हीरोज होते हैं, उनके लिए तो वो रोल मॉडल है, जो माँ बाप करेंगे बच्चे वही करेंगे। लेकिन जवानी तक, जब तक हम अभी कमाने के काबिल नहीं होते, माँ बाप हमारे लिए सब कुछ होते हैं। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा कमाने और थोड़ा उनसे लेने पे होते हैं तो जरा सा चिड़चिड़ापन आने लगता है मिजाज में, फिर हम कहते हैं अच्छा ना क्या है। और फिर जब हम खुद जवान होकर कमा कमा कर घर बनाकर पाल पोस के बच्चों को बड़ा करते हैं, 40 के करीब पहुंचते हैं, दो जनरेशन को अल्लाह साथ जोड़ देता है, आगे हम पढ़ेंगे एक बारे में इसके ऊपर इंशाल्लाह, तो फिर सबसे मुश्किल है। माँ बाप और औलाद का ताल्लुक इस बारे में बहुत आ रहा है, अभी पहली दफा आया, आगे आएगा तो आपको पॉइंट आउट कराऊंगी इंशाल्लाह। और इसमें भी इर्तबात कल्ब चाहिए, बूढ़े माँ बाप के साथ सब्र करना ये चाहिए इर्तबात, इसलिए कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो कभी कभी नाकाबले बर्दाश्त हो जाते हैं, बुढ़ापे में वालदैन आजमाइश बन जाते हैं। 6-7 बच्चों को एक माँ और एक बाप पाल लेते हैं, और 6-7 भाई बहन मिलकर माँ बाप को पाल नहीं सकते, उनको लगता है कि ये बड़े मुश्किल है हमारे लिए, हम इनको कैसे चलाएं और क्या करें, और इट्स टू मच फॉर अस और दिस एंड दैट। और फिर नतीजा क्या होता है कि आज तेरी बारी, तुम अम्मा को ले जाओ, और फिर एक जुल्म करते हैं कुछ औलादें, अल्लाह जिंदगी दे दोनों मियां बीवी जिंदा हो तो कहते हैं अम्मा को तुम रख लो अब्बा को मैं रखूंगी, नाउज़ुबिल्लाह ये अम्मा अब्बा हो गए, क्योंकि पोटलियां जो घरों में रखनी है, हड्डियों की मुठियां बनी हुई माँ बाप, वो बूढ़ा बुढ़ी साथ रहेंगे तो एक दूसरे को एनर्जी मिलेगी, उनकी मसरूफियात एक है, उनकी बीमारियां एक जैसी, उनके दुख सुख एक जैसे हैं, तुम क्या कर रहे हो उनको अलग करके, कभी ये जुल्म ना कीजिए। आपको मुझे अपने माँ बाप की टेक केयर करने का अगर मौका मिल जाए तो ये गनीमत है। माँ बाप की खिदमत इस तरह कीजिए कि आपने खिदमत का मौका देकर मुझ पर एहसान किया, ये है वबिल वालिदैनी एहसाना, इट्स एन ऑनर फॉर मी। और ये जो लफ्ज है ना ओफ, किसी ने कहा ओफ, ओफ की फूक से उनके दिलों के चिराग बुझ जाएंगे, और ओफ बॉडी लैंग्वेज है। عربی زبان میں اف کا لفظ وہی ہے جس کو آپ اگر اردو میں کریں تو اخ اخ آپ اخ کا لفظ بولتے ہیں نا تو ماں باپ کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ آپ نے انتہائی گستاخی کا لفظ بول دیا تو آج کے بعد نہ تو اف ہے اور نہ کبھی اخ ہے آپ دیکھیے کہ نعتوں میں ہم نے تین انداز سیکھے بولنے کے اور چوتھی دفعہ دیکھ لیں تو بازوؤں کو جھکانے کی بات ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ رحمت کے بازو بچھا دو عزت چاہتے ہو اڑنا چاہتے ہو بلندیاں چاہتے ہو تو پرندہ اڑنے سے پہلے جیسے بازو سکیڑتے ہیں نا تو ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو اس طرح جھکیڑ دو اس طرح سکیڑ دو ان کے ساتھ کہ جیسے انہوں نے تمہیں پالا تھا ہر روز ان کا خیال رکھو یہ مدر ڈے اور فادر ڈے ظلم ہے پھر باقی سال کے دن کون دیکھے گا ان کو آپ دیکھیے دو چیزوں کو دیکھنے کا اجر ہے ایک اللہ کے گھر کو اور ایک ماں یا باپ کو صحابی نے کہا اللہ کے نبی اللہ کے گھر کو دیکھنے کو حج کا ثواب ہے جی تو اگر کوئی دن میں بار بار دیکھے تو کہا تم اللہ کو عاجز سمجھتے ہو ہر بار اس کو دیکھنے کا اجر ہے اور بعض بچے غلطی کرتے ہیں میں اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر رہا ہوں پیسے نہیں بچتے ظلم کیا آپ نے یہ جملہ بول کے آپ ان کو سپورٹ کریں گے اللہ تو کہتا ہے اللہ کے نبی کی زبان کی صورت میں کہ انت و مالک لی ابی تو اور تیرا مال تیرے ماں باپ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تو یاد رکھیے ماں باپ کو اپنے لیے نیکیوں کا موقع سمجھیں اور ارتباط قلب ہمارے ہاں بسوں اور رکشوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے ماں دی دعا تے جنت دی ہوا یہ ماؤں کی دعائیں اور باپوں کی جو دعائیں باپ دیتے دکھتے نہیں ہیں لیکن دل سے دیتے ہیں ماں دل میں سارا دن دیتی رہتی ہے اس لیے ماں کی دعاؤں کی قدر بھی کوئی نہیں رہتی ہم کہتے ہیں چھوڑو یہ کیا ہوتا ہے اور دس اینڈ دیٹ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا آپ کو مجھے آپ کہتے ہیں ہمیں پسند ہی نہیں نہیں پسند تو آپ کو چوز تو نہیں کرایا گیا تھا کہ رشتہ پسند کرو اللہ نے چوز کیا لے لیجئے آپ کے لیے اللہ نے جو پسند کیا ہے آپ کے گھر ماں باپ کے لیے عیدی ہوم نہیں ہے آپ کے گھر ماں باپ کے لیے اولڈ ہومز نہیں ہے یہ ان کا گھر ہے جس میں اللہ آپ کو بھی رہنے دے رہا ہے اور یاد رکھیے عقوق الوالدین کہتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کو اور اس کے لیے اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا کتنی مثالیں آپ کے ارد گرد ہوں گی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ماں باپ یا کسی ایک کو ستایا پھر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا سے گئے اللہ نے جب تک پاک نہ کر لیا دنیا سے جانے کا موقع نہ بنا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا توفیق دے اور آج یہ سب کچھ ماں باپ بچوں کے لیے کر رہے ہیں کل آپ اگر ان کے لیے کچھ کریں گے تو کوئی احسان نہیں کریں گے اور ایک جم لکھ لیجئے کہ ماں باپ کو برداشت نہیں کرنا ان کو سرو کرنا ہے جتنی مرضی ماسیاں اور جتنی مرضی میڈز رکھ لیجئے ان کو جو آپ سے لذت ملے گی جو آپ کا قرب آپ کا دس منٹ ان کے پاس آ کر بیٹھ جانا ان کا دل کا دکھ سکھ سن لینا ان کو سارا دن خوش کرتا ہے اور وہ بچے جو ماں باپ کی سن ہی لیتے ہیں نا بس وہ ان سے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ میری بات تو کم از کم سن لیتا ہے اور اگر آپ سننا نہیں چاہتے اور یہ جو بات ہے نا لا تنہر ہما تو لکھیے ایک جملہ اور وہ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ کہ ماں باپ کی تربیت نہیں کی جاتی ان کو بس ایز اٹ از قبول کیجئے ہم جب اپنے ماں باپ کی تربیت کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو ڈانٹ ڈانٹ کے سمجھاتے ہیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا میں نے آپ کو وہ نہیں کہا تو سمجھیے کہ وہیں معاملہ بگڑے گا ہاں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اندر ارتباط لائیں ربط لائے بڑھاپے کا معاملہ یہ پھر کسی جگہ پہ بات کر دوں گی انشاءاللہ جہاں بھی بڑھاپے سے متعلق آیتیں آئیں گی لیکن آپ کے میرے لیے یہاں یہی بات ہے اب اس کے اوپر ایک پوئم ہے میں آپ کو اس کے چند مصرے پڑھ کے چھوڑ دیتی ہوں بعد میں آپ انشاءاللہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ سن لیجئے یہ ماں باپ کی ایک پکار ہے اس کا ٹاپک ہے شاید کل تم جان سکو یعنی آج ان کی زندگی میں قدر نہیں ہے لیکن کل تمہیں سمجھ آئے گا کہ وہ ماں کتنی قیمتی تھی اور وہ باپ کتنا قیمتی تھا کبھی کبھی ان کی دوائیوں کا بوجھ بھی لگ جاتا ہے نا انسان کو تو پھر وہ دوائیاں 1000 کی کھاتی ہیں تو جو دعائیں دیتی ہیں وہ 5000 سے زیادہ کی برکت آپ کی کمائی میں لے آتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ تو ایک ماں کی پکار ہے شاید کل تم جان سکو ماں کہتی ہے میرے بچوں अगर तुम मुझको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माहो साल में देखो, सब्र का दामन थामे रखना, कड़वा है ये घूंट पर चखना, उफ ना कहना, गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना, रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हाथ मेरे घर कमजोरी से कांप उठे और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत तकना, लहजे को बेजार न करना, भूल न जाना इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा, जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर मल देते थे, मैं तुम्हारा बोसा लेकर हंस देती थी, रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। कपड़ों की तब्दीली में गर देर लगाऊंगी, कपड़ों की तब्दीली में जब देर लगाऊंगी, नहीं बदले जाते ना, हाथ ही नहीं उठ जाते ना, तो क्या करे फिर इंसान। तो एक माँ की पुकार है अपने बच्चों में कि अगर मैं कभी कपड़े बदलने में देर लगाऊं तो तुम क्या करो, उफ नहीं कहोगे, मुश्किल में नहीं पड़ोगे, क्या कहोगे, बल्कि रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। कपड़ों की तब्दीली में गर देर लगा दूं या थक जाऊं, मुझको सुस्त और काहिल कहकर और मुझे बीमार न करना, भूल न जाना कितने शौक से तुमको रंग बरंगे कपड़े पहनाती थी, एक एक दिन में दस दस बार बदलवाती थी। आप भी मेरे साथ कहिए रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। क्या पता आपकी ये दुआ उनकी बीमारियों को कम कर दे, और अगर वो कब्रों में है तो अल्लाह वहां की ठंडक ले आए, और जिनकी बीमारें बीमार हैं और चली गई दुनिया से, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। कल हमारी एक बहुत ही अजीज और काबिल इज्जत साथी की डेथ हुई, जो एक वक्त में सहीलुल जन्ना की बहुत एक्टिव स्टूडेंट और फिर नूरुला नूर करने वाली। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी उनके नोट्स मिले तो आप लोगों से शेयर करेंगे। हमारी अपनी भी एक बहुत प्यारी साथी की माँ भी हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। कल उनकी डेथ हुई तो कहिए रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। मेरे ये कमजोर कदम गर जल्दी जल्दी उठ ना पाए, मेरा हाथ पकड़ लेना तुम तेज अपनी रफ्तार न करना, भूल न जाना मेरी उंगली थाम के तुमने पाँव पाँव चलना सीखा, मेरी बाहों के हलके में गिरना और संभलना सीखा, रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, खुद को दोहराऊं, टूटा रब पकड़ ना पाऊं, यादें माजी में खो जाऊं, आसानी से समझ ना पाऊं, मुझको नरमी से समझाना, मुझसे मत बेकार उलझना, उकता कर घबरा कर मुझको डांट ना देना, दिल के कांच को पत्थर मार के किरची किरची बांट ना देना, भूल ना जाना जब तुम नन्ने मुन्ने से थे, एक कहानी सो सो बार सुना करते थे, और मैं कितनी चाहत से हर बार सुनाया करती थी, जो कुछ दोहराने को कहते मैं दोहराया करती थी, रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। अगर नहाने में मुझसे सुस्ती हो जाए, मुझको शर्मिंदा मत करना, ये ना कहना आपसे कितनी बू आती है, भूल ना जाना जब तुम नन्ने मुन्ने से थे और नहाने से चिढ़ते थे, तुमको नहलाने की खातिर चिड़िया घर ले जाने में तुमसे वादे करती थी, चिड़िया घर ले जाने में तुमसे वादे करती थी, कैसे कैसे हीलों से तुमको आमादा करती थी, रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। घर में जल्दी समझ ना पाऊं, वक्त से कुछ पीछे रह जाऊं, मुझ पर हैरत से मत हंसना और कोई फिक्रा न कसना, मुझको कुछ मोहलत दे देना, शायद मैं कुछ सीख सकूं, भूल न जाना मैंने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया था, खाना पीना चलना फिरना मिलना जुलना लिखना पढ़ना और आंखों में आंखें डाल के इस दुनिया की आगे बढ़ना, रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। मेरी खांसी सुनकर अगर तुम सोते सोते जाग उठो तो मुझको तुम झिड़की ना देना, ये ना कहना जाने दिन भर क्या क्या खाती रहती हैं और रातों को घूं घूं करके शोर मचाती रहती हैं, भूल न जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपनी गोद में लेकर टहल टहल कर काटी हैं, रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। अगर मैं खाना ना खाऊं तो तुम मुझको मजबूर न करना, जिस शय को जी चाहे मेरा इसको मुझसे दूर न करना, परहेजों की आड़ में हर पल मेरा दिल रंजूर न करना, किसका फर्ज है मुझको रखना इस बारे में एक दूजे से बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना, जिसको कुछ मजबूरी हो इस भाई पर इल्जाम न धरना, रब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर मैं एक दिन कह दूं अब जीने की चाह नहीं, यूं ही बोझ बनी बैठी हूं कोई भी हमराह नहीं, तुम मुझसे नाराज न होना जीवन का ये राज समझना, बरसों जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब जीवन की रूह तो रुखसत हो जाती है, सांस की डोरी रह जाती है, शायद कल तुम जान सकोगे इस माँ को पहचान सकोगे, गरचे जीवन की इस दौड़ में जो कुछ था तुम पर वार दिया, तुमको सच्चा प्यार दिया, रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब मैं मर जाऊं तो मुझको मेरे प्यारे रब की जाने चुपके से सिरका देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना, रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे प्यारे रब से कहना रहम हमारी माँ पर कर दे और बाप पर भी, जैसे उन्होंने बचपन में हम कमजोरों पर रहम किया था, रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। भूल न जाना मेरे बच्चों जब तक मुझ में जान थी बाकी, खून रगों में दौड़ रहा था, दिल सीने में धड़क रहा था, खैर तुम्हारी मांगी मैंने, मेरा हर एक सांस दुआ था, रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह करे कि ये बातें किसी के दिल को खोल दें और वो बच्चे जो जवानी के नशे में अपने माँ बाप को कुछ ना समझें, वो इसे हिदायत पा लें और इस नियत से भी पूरी पढ़ दी कि अल्लाह इसके बाद इसी नेकी पे वक्त में बरकत दे और हम अगला हिस्सा पूरा सुकून से कर सकें। अल्लाह हमें और मुझे भी आज इस्तबात दे दे कि मैं बगैर भागे दौड़े आपको पूरा पारा वक्त पे करवा सकूं। बात यह है कि कुरान पढ़ना बहुत आसान है लेकिन हिदायत की तलब से इसको पढ़ना और इसको अपने लिए लेना ये बहुत मुश्किल है। रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वो दुआ है जो आप अपने लिए भी मांगेंगे ना तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको कोई खुशी मिलेगी तो आपके माँ बाप को भी उससे फायदा होगा। तो बहरहाल इस पे बहुत पिछले सालों में कहा गया, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन तरीके से अपने माँ बाप के हक में सुरखरू करे और अगर कहीं भी कोई उनकी कमी बेशी हुई तो उनको भी अल्लाह तौफीक दे कि वो हमें माफ कर दें, और अपने बच्चों की रक़ते कल्बी के लिए उनको ऐसी बातें जरूर सुनाएं, लेकिन सिर्फ ये बातें न सुनाएं। हो सकता है बात की ये आयतें ये आज की पोइम या बातें सुनकर आप में कुछ माएं अपने बच्चों को कहें ये सुनो, ये ना कीजिएगा। आप जब अपने से जोड़ेंगे तो वो आपसे कटेंगे, वो कहेंगे देखा अपने मतलब की बातें सुनाती हैं, आप उनको शुरू से क्यों नहीं सुनाते, पूरा सुनाइए। जब रब का हक समझ आ जाएगा तो माँ बाप का हक समझ आने लगता है, क्योंकि माँ बाप का हक भी वही औलादे पूरा करती हैं और उन्हीं को माँ बाप की कदर आती है जिनको अल्लाह की किताब मिलती है। ये तो आप भी गवाही दे देंगे, आज भी औलादें कैसे सर चढ़ के बोलती हैं और जो माँ बाप औलादों को दीन पर डाल जाते हैं वही कल उनके लिए कब्र के अंदर एक ठंडी हवा की सूरत बनती है। अब आगे जरा सा देखिए आयत 24 में आपको मुझे बैठने का तरीका सिखाया जा रहा है। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और अजी और मोहब्बत के साथ इनके सामने तवाज़ो का बाजू पस्त रखे रखना और दुआ करते रहना कि पर मेरे परवरदिगार इन पर वैसा ही रहम कर जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसे तुम्हारा रब बखूबी जानता है, अगर तुम नेक हो तो वो तो रुजू करने वालों को बख्शने वाला है। क्या पता चला कि अगर कभी उनका कोई तकाजा अच्छा न लगे, कोई गैर शरई तकाजा कर दें या तुम तो अच्छे हो वो खुशी नहीं होते तो कोई बात नहीं, अल्लाह के सामने अपनी बेबसी को रख दो, अल्लाह ताला उनको तुमसे राजी कर देगा। नेक औलादों के लिए ये पैगाम है, कभी कभी माँ बाप नेक नहीं होते सही नहीं होते तो उनको बता दिया कि बस फिर उनके लिए तुम अच्छे रहो उनके साथ बाइज्जत रहो, लेकिन बात उनकी नहीं माननी। और इसके बाद फिर माँ बाप के बाद और रिश्तेदारों का और मिस्कीनों का और मुसाफिरों का हक अदा करते रहो और इसराफ और बेजा खर्च से बचो। इस पे 3 सेकंड सोच लें आप खुद ही, कितना खर्च करती हूँ। माँ बाप के लिए उन्हीं के पास शायद नहीं बचता जिनके अपने खर्चे ही नहीं पूरे होते। तो अल्लाह को ने यहां देखिए कि क्या कहा है बेजा खर्च करने वालों को, आयत 27 से 30 देखिएगा, फजूल खर्च शैतान के भाई हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए यहां कुछ हिदायत आ रही हैं, सुनते हैं। इन्नल मुबज़्ज़रीन का इख्वान शयातीन, बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुकरा है। और अगर तुझे इनसे मुंह फेर लेना पड़े अपने रब की रहमत की जस्तजू में जिसकी तू उम्मीद रखता है तो भी तुझे चाहिए कि उम्दगी और नरमी से इनको समझा दे। अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ न रख कर ना इसे बिल्कुल ही खोल दे कि फिर मलामत किया हुआ दरमांदा बैठ जाए। यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग, यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर और खूब देखने वाला है। क्या पता चला कि माल के नाते से जो हिदायत मिली, लिख लीजिए चंद जुमले बुलेट्स की सूरत में, जरूरत से जायद माल है तो कराबतदारों और मुख्ताजों और मुसाफिरों का हक दीजिए, हकदारों को हक दीजिए। इस वक्त भी चेक कीजिए आपके मुल्कों में बैक होम में कौन गरीब है बेचारे हैं उनको दीजिए। फिर दूसरा जो दूसरी नसीहत थी कि माल को बिला जरूरत बेजा रसूमात तफरीहात बनाओ सिंगार के नाम पे खर्च ना किया जाए बल्कि उड़ाया ना जाए, गटर में ना डाला जाए, पानी की तरह माल को बहाया ना जाए। और तीसरी बात देखे कि बेजा खर्च करने वाले फजूल खर्च शैतान के भाई हैं और फिर शैतान इतना गलत माल का इस्तेमाल कराता है कि फिर उससे फिर वही बात है कि इसको और फ्लरिश करने और दूसरों को जलाने के लिए ले जाता है। और फिर चौथी नसीहत हमने इसमें यह पढ़ी है कि अगर माली एतबार से कभी हाथ तंग भी हो तो बड़ी खूबसूरती और आजिजी से माजरत कर लीजिए लेकिन लोगों का दिल ना तोड़िए। और फिर पांचवी बात के माल खर्च करते हुए ना बुखल करें ना जज्बाती अंदाज से ज्यादा खर्च किया जाए बल्कि मियाना रवि रखिए। मा आला मन इक्तसिद कुरान का एक बुनियादी असूल है कि जो मियाना रवि रखेगा वो कभी गरीब नहीं होगा। और फिर अगली बात कि किसी गरीब की मदद तो इंसान कर सकता है लेकिन उसे खुशहाली नहीं दे सकता, ये अल्लाह की हिकमत है जिसको दे ना दे लेकिन तुम बहरहाल लोगों के लिए मुखलिस रहो। आगे आए 31 से लेकर 35 तक आपको 3 चीजें माल जान और आबरू के तहफ्फुज की कुछ हिदायत है। चूंकि आपको शुरू में बता दिया मदीना में इस्लामिक सोसाइटी कायम होनी थी तो ये लॉ है, असल में आप इस वक्त इस्लामिक लॉज पढ़ रहे हैं, अल्लाह हमें इसको इम्प्लीमेंट करने की भी तौफीक दे। तो पहली बात आए 31 में कत्ल औलाद, वला तख्तुल औलादकुम खशयत इमलाक, और मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद को ना मारो, इनको और तुमको हम ही रोजी देते हैं, यकीनन इनका कत्ल करना कबीरा गुनाह है। कत्ल औलाद किसी भी नाम पे जायज नहीं है। आगे इसी से जिना का रास्ता खुल जाता है, आयत 32 जिना की कुर्बत, ला तकरबुस जिना, वला तकरबुस जिना इन्नहु काना फाहिशतन वसा सबीला, खबरदार जिना के करीब भी ना फटकना क्योंकि वह बड़ी बेहयाई है और बहुत बुरी राह है। याद रखिए जिना किसी भी सूरत में जिंदगी में आ जाए तो दिल नहीं बनता, इर्तबात कल्ब रुखसत हो जाता है क्योंकि गिल्ट होता है, हर गुनाह दिल पे बोझ रखता है। ऐसे लोग फिर दिन ब दिन गुनाहों की दलदल में फंसते ही जाते हैं। पहले देखिए कत्ल औलाद था तो उसे जिना का दरवाजा खुला, जब जिना आम हुआ तो कत्ल का दरवाजा खुला। ये तीनों आपस में मरबूत हैं क्योंकि जहां नाजायज ताल्लुकात होते हैं फिर बाज दफा वहां बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाता है और गैरत के नाम पे कभी उस लड़की या उस लड़के को कत्ल कर देते हैं घर वाले। इसीलिए फरमाया वला तक्तलो नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक, और किसी जान को जिसका मारना अल्लाह ने हराम कर दिया हरगिज नाहक कत्ल न करना। और जो शख्स मजलूम होने की सूरत में मार डाला जाए हमने इसके वारिस को ताकत दे रखी है, बस इसे चाहिए कि मार डालने में ज्यादती ना करे, बेशक वो मदद किया गया है। आय 34 से 35 टॉपिक पूरा करेंगे। यतीम का माल नाप तोल की कमी, ये सब हराम काम है, यानी यतीम का माल नहीं खाना। वला तक्रबु माल अल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन, और यतीम के माल के करीब भी न जाओ बजुज इस तरीके के जो बहुत ही बेहतर हो, यहां तक कि वह अपनी बलूगत को पहुंच जाए और वादे पूरे करो क्योंकि कौल इकरार की बाज़ परस होने वाली है। सोचिए कोई कमिटमेंट करके भूले हुए तो नहीं है, कोई नियत करके भूले तो नहीं, किसी से वादा करके भूले तो नहीं, तो फौरन वापस पलटिए अपने कौल की तरफ। और जब नापने लगा तो फिर पूरे पैमाने से नापो और सीधी तराजू से तोला करो, यही बेहतर है और इंजाम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। आपने देखा कि यहां आपको मुख्तलिफ हदायात मिली, जिसमें औलाद का रिस्क तुम नहीं देते, अल्लाह देता है, मुफलसी के डर से मना किया। पीछे अपने सूरत नाहल में औलाद के कत्ल का देखा था कि वहां बुतों की भेंट चढ़ाते थे, ये दूसरा मुकाम आ गया कि ज्यादा खाएंगे कहां से। इसी पे जुमला लिखिए, दो बच्चे का खुशहाल घराना। अल्लाह के लिए उम्मत मुस्लिमा को एक प्यार भरी नसीहत है, माल आप ज्यादा नहीं कर सकते अपना, ठीक है, आपके इख्तियार में नहीं है, इज्जत और बाकी चीजें नहीं है, औलाद तो पैदा कर सकते हैं, मत औलादों के आगे दरवाजे बनाइए, इतना बड़ा जुर्म है। आप देखिए, अल्लाह के नबी कल कहते हैं उम्मत की कसरत पे फखर करूं और आपको औलाद नहीं चाहिए सिर्फ इसलिए कि रिस्क नहीं है, तो आप नहीं तौबा कीजिए, शायद इसी जुर्म में अल्लाह किसी मुश्किल में ना हमें डाल दे। फिर दूसरी बात जो इसमें देखिए, जिना है, तो जिना खानदान के निजाम को बर्बाद करता है, मुआशरे की पाकिजगी को मिलिया मेट करता है। आप कह लें कि ये सिर्फ बेहयाई नहीं है बल्कि मुआशरों को बिगाड़ने वाली चीज है, फिर कत्ले नाहक का तो इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं, और यतीमों का माल खाना और वादों की पासदारी न करना, नाप तोल में कमी बेशी, कल क़यामत के दिन ये सब कुछ पूछा जाएगा। अल्लाह आपको मुझे बेहतरीन तरीके से अपनी इस्लाह की तौफीक दे। आगे आए 36 में देखिये, इल्म की फजीलत है, सवाल तो होगा कैसे, वला तक्फू मा लैस लक बिहि इल्म, जिस बात की तुम्हें खबर ही ना हो इसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि कान और आंख और दिल इनमें से हर एक की पूछ खिछ की जाने वाली है। अल्लाह अकबर, एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना हो तो जान पे बनी होती है, अंदर से पता नहीं क्या बीमारी निकलनी है। लिखिए, अल कल्बुल मसूलिया, दिलों के चेकअप होने वाले हैं, इर्तबाते कल्ब ना आया तो घबरा जाएंगे क़यामत के दिन। क्या पता चला कि इल्म और यकीन के हसूल के ज़राए समा, बसर और फुआत हैं। तीन चीजों से आप इल्म भी लेते हैं और पढ़ते जाएं सीखते जाएं तो आगे यकीन में भी इल्म ढल जाता है। जितना ज्यादा आप आगे चलते जाएंगे उतना ज्यादा अल्लाह ताला आपके लिए यकीन में इसको ढालता रहेगा और बेहतरीन तरीके से लेके जाएगा। कोई अमल या अकीदा सुनने से मुतल्लिक है तो कुव्वत समाअत से सवाल होगा, क्यों नहीं सुनते थे सही बातें, सिर्फ इसलिए कि नहीं जी नहीं, हमारे बड़े तो ये नहीं कहते थे और हम क्यों कहें। तो आज वो लोग जो हिदायत की बात सुनना नहीं चाहते उनको इस बारे में गौर व फिक्र करने की जरूरत है। कोई अमल या अकीदा बसरी उमूर से मुतल्लिक होगा तो कुव्वत बसारत से सवाल होगा कि क्यों नहीं देखा। और किसी नजरिए का क्याम फिक्र अकल से मरबूत है तो दिल से सवाल होगा। दुआ कीजिए, अल्लाह में इन तीनों चेकअप्स में सुरखरू कर दे, कोई बीमारियां ना निकल आए, यहां निकली तो इलाज कर लेंगे, वहां जाके निकली तो क्या होगा। लिखिए, वो अदालत जो क्यामत के दिन कायम होने वाली है ना, रिजल्ट वहां आएंगे, पता चलेगा कौन फेल कौन पास, लेकिन वहां रुख्सती या वापसी या इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं, यानी आप अपील नहीं कर सकेंगे। वही अदालत दुनिया में कुरान की महफिल में होती है, जो इस वक्त आप में से हजारों लोगों की है, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ। कुरान पढ़ते हुए आपको नहीं लगता कि आप अपने नफ्स की अदालत में, और एक मैंने लेक्चर दिया था, पूरा टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी आज़ा अदालत में, यानी जिस्म के हारूस से मुतल्लिक कुरान की जो आयतें वो जमा करके इस पे बात हुई, एक बुक भी है इस बारे में। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को दुनिया में कुरान पाक की इन आयतों की रोशनी में चेकअप करवा लेंगे, वहां जाकर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आसानियां होंगी। कुछ और अखलाकी बुराइयों का तस्करा, आयत 37 से 38, इल्म जब नहीं होता, वहम परस्ती, बिदात, बेजा रसूमात और इल्म जन्नी होता है तो इंसान की अकड़ बड़ी बढ़ती है। इल्म लेकर तो बंदा टूटता है और इल्म के बगैर अकड़ता है। जैसे आप देखिए कि नया कपड़ा जो होता है ना, उसमें बड़ी अकड़ होती है, कपड़ा ज्यादा पुराना पहनते जाए होता जाए तो नरम होता है, आपके अंदर इल्म जितना आता है ना, आप उतने सॉफ्ट हो जाते हैं, आप इजी गोइंग हो जाते हैं, आप सबको बर्दाश्त करने लग जाते हैं, आपको अच्छे बुरे का फर्क दिख रहा होता है, लेकिन आप लोगों के साथ फतवे नहीं देते कि तुम भी काफिर, तुम जहन्नमी, तुम फला, नहीं जी, लोगों को मोह रुख्सत दीजिए, आप तो इतना पढ़ के भी बुरे ना ठीक हुए तो वो बेचारों ने तो अभी पढ़ा भी नहीं है। तो लिखिए आए 37 का टॉपिक, अपनी औकात पहचानो, तकब्बुर की नफी है इसमें, वला तमशिफिल अर्दी मरहा, और जमीन में अकड़ कर ना चलो, ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना लंबाई में पहाड़ों को पहुंच सकते हो, इन सब कामों की बुराई तेरे रब के नजदीक इंतहाई सख्त नापसंदीदा है। अकड़ने की क्या गुंजाइश है, जरा सा सोचिए। इंसान को अल्लाह ताला ने यहाँ अकड़ से रोका, और पीछे देखिए वाला तकफू की बात थी। बेफकार इल्मे गैर नाफे हासिल नहीं करना चाहिए। ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, पमिस्ट्री है, और मुझे किसी ने बताया, मेरा तो खून खोल के रह गया कि अब पाकिस्तान में फोन कॉल्स के थ्रू आपको मैसेजेस आते हैं कि आप अपनी किस्मत का हाल मालूम करें। और जैसे ये कोड नहीं होते 8888888446, ये मनाइए। अच्छा, जब आप मिलाते हैं तो वो साथ ही फिर चलता है, या आपकी कॉल चार्ज हो रही है और 25+ टैक्स के साथ आपको मिनट्स चार्ज हो रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ला तकफुला मा लैसा लक बिही फिल इल्म। जब अल्लाह ने आपको किसी चीज का इल्म नहीं दिया तो वला तकफु मा लैसा लक बिही इल्म, तो इल्म इस बेबातनी को छोड़ दीजिए। बातिल इल्म जिंदगी में असल इल्म से पीछे कर देता है। और उसके बाद दूसरी चीज इसमें जोकड़ने की है, किसी का कॉल आपके सामने रखना चाहूंगी। कहते हैं कि मा हुअल इंसान, अरबी का कॉल है, मा हुअल इंसान, क्या है ये इंसान। मिन तुराब अलतुराब इलतुराब फितुराब, मट्टी से आया, आज मट्टी पे चल फिर रहा, फिर मट्टी में चला जाएगा और फिर मट्टी में मट्टी बन जाएगा। तो याद रखिए, शैतान अकड़ा तो मरदूद हो गया, रांदे दरगाह हो गया। हर तरह की अकड़ खत्म कीजिए, खासतौर पे अच्छे कपड़े पहनकर, और वो शादियों वाले दिनों की जो अकड़ है उसको भी जरा देखिए कि जो इंसान किसी ने कहा, जो इंसान अपनी गंदगी उठा उठा के फिर रहा है जिस्म में, उसको अकड़ने की कहां ताकत है। पहनिए अच्छा, लेकिन आज जी के साथ। या आप इतना क्यों अकड़कर, इतनी गर्दन अकड़ाकर अपने आप को रखते हैं कि दूसरों में आपकी गर्दन ऊंची रहे। अजवी लाइए और इससे ही दिल में रौबत आता है, इसी से दिल में अजवी। और वरना तो आखिरी वक्त तक आप दर्जी को माया कोसते रहेंगे, यहां से खुला यहां से तंग, ये कर दिया, हाय मैं क्या पहनू, बच्ची क्या करेगी। मैंने देखे, अल्लाह माफ करे ऐसे लोगों को, माफ कर दे। दुल्हन को जोड़ा पहना कर दुल्हन, उस दर्जी को कहते हैं सीओ पर। अल्लाह अकबर कबीरा, बुत जिसको पूजना है, वो मर्द है जिसके हाथ आपकी बेटी के जिस्म को लग रहे हैं, क्योंकि यहां से ढीला यहां से खुला। ला हौल वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह, ऐसे लगता है कि कड़वी गोली खा ली। इससे आपके दिलों को सुकून नहीं मिलेगा। आपकी शादियां क्यों परेशानियों में गुजरती हैं। शादी के दिन का इर्तबात मांगी, माँ भी खुश, बाप भी खुश, बेटा भी खुश, बेटी भी इंजॉय करिए। इतने चाव से तो ये दिन आया, इतनी तो तैयारियां आपने की, इतनी दुनिया को मुश्किल में डाला आपने, सबको बुलाया, और आज आप होंके फिर रहे, बुखलाए फिर रहे। बाद में याद आएगा ज्वेलरी नहीं पहनी, जूती नहीं मिल रही थी। ला हौल वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह। तो याद रखिए, आज हमारी खुशियां सेलिब्रेशन में चली गई। हम फिल्माने लगे, पिक्चराइज हो रही है हमारी शादियां, फिल्मों के गानों पर तो हमने अपने टोटे लगाने हैं, तो हमें कहां से इर्तबात कल्ब मिलेगा। तो ना हम खुशियों में खुश, ना गमों में खुश, ना हमारा दिल कुरान में लगा, ना हमारा दिल शादी में लगा। किस तरह हम दुनिया में रुल गए आज, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। आयत 39 से 48, ये है दिलों के इर्तबात का नुस्खा। अल्लाह की बड़ाई को बयान कीजिए, अल्लाह का हर हुक्म हिकमत का पैकर है। ज़ालिका मिम्मा उहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये भी उन्हीं वही की चीजों में से है, यानी ये भी उन वही की चीजों में से है जो आपकी तरफ आपके रब ने हिकमत से उतारी है। तो अल्लाह के साथ किसी और को माबूत न बनाना कि मलामत खुरदा रांदा दरगाह होकर दोजख में डाल दिया जाए। क्या बेटों के लिए तो तुम्हारे रब ने तुम्हें छांट लिया, और खुद अपने लिए लड़कों को लड़कियां, फरिश्तों को लड़कियां बना लिया। बेशक तुम बहुत बड़ा बोल बोल रहे हो। हमने इस कुरान में हर हर तरह बयान फरमा दिया कि लोग समझ जाएं, लेकिन इससे तो इन्हें नफरत ही बढ़ती है। कह दीजिए कि अगर अल्लाह के साथ और भी माबूद होते जैसे कि ये लोग कहते हैं, तो जरूर वो अब तक मालिक अर्श की तरफ राह ढूंढ चुके होते। सच है ना कि कोई ऐसे तो नहीं दबके बैठता। जो कुछ ये कहते हैं इससे वो पाक और बालातर है, बहुत दूर और बहुत बुलंद है। सातों आसमान और जमीनें और जो भी इनमें है इसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे पाकीजगी और तारीफ के साथ याद ना करती हो। हाँ ये सही है कि तुम इसकी तस्बीह समझ नहीं सकते, वो बड़ा बुर्दबार और बख्शने वाला है। तू जब कुरान पढ़ता है तो हम तेरे और इन लोगों के दरमियान जो आखरत पर यकीन नहीं रखते एक पोशीदा हिजाब डाल देते हैं। वेवलेंथ ही नहीं मिलती। वो कहते हैं हमें नहीं इनकी बातें समझ आती, पता नहीं किस दौर की बातें करती हैं। ये है, उस दौर में भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे हमें नहीं समझ आता। अल्लाह कहते चुप करो, मैं इनको समझने नहीं देता, लिख ले। जैसे अल्लाह मोमिन के लिए इर्तबात कल्ब करता है ना, इसी तरह गैर मोमिन के लिए अल्लाह पर्दे भी डाल देता है, उनको सब कुछ समझ आता है, नहीं समझ आता तो कुरान समझ नहीं आता, और उनका दिल हर महफिल में लगता है लेकिन कुरान की महफिल में नहीं लगता। और हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे समझें, और इनके कानों में बोझ। और जब तो सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र इसकी तौहीद के साथ इस कुरान में करता है तो वो रूगर्दानी करते, पीठ फेर कर भाग खड़े होते हैं, कहते हैं ये सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, और किसका चाहिए। अल्लाह से दुआ कीजिए ये गवाहियां मिल जाए कि भाई ये तो सिर्फ अल्लाह का ही जिक्र करती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ना करे कि हम किसी और का जिक्र करें उसके साथ। तो आयत 46 में अल-क़ल्बुल मकनून की बात देखी, मकनून अकिन्ना से, पर्दा जो दिल पर पड़ जाए। क्या होता है ये पर्दा, दिखता है नहीं? देखिए आंखों पे पर्दा आए ना तो मोतिया उतर आता है, हा? क्या बोलते हैं उसको, शायद कैरेंटीना या कुछ इस तरह का नाम होता है। कानों पे पर्दा पड़े तो क्या है ये पर्दा, ये कि फिर कुरान दिल कुरान समझने से कासिर हो जाते हैं, कान कुरान सुनकर हिदायत कबूल करने से आजिज हो जाते हैं। इस पे नजर रखिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस वक्त भी हमें सुनने पे पूरा फोकस रखे और हम इसके ऊपर अपने आप को जमा कर रखें और बेहतरीन तरीके से इससे फायदा उठा सकें, क्योंकि अल्लाह के हर हुक्म में हिकमत होती है। आपको मुझे अल्लाह की शान को, बुलंदियों को लेकर इस दुनिया में निकलना है तो इंशाल्लाह कानों के, आंखों के सारे पर्दों को हटाना है, वरना ऐसा न हो कि सरदाराने कुरैश की तरह हम भी महरूम रख दिए जाएं और सब कुछ सबको मिल जाए लेकिन हम पीछे हो जाएं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस गरज से ये लोग सुनते हैं इनकी नीयतों से हम खूब आगाह हैं, जब ये आपकी तरफ कान लगाए हुए होते हैं तब भी और जब मशवरा करते हैं तब भी, जबकि ये जालिम कहते हैं कि तुम इसकी ताबेदारी में लगे हुए हो जिन पर जादू कर दिया गया है, देखें तो सही आपके लिए क्या क्या मिसालें बयान करते हैं, बस वो बहक रहे हैं, अब तो राह पाना इनके बस में नहीं रहा। देखिए मक्का के सरदारों के भी दिल में कुरान की रज़त थी, आज हम मुसलमानों में भी नहीं है, मानते नहीं थे लेकिन उनको मजा बड़ा आता था। चलिए आपको नहीं मानना, ना से सुनते तो रहिए, ना मानिए कौन कहता है, आपकी मर्जी, लेकिन वो छुप के सुनते थे, तो उन्हीं का तज़किरा अल्लाह ने यहां फरमा दिया। और आयत 49 से 52 जिसमें आखिरत के हवाले से तीन तंजिया सवालात का जवाब है और पैगाम क्या है कि इंसान को जिंदा किया जाएगा। वकालू ऐजा कुन्ना इजामम वरुफाता, उन्होंने कहा कि हम जब हम हड्डियां और मट्टी होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके दोबारा उठा खड़े कर दिए जाएंगे। जवाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा या कोई ऐसी ही मखलूक जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो, फिर वो पूछेंगे कौन है जो दोबारा हमारी जिंदगी लौटाए, जवाब दें कि वही अल्लाह जिसने तुम्हें अव्वल बार पैदा किया। इस पर वो अपने सर हिला हिला कर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा ये है कब, ये होगा कब, तो आप जवाब दे दें क्या जबकि वो साथ करीब ही आ लगी हो, यानी क्यामत आ जाए और तुम्हें पता ही ना चले। जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तुम इसकी तारीफ करते हुए तामीले इरशाद करोगे और गुमान करोगे कि तुम्हारा रहना बहुत ही थोड़ा है। खबरों से निकलने का मंजर है, जरा सोचिए कि मरने के बाद क्या होगा। ये बड़ा मारूफ टॉपिक है हमारे कल्चर में, कुरान पढ़ते जाइए आपको सब बातें समझ में आने लग जाएंगी। तो फरमाया कि जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तुम इसकी तारीफ करते हुए तामीले इरशाद करोगे और गुमान करोगे कि तुम्हारा रहना बहुत थोड़ा है। आज दुनिया में इसको सोच लीजिए, आप में कितने दिन रहेंगे, वहां जाकर किसी को लगेगा एक दिन, किसी को लगेगा एक का भी कम, किसी को लगेगा 10 दिन। तो ये तीन सवाल हमने इन आयतों में देखे जो मुश्रिकीन मक्का आखरत को नहीं मानते थे वो अल्लाह के नबी से करते थे कि जब मरने के बाद हड्डियां चूरा चूरा हो गईं तो कैसे जिंदा होंगे। तो जवाब दिया कि तुम मरने के बाद पत्थर लोहे या और सख्त चीज के भी बन जाओ, अल्लाह तुम्हें फिर जिंदा करेगा। दूसरा सवाल उनका था कि कौन जिंदा करेगा, तो अल्लाह ने कहा मैं करूंगा जिसने पहली बार किया। और तीसरा उनका सवाल था कि हमें दोबारा कब जिंदा किया जाएगा, तो जवाब दिया इन करीब हो जाएगा, और आज तुम न रब की बड़ाई करो लेकिन कल उसकी तस्बीह करते हुए मैदान हशर में जाओगे, उस वक्त तुम्हें दुनिया बहुत छोटी लगेगी। अल्लाह आफियत में रखे सबको। आगे देखिए आयत 53 से 55, कम बोलो, सोचकर बोलो, अच्छी बात बोलो। और हमारे बड़े कहा करते थे पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। आज हम बोलने के बाद भी नहीं तोलते, हम कहते हैं मेरी बिला से, माइक एक और पता नहीं क्या अजीब गरीब टोन अपने अंदर एटीट्यूड की रखते हैं। तो लिखिए, इंसान की खुश कलामी शैतान की नाकामी। आप खुश कलाम हो जाएं, शैतान नाकाम होगा। और ये बात उन सब के लिए भी बड़ी अहम आने वाली, इसलिए तवज्जो रखिए जो मिलजुल के काम करते हैं किसी भी जगह, किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी और दुनिया के कामों में, और फैमिलीज में, और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, जहां भी रहते हैं। यानी ये सारा कॉन्शियस इसलिए कह रही हूं कि आप तर्जमे पर नजरें जमा लें। साथ रहते हुए लोगों को हमारी बातें चुभ जाती हैं, कभी हमारी टोन चुभ जाती, कभी हमने कुछ और कहा होता, कभी कुछ। तो अल्लाह ताला सब का आपको हल दे रहे हैं। वकुल्ली वादी यकुलुल्लती अहसन, और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो ज्यादा बेतकल्लुफ ना हुआ करें, ज्यादा किसी की निजी जिंदगी में मत ताक झांक कीजिए, काम से अलावा एक्स्ट्रा बातें ना कीजिए, वरना याद रखिए नुकसान होगा। और वो नुकसान कभी कभी सब छोड़ छुड़ाकर बाकी रहने वाली चीजें भी खत्म कराने का नुकसान होता है। तो बातें बातें ही वो चीजें हैं जो लोगों के दिलों में रखने डाल देती हैं। फरमाया, तुम्हारा रब तुमसे बन इस पर तुम्हारे बहुत ज्यादा जानने वाला है, वो अगर चाहे तो तुम पर रहम करे, या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। हमने आपको इनका जिम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा। आसमानों और जमीन में जो भी है आपका रब सब को बखूबी जानता है। हमने बाज पैगम्बरों को बाज पर बेहतरी और बरतरी दी है, और दाऊद को जबूर हमने अता फरमाई है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला दिलों के भेद तक जानता है। गुफ्तगु में बेख्तियाती शैतान के मकसद को पूरा करती है। इसी तरह से अल्लाह चूंकि दिलों के हाल जानता है, बंदे नहीं जानते, तो लिहाजा बहुत ज्यादा बातें करके सफाइयां पेश करने की निस्बत बेहतर क्या है कि बात ही कम करो। आगे देखिए आयत 56-57। वसीला, नेक अमल की बात है। अल्लाह के महबूब बंदों का हाल क्या है, पीछे भी आप छठे पारे में वसीले की बात पढ़ चुके सूरत मायदा में, और यहां दोबारा आ रही है। कुलिदुल्लसी नजाम तुम मिन दूनी ही फला यमलिकून, कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझ रहे हो इनको पुकारो, लेकिन ना तो वो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकते हैं और ना बदल सकते हैं। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं खुद वो उसके तकर्रुब की जस्तजू में रहते हैं, और इनमें से कौन ज्यादा नजदीक हो जाए वो खुद इसकी रहमत के उम्मीदवार हैं और इसके अजाब से खौफजदा रहते हैं। बात भी यही है कि तेरे रब का अजाब डरने की ही चीज है। यह इतने हर उस भाई और बहन के लिए लम्हे फिक्री हैं जो किसी इंसान को वसीला बनाकर गुनाहों में आगे जाता है कि फुलां बुजुर्ग मेरी बख्शिश करवा लेंगे। मुरादे पूरी करना, करवाना, मुश्किलात से निकालना अल्लाह का काम है। अल्लाह के आगे दस्ते सवाल दराज कीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा। आगे 58-60। हर बस्ती को मकाफाते अमल का सामना करना पड़ेगा, और खास तौर पर आयत 58 को लिख लीजिए, दुनिया की हर बस्ती हलाक होकर रहेगी, फना होकर रहेगी। वाइम मिन कर्जतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ल यौमिल क़ियामा, जितनी भी बस्तियां हैं हम क़यामत के दिन से पहले पहले या तो इनको हलाक कर देने वाले हैं या सख्त तर सजा देने वाले हैं। ये किताब में लिखा जा चुका है। हमें निशानात यानी मौजज़ात निशानियां आयते नाजिल करने से रोक सिर्फ इसी बात की है कि अगले लोग इनको झुटला चुके हैं। हमने समूदियों को बतौर बसीरत के उठनी दी, लेकिन उन्होंने इस पर जुल्म किया। हम तो लोगों को धमकाने के लिए ही निशानियां भेजते हैं। और याद करो जबकि हमने आपसे फरमा दिया कि आपके रब ने लोगों को घेर लिया है जो ख्वाब। यहां दोबारा देखिए मौके मेराज की तरफ एक साइड का इशू है, क्योंकि फरमाइशी मौजज़े मांगते थे। अल्लाह ने कहा कि मैंने इतना बड़ा मौजज़ा दिखाया मेराज की सूरत में, लेकिन तुम ना माने, तो लिहाजा सुनिएगा। वो जो आईनी रुयत हमने यानी आपको आंखों से जो दिखा दिया वो लोगों के लिए साफ आजमाइश ही थी। और इसी तरह वो दरख्त भी जिसे कुरान में इजहार नफरत किया गया, हम इन्हें डरा रहे हैं लेकिन इन्हें और बड़ी सरकशी में ये बढ़ा रहा है। तो क्या पता चला न मानने के सौ बहाने, जिनको नहीं मानना वो नहीं मानते, और ऐसी आयतों में नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें शुबा पड़ रहा हो। सफरे में राज में अल्लाह के नबी को जो सफर कराया गया उसमें निशानियां दिखाई गई, उसमें जक्कूम का एक दरख्त था लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाया गया और उसी की तरफ इशारा है कि अबू जहल ने जो अल्लाह के नबी के वाकई मेराज से भी नसीहत न ली तो मान लो कि उसके दिल में हिदायत की तलब ही नहीं है। अब आगे आयत 61 से 65 किस्से आदम और इबलीस, और यहाँ जो इसका थीम है वो है इबलीस की इंसान दुश्मनी। वैस कुल नालिल मलाइकतिस जुदूल आदम फसजतु इल्ला इबलीस, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सबने किया। इसने कहा क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मट्टी से पैदा किया। अच्छा देख ले इसे, तूने मुझ पर बुजुर्गी तो दे दी है लेकिन अगर मुझे भी क्यामत तक तूने ढील दी तो मैं इसकी औलाद को सिवाय थोड़े से लोगों के, और ये कौन है याद कीजिए, मुखलसीन, अपने बस में कर लूंगा। इरशाद हुआ कि जा इनमें से जो भी तेरा ताबे फरमान हो जाए या तेरा ताबेदार हो जाए तो तुम सब की जो सजा जहन्नुम है जो पूरा पूरा बदला है। इनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज से बहका सकेगा बहका ले, और इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ले यानी वॉकिंग और राइड्स पे सवार, और इनके माल और औलाद में भी अपना हिस्सा लगा, और इन्हें झूठे वादे दे ले। इनमें इनसे जितने भी वादे शैतान के होते हैं सब के सब सरासर फरेब हैं। मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू नहीं, कोई बस नहीं, तेरा रब कारसाजी करने वाला काफी है। यहाँ अल्लाह के सच्चे बंदे कौन है, इर्तबात कल्ब, पीछे आपको बता दिया कि दिल को थाम लीजिए, शैतान को रास्ता नहीं मिलेगा आपके दिल तक आने का। और हकीकत यह कि शैतान रास्ते पे बैठा तो है, सूरत अल आराफ में देखा तो इबलीस ने यह धमकियां दी थी, यहाँ अल्लाह उसको चैलेंज कर रहा है, यानी अल्लाह नहीं है जो शैतान से डर जाए। इस पे एक हदीस सुन लीजिए, सुनन निसाई में 5535, अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, अल्लाह मैं दीवार के नीचे दब जाने से तेरी पनाह मांगता हूँ, ऊंचाई से गिर पड़ने से तेरी पनाह मांगता हूँ, डूब जाने और जल जाने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि शैतान मौत के वक्त मुझे बहका दे, और इस बात से भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि मेरी मौत तेरे रास्ते यानी जिहाद में पीठ दिखाकर भागते हुए आए, यानी मुझे जो जिम्मेदारी मिली मैं उसको छोड़ के भाग जाऊं, और इस बात से भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि किसी मूजी जानवर के डस लेने से मेरी मौत हो। तो क्या पता चला कि शैतान हर वक्त इस ताड़ में रहता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हो जाएं। सारी बातों में से आपको मुझे यही बात समझ आ गई कि शैतान की आवाज, हर वो आवाज जो हक के खिलाफ है, बातिल को प्रमोट करने वाली, और वो चाहे सास है कि आवाज है, फोहश गाने हैं, गंदी बातें हैं, झूठे वादे हैं, सियासी दावे हैं, वादे हैं जो बाद में पूरे ना हो, इंसानों पर उसके लश्कर कौन से हैं जो फहाशी और तासुबात और फिरकावारियत की दावत देने वाले हैं, नफरतें पैदा करते हैं, वो शैतान के एजेंट हैं, उसके लश्कर में हैं, शैतान इंसानों के माल में कैसे शरीक होता है, माल हराम कमाकर और हलाल माल को नाजायज चीजों पर इस्तेमाल करा के। सवाल लिखिए, औलादों में कैसे शरीक होता है, पहले तो औलाद को आने ही नहीं देंगे और फिर उसके बाद औलाद की तरबियत से गफलत पे, फिर उसे बुराइयों से ना रोकना, मीडिया के गुमराह कुन मवाद से औलाद को ना बचाना, मगरबी तर्ज के तालीमी इदारों में दाखिल करवा कर ये समझना कि औलाद कामयाब हो गई और उनको दीन की तालीम से दूर रखना, और इसी तरह इंसानों को गुनाहों पर कारबंद रखने के लिए अल्लाह की रहमत की झूठी उम्मीदें दिलाता रहता है, कहता है गुनाह आज करो तौबा कल करोगे, और बहुत से गुनाहों के बाद कहता है लो अब तुम्हारी कहां तौबा कबूल होनी है, तुमने इतने गुनाह किए चलो फिर और मौज मस्ती कर लो। ये है शैतान के ट्रिक्स, इस पे लेक्चर भी है जिसमें बड़ी डिटेल से हमने शैतान का तरीका वारदात सीखा हुआ है। आगे देखिए 66 से 70, इंसान की गफलत और गुमराही भी है और अल्लाह के एहसानात के मुकाबले में इंसानों की नशुकरी की बात भी है। रब्बुकुमुल्लज़ी युस्जी लकुमुल फुल्क फिल बहर, तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियां चलाता है ताकि तुम इसका फजल तलाश करो, वो तुम्हारे ऊपर बहुत मेहरबान है, और समंदरों में मुसीबत पहुंचते ही जिन्हें तुम पुकारते थे सब गुम हो जाते हैं, सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाता है, फिर जब वो तुम्हें खुशकी की तरफ बचा लाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो, और इंसान बड़ा ही नाशुकरा है। तो क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो कि तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर जमीन में धसा दे, या तुम पर पत्थरों की आंधी भेज दे, फिर तुम अपने लिए किसी निगहबान को न पा सको। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह फिर ताला फिर तुम्हें दोबारा दरिया के सफर में ले आए और तुम पर तुंदो तेज हवाओं के झोंके भेज दे और तुम्हारे माजी वाले कुफर के बायस तुम्हें डबो दे, फिर तुम अपने लिए हम पर इसका दावा यानी पीछा करने वाला किसी को ना पाओगे। टाइटैनिक को याद कर लीजिए, जिसके बारे में दावा था कि गॉड भी इसको नहीं डबो सकता, लेकिन अल्लाह कहते कैसी नशुक्रिया इंसान की कि दुनिया में समंदरों में भी जाकर अल्लाह ही को नाराज करता है और समंदर में तूफान आता है तो आफियत की दुआएं करता है और जब वो चल जाता है तो फिर पीछे क्या होता है। तो याद रखे, ऐसे लोगों को एक पैगाम है कि आसूदा साहिल तो है मगर शायद के तुझे मालूम नहीं, साहिल से भी मौजें उठती हैं, खामोश भी तूफान होते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं है कि तुम आज बच गए हो तो आइंदा दोबारा कभी ना डूबो, कई दफा तो किनारों पे खड़े लोग भी डूब जाते हैं, लिहाजा कभी भी अल्लाह की पकड़ से बंदा दूर ना हो। यकीनन हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत दी और इन्हें खुशकी और तरी की सवारियां दी और इन्हें पाकीजा चीजों की रोजियां दी और अपनी बहुत सी मखलूक पर इनको फजीलत दी। ये है वो आयत जिसके लिए आप कहते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, वलकद करमना बनी आदम। फिर आप देखिए कि आयत 67 में हमने दो दिल और दो रवैयों का तस्करा देखा, अल्लाह का रहम और फजल तलब करने वाला, अल्लाह के फजल का मतलाशी दिल, अल्लाह हमें ऐसा ही बना दे, और नेमत मिलने पर अपनी सही और तदब्बुर पर अकड़ने वाला नशुकरा दिल। जरा अपने जुमलों में टटोलिए कि आप अपने बच्चों के बारे में क्या समझते हैं कि हमने बड़ी मेहनत कराई तो वो लायक हो गए, तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि ऐसा हमारी कोशिश से नहीं अल्लाह की रहमत से हुआ। आयत नंबर 71 से 77, क्यामत के दिन हर एक को इसके नामे अमाल के साथ बुलाया जाएगा और खास तौर पे पहली दो आयतों में पता चलेगा कि जान बूझ कर सरकशी करने वाला रोजे क्यामत अंधा होगा। अल्लाह हमें बचा के रखे। यौम नदुकुल्ला उनासिम भी इमामिहिम, जिस दिन हम हर जमात को इसके पेशवा समेत बुलाएंगे, फिर जिनका भी अमाल नामा दाएं हाथ में दे दिया गया वो तो शौक से अपना नामा अमाल पढ़ने लगेंगे। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, और धागे के बराबर यानी जर्रा बराबर भी जुल्म न किए जाएंगे, और जो कि इस जहान में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा रास्ते से बहुत ही भटका हुआ रहेगा। अल्लाह हमें दुनिया के भी अंधेपन और आखिरत के अंधेपन से भी बचा ले। ये लोग आपको इस वही से जो हमने आप पर उतारी है बहकाना चाहते हैं कि आप इसके सिवा कुछ और ही हमारे नाम से घड़घड़ा ले, तब तो आपको ये लोग अपना दिली दोस्त बना लेते। अगर हम आपको साबित कदम न रखते तो बहुत मुमकिन था कि आप इनकी तरफ कदरे कलील माइल ही हो जाते। ये है जी अल्लाह के नबी की तस्बीत कल्बी, और मैं अपने लिए भी यहां दुआ करती हूं कि अल्लाह इस पढ़ाने के अंदर कहीं शैतान का कोई हीला बहाना अंदर ना आ जाए कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जोशे खिताबत में ना आ जाऊं कि अल्लाह की मर्जी को हटाकर अपनी बातें करने लगूं, और ये बड़ी खतरनाक जगह है। अल्लाह ताला मुझ पे रहम करे, आप भी अपनी दुआ में शामिल रखा करें कि आपको कहने वाले खुद भी कहें अपने आप को और खुद भी बच जाएं, और अल्लाह ताला हमें बहकने से बचा ले और तस्बीत कल्ब अता फरमाए, इर्तबात कल्ब अता फरमा दे। और अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो लिखिए जानबूझकर सरकशी करने वाला, अगर ऐसा कर देता है तो उसके साथ क्या मामला होता है, फिर तो हम आपको दोहरा अजाब दुनिया का करते और दोहरा ही मौत के वक्त का भी, फिर आप अपने लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार ना पाते। यानी अल्लाह के नबी को कहकर असल में उम्मत को सुनाया जा रहा है, ये तो आपके कदम इस सरजमीन से उखाड़ने ही लगे थे कि आपको इसे निकाल दें, फिर ये भी आपके बाद बहुत ही कम ठहर पाते। ऐसा ही दस्तूर इनका था जो आपसे पहले रसूल हमने भेजे, और आप हमारे दस्तूर में कभी रद्दो बदल ना पाएंगे। अल्लाह की बात कभी नहीं बदलती, और आप देखेंगे कि अल्लाह की बातें ही सच्ची हैं क़यामत तक के लिए। आप देखिए आयत 72 में हमने नामे अमाल की बात देखी, तो असहाबुल यमीन बमुकाबला असहाबुल शिमाल, दोनों के मुख्तलिफ इंजाम है। असहाबुल यमीन दुनिया में अल्लाह के अहकामात को मानने वाले, इंशाल्लाह आखरत में सुरखरू होंगे, और असहाबुल शिमाल दुनिया में अंधे बने रहे और आखरत में भी अंधे ही उठेंगे। हम सूरत तौहा में पढ़ेंगे ये आयतें कि जहां ऐसे अंधों की बात है, वमन अरादा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, जो अल्लाह की याद और इस कुरान से मुंह फेरेगा वही अंधा रहेगा। आगे देखिए आयत 78 से 79, फजर के वक्त कुरान पढ़ने की भी बात है और साथ ही साथ इसमें 5 नमाजों के औकात भी हैं और उम्मते मुस्लिमा को बताया जा रहा है कि हिजरत के मरहले आ रहे हैं। पीछे हमने हिजरत की बात की है ना, तो अब नमाज मेराज के मौके पे नमाज फर्ज हुई थी, लेकिन पूरे कुरान में कहीं नमाज का तरीका या तरतीब नहीं, लेकिन इन आयात में हम अभी जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये सारी चीजें पढ़ेंगे इकट्ठी। फजर के वक्त कुरान पढ़ना, अकीमिस सलात ली दलू की शम्सी ला गसकिल लैली व कुरान अल फजर, नमाज को कायम करें आफ्ताब के ढलने से लेकर रात की तारीखी तक, ये 4 नमाजें हैं इसमें फजर से मगरिब तक, और फजर का कुरान पढ़ना भी। यकीनन फजर के वक्त का कुरान पढ़ना हाजिर किया गया है, बल्कि इसमें जोहर से लेकर आगे का था, फजर इसमें अलग से आ गई। रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज भी कुरान, तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत करें, यह ज्यादती हुक्म आपके लिए है, अनकरीब आपका रब आपको मुकाम महमूद पर खड़ा कर देगा। लिखिए इरतबात कल्ब का तरीका, 5 नमाजों को वक्त पे पढ़िए कम अज कम, अगर आप हिदायत के रस्ते में नए नए हैं और हिदायत पुरानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तहज्जुद भी शामिल कीजिए और फजर की नमाज में तवील किरत कीजिए, अल्लाह नबी को मुकाम महमूद वहां जाके देगा, आपको दुनिया में अल्लाह ताला तारीफें भी देगा और आपके दिल को थाम लेगा। सुनन निसाई की रिवायत है 1614, इस आयत 79 के साथ अबू हुरैरा रावी हैं, रमजान के महीने के बाद सबसे अफसल रोजे अल्लाह के महीने यानी मुहर्रम के हैं और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफसल नमाज क़यामुल लैल यानी तहज्जुद है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे दे। आगे है जी आयत 80, हिजरत का मरहला आने वाला, लिहाजा किसी भी जगह दाखिल होते और निकलते वक्त ये दुआ मांग लीजिए, क्या वको रब अदखिलनी मुदखल सिदकिन व खरिजनी मुखरज सिदकिन व जाली मिल्लदुन का सुल्तानन नसीरा, और दुआ किया करें कि मेरे परवरदिगार मुझे जहां ले जा अच्छी तरह ले जा और जहां से निकाल अच्छी तरह निकाल और मेरे लिए अपने पास से गलबा और इमदाद मुकर्रर फरमा दे। हर दौर में इस दुआ की बड़ी अहमियत थी, लेकिन अब कोरोना वायरस के इन दिनों में तो ये दुआ पढ़ के निकला करें। बिला वजह सफर मत कीजिए और अगर कहीं जाने न जाने के बीच में गू मगू की कैफियत हो तो ये दुआ मांगिए जो अल्लाह के नबी ने मांगी थी। हिजरत की राहें हमवार हो गईं, अल्लाह ने ऐसी मुश्किलात में डाला, लेकिन अल्लाह के नबी का दिल अबू बकर के दिल की तरह बिल्कुल मुतमईन था। तो यहां अब असल में इशारे दिए जा रहे हैं कि अनकरीब मुसलमानों को हिजरत करनी है और फिर ये दुआएं मांगते हुए जब मक्का से मदीना में जाएंगे तो अल्लाह मदीना में वो बरकतें देगा जो आज भी आपको मुझे मिलने की और मांगने की जरूरत है। और जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, अमल में इबादत में नमाज हो, नजरें अल्लाह पे लगी हो, तो आप कह सकते हैं कि हिजरत गलबा दीन का आगाज बन जाती है। तो ये गलबा दीन के आगाज की दुआएं हैं, अल्लाह हमें भी दीन के गलबे में शामिल फरमा ले। एक ऐलान भी है इसमें और दुआ कर लीजिए कि अल्लाह मेरे परवरदिगार तू मुझे भी जहां ले जा अच्छी तरह ले जा और जहां से निकाल अच्छी तरह निकाल और जहां भी जाऊं वहां खैर फैलाऊं और खैर का काम कभी मेरे जाने और आने से कभी ना रुके। दुआ देख लीजिए तरतीब में आपके सामने है और इस दुआ को याद कीजिए, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिदकिन व अखरिजनी मुखरज सिदकिन व जल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और वाकई फिर आप देखिए कि इसकी बरकतें हुई। आगे हक के आने और बातिल के जाने की बातें हैं, तो ये दुआओं के असरात होते हैं। आप देखिए कि कुर्बे हिजरत का इशारा अजीम बशारत की सूरत में, फ्लो चार्ट देख लीजिए, अल्लाह के रसूल को दुआ की तलकीन और हिजरत की तरफ इशारे हैं और आपने निकलने से पहले ही आपके दाखिल होने का इंतजाम है। इतनी प्यारी इसकी तरतीब है, अब टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी जो लोग देखना चाहें आयत के ऊपर नजर डाली, अदखिलनी मुदखला सिदकिन पहले है और अखरिजनी बाद में है। अमूमन क्या होना चाहिए, पहले निकले थे ना मक्का से फिर मदीना में आए ना, समझ आ गया जुमला, ये क्यों है? सुभान अल्लाह, कुर्बान चाहिए कुरान के एजाज और इसकी बलागा पे। مفسرین کہتے ہیں کہ ادھر ترتیب بدلی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کیا مدینہ میں داخل ہوتے، مدینہ والوں کے دلوں میں نبی کی محبت پہلے داخل ہو چکی تھی، اس لیے مدخلہ کا لفظ پہلے ہے. یہ ایک معنی بتایا، اور جب کبھی تفصیل سے لفظ پر لفظ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اور باتیں بھی بتاؤں گی اگر اللہ نے چاہا تو. اللہ ہمیں ہمارے لیے پیار ڈال دے. اور یہاں وہ دعا بھی ذہن میں رکھیے جو کسی بستی میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کے دلوں میں آپ کا پیار ڈال دیتے ہیں. حدیث میں وہ دعا ملتی ہے، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دعا کسی موقع پہ سکھا دی جائے گی. آیت نمبر 81، حق آ گیا اور باطل چلا گیا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور ناحق باطل ہو گیا، یقیناً باطل تھا ہی نابود ہونے والا یعنی مٹنے والا. جب اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ نے مکہ کو فتح کروایا تو اس وقت آپ کی زبان پہ یہ آیتیں بھی تھیں اور آپ بت بھی توڑتے جا رہے تھے. اللہ ہمیں بھی اندر باہر کے بتوں کو توڑتے ہوئے یہ آیتیں پڑھنے والا بنا دے. آیت 82 میں عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے، کیونکہ قرآن مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے. بڑی پیاری آیت آ رہی ہے آپ کے سامنے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے. ہاں، ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں کرتا، یعنی مومنوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے اور غیر مومنوں کو تو یہ بوجھ لگتا ہے. آپ گن لیں کتنی دفعہ قرآن کا ذکر آیا، اینڈ پہ بتائیے گا کس نے 16 ٹائم گنا. آیت 83 سے 84، انسان کا ہر عمل اس کے ضمیر کا آئینہ دار ہوتا ہے. یعنی قرآن کو رجوع زوال سے وابستہ کر کے اب اللہ تعالیٰ آگے آپ کے میرے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے آج کے موجودہ حالات کو دیکھیں گے مسلمانوں کے، تو آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آج کے مسلمانوں کی یہ حالت، یہ ذلت اور یہ رسوائی قرآن کی ناقدری کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر. اللہ دوبارہ قرآن تھامنے والا بنا دے. آیت نمبر 83 سے 84 میں انسان کا عمل جب اس کے امیر ضمیر کا آئینہ دار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے پیغام دیتے ہیں. وَإِذَا عَلِمْنَا لِلْإِنسَانِ يَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. اور انسان پر جب ہم انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. رکھیے یہاں ارتباط قلب کو، ایسا نہیں کرے، ہر لحاظ میں مطمئن رہیے. کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں، انہیں تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. کیا پتا چلا ان آیتوں میں؟ کہ دنیا کے حالات کا تاثر مت لو. آپ دیکھیں کہ ان آیات میں انسانوں کی ناپختگی کا ایک مظہر بیان کیا گیا ہے. دنیا میں جب ذرا سی نعمت ملتی ہے تو عیش میں پڑھ کے رب کو بھول جاتا ہے، تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو کے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ ارتباط قلب اگر مل جائے تو بندے کو یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں کی نعمتیں بھی عارضی ہیں تو یہاں کی تکلیفیں بھی وقتی ہیں. اصل نتائج روز قیامت ظاہر ہوں گے. اس روز انسان ہر معاملہ جب اپنا کھول کر دکھے گا وہاں، تو اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ میں نے اپنی زندگی کیوں ضائع کر دی. تو خوشیوں اور غموں میں اپنے دل کو کمزور نہ کیجئے، جانے دیجئے، لیٹ اٹ گو، کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ دنیا چلتی رہے گی، بڑی سے بڑی تکلیف بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تھام لے گا، اور اللہ ہمیں تھام لے. آیت 84 میں اللہ نے کہہ دیا نا کہ اللہ راہ ہدایت والوں سے خوب واقف ہے. آپ ہدایت پہ آتے جائیں نا تو دکھ سکھ کو سہنا بھی آسان ہو جائے گا. جیسے ہر چیز کچھ لوگ ہضم کر لیتے ہیں اور کچھ سے دال چاول بھی نہیں ہضم ہوتے، اسی طرح جب ہدایت آ جاتی ہے تو زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن میں دل چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ دل کے اوپر مرہم ڈال کے پٹی باندھ دیتا ہے کہ نہیں نہیں، تم نے نہیں دکھی ہونا، تم خوش ہو. اور یاد رکھیے، یہ خوبی مومن کو حاصل ہے. اس کو ایسے لگتا ہے ہر دکھ اور غم اس کے دل سے ذرا دور ہی تھا، بس دل تک نہیں آیا، بیچ میں ایک بیریئر آ گئی، ایک سل اللہ دل پہ رکھنے لگتا ہے غموں میں ڈالنے سے پہلے سچے ایمان والے کے پر. تو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت والوں سے خوب واقف ہے. آیت 84 میں دیکھا. آیت 85 سے 87 میں روح کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، روح کا ذکر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. قل روح من امری ربی, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کام علم دیا گیا, اور اگر ہم چاہیں تو وہ وحی یعنی جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلف کر لیں, پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے, یقیناً آپ پر اس کا بڑا فضل ہے. تو روح کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی گئی. مشرکین مکہ کے سوالوں میں سے ایک سوال ادھر ہے, دو سوالوں کا جواب اگلی صورت میں آ رہا ہے. تو کیا ایسی باتوں کو کیوں پوچھتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ اصل بات یہ کہ روح کے بارے میں سوال نہ کرو. ہاں قرآن میں یہ لفظ تین معنوں میں آتا ہے, جبرائیل کے بارے میں آتا ہے, قرآن کے بارے میں یعنی وحی کے صورت میں, اور انسان کے اندر جو روح ہے اس کے ساتھ. اس سے زیادہ نہیں, روحوں کو بلانا, روحیں آتی ہیں جمعرات کو آتی ہیں, گلاس میں پانی ڈال کے دیکھو تو روح آتی ہے, یہ سب بیکار ہے. اس پہ فارسی کا ایک شعر بھی ہے کہ اتصال بے تکیف بے قیاس, ہست رب ناس با جانان ناس, یعنی روح کے ساتھ, روح کے جسم کے ساتھ تعلق کی کیفیت کو نہ تو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ کسی اور چیز پہ قیاس کیا جا سکتا ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اس لیے آپ کو مجھے اس کے بارے میں نہیں جاننا. آگے دیکھیے چیلنج ہے قرآن جیسی کتاب لانے کا, آیت 88 سے 89 میں, جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا جو سب سے بڑا فضل تھا وہ نزول قرآن تھا. اور میں بھی یہ کہتی ہوں اپنے بارے میں, اور آپ بھی یہی کہتے ہوں گے اپنے بارے میں, کہ آج تک جو نعمتیں ملی اس میں سب سے بڑی نعمت قرآن. اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو مکہ والوں کے مطالبے تھے کہ اس میں ترمیم کرو, اس کو بدلو, تو اس کے جواب میں اب دوبارہ چیلنج آ رہا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن, کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے, گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں, مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے. تو آپ کو مجھے کیا چاہیے اس کو پڑھنے کے بعد؟ کہ اللہ ہم مان گئے, ہمارا دل ہے کہ جو آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے, اور کوئی اس قرآن جیسا کلام لا نہیں سکتا, نہ تھا نہ ہے. آگے پھر فرمائشی معجزات کی ایک لمبی فہرست سنیے, آیت نمبر 90 سے لے کر 96 میں, مکہ والوں کے مطالبے. ہدایت کی طلب نہیں ہوتی نا تو بچہ بھی بہانے کرتا ہے, بھوک نہیں لگتی نا تو ماں کہتی کھا لو, لے بھی آئے گی تو نہیں کھائے گا, یہ پلیٹ کیوں لی, یہاں سے کیوں پکڑا, بھائی نے کیوں لے لیا, تو ماں کہتی چھوڑو اس کو طلب نہیں ہے. لکھیے ہدایت والے دل کے لیے. ہدایت کی طلب جاگ گئی ہے تو الحمدللہ, نہیں جاگی تو دعا کیجیے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے ہمیں. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى, انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں, یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا, اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں بھی جاری کر کے دکھائیے, یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں. دیکھیے کیسے عجیب و غریب مطالبے اللہ کی بنا. جیسا کہ آپ کا گمان ہے, یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں, یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے, یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں, اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں. آپ جواب دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے, میں تو صرف ایک انسان ہوں, اور جو رسول بنایا گیا ہوں, لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی. ہائی لائٹ کر لیں, ہدایت بھرے دل والے کے لیے آیت ہے کہ جب سب پہنچ جاتا ہے تو پھر کیوں لوگ ایمان نہیں لاتے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا. آپ کہہ دیں اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے, وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے اور بخوبی دیکھنے والا ہے. تو مطالبات کی ایک لمبی لسٹ تھی, کبھی زمین سے چشمے نکلوانے کی باتیں کرتے, کبھی کھجوروں اور انگوروں کے باغوں کی بات کرتے, کبھی بیچ میں نہروں کی بات, کبھی آسمان کے ٹکڑوں کی بات, اللہ اور فرشتوں کو سامنے لانے کی بات, کبھی مکہ میں سونے کا محل تیار کرنے کی باتیں, اور آسمان پہ چڑھ کر کتاب لائیں, اور اینڈ پہ کہتے ہیں یہ سب کچھ بھی کر لیں تو ہم نہیں مانیں گے. تو پھر گھر بیٹھیے, طلب ہی نہیں ہے آپ کو, ضرورت نہیں, تو پھر ایسے لوگوں کو زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چل گیا آیت 94 سے 96 میں کہ اللہ کے تمام رسول انسان ہی ہوتے تھے کیونکہ زمین میں انسان ہے. آگے آیت 97 سے 99 ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. ہم تڑپ سکتے, طلب رکھ سکتے, دعائیں مانگ سکتے لیکن کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہم دیکھیں گے گمراہوں کا المناک انجام. دعا کر لیجئے ہم اس انجام سے بچ جائیں. وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ. اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے, اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے. ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندے منہ حشر کریں گے, حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب کبھی وہ بجھنے لگے گی, ہم ان پر اسے دوبارہ بھڑکا دیں گے. امیجن کیجیے, آگ کم نہیں کرنے دیں گے, یعنی ٹیمپریچر ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ جہنم کا مستقل ایندھن, کنٹینیوس فیول انسانوں کی صورت میں ملے گا. وقودھا الناس والحجارہ میں آپ پیچھے پڑ کر آئے. اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بننے سے ہم سب کو بچا لے. یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور ان کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے, کیا پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھ کھڑے ہوں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبے سے یکسر خالی ہے, لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے سب کو بچا کے رکھے کہ گنگا بہرا بھی ہو اور انسان آگ کا ایندھن بنے. اس کے بعد آیت 100 میں دیکھیں, انسان کی تنگ دلی کا تذکرہ ہے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمتی ربی. ذرا سوچئے گا جن کے دل خاص طور پہ تنگ ہیں, چھوٹے دل والے, چار پیسے کسی کو دینے پڑ جائیں, کسی پہ چار پیسے لگانے پڑ جائیں تو ارتباط قلب سب رخصت ہو جاتا ہے اور ہول پڑنے لگتے ہیں کہ اتنے پیسے لگ جائیں گے کسی پہ. سنیے گا, قل لو انتم تملکون خزائن رحمتی ربی. کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بھی بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے, اور انسان ہے ہی تنگ دل. دل کھلا کیجئے. یہاں ایک چھوٹا سا مشورہ دے دوں, آپ کو چاہیے اعتبار, دل کا ٹھہراؤ تو دل سے پیسے کی محبت نکال دیں. پانی کی طرح ہوتا ہے, اپنے پہ لگاتے ہیں نا اس سے زیادہ دوسروں پہ لگائیے. حضرت سلیمان عثمان کا قصہ یاد کر لیں جو پچھلے سالوں میں آپ کو سنایا ہوا ہے. کسی کو مال لگا دینا پڑے تو خوش ہوا کریں, کسی کو کھلانا پڑے تو خوش ہوں, کسی کو تحفہ دینا ہو تو خوش ہوں. ہاں, اپنی ذات پہ ایک کرون لگاتے ہوئے 10 دفعہ سوچئے کہ میں نے یہ کیوں لگایا, میں اس کو بچا سکتی تھی کہ نہیں. پھر آیت 101 سے 105 تک معجزات ہیں حضرت موسیٰ کے, اور فرعون کی ہٹ دھرمی اور اس کی بربادی کا تذکرہ ہے. اب دیکھیں سورت پوری ہو رہی ہے نا, تو دوبارہ بنی اسرائیل کے قصے آگے, جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے. تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے. جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا, کیا بولا فرعون؟ کہ موسیٰ, میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے. دیکھیے کیسی جرات تھی فرعون کی موسیٰ کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا کہ آسمان و زمین کے پروردگار نے ہی یہ معجزات دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں. اے فرعون, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً تباہ اور ہلاک کیا گیا ہے. آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے, تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ارتباط قلب کو آپ نے دیکھا. وقت کے فرعون یعنی سپر پاور کے سامنے کھڑے اور بالکل نہیں گھبرا رہے. تو لکھیے, جب حق آپ کے پاس ہوتا ہے نا, تو آپ دنیا کے کسی پلیٹ فارم, بڑے سے بڑے کسی پلیٹ فارم پہ بھی کھڑے ہو جائیں, آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی سن نہ لے, کسی کو پتہ نہ لگ جائے. اس لیے کہ حق کو سچ کو کوئی آنچ نہیں ہے. اور اسی طرح سے اللہ نے فرعون کو دبو دیا جو موسیٰ کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ سرزمین میں رہو بسو. ہاں, جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم سب کو سمیٹ کر لائیں گے, لپیٹ کر. لفیفہ کا لفظ بڑا اہم ہے, اس میں غور کیجئے. آج بھی ساری دنیا سے چن چن کر اللہ اس قوم کو ایک جگہ پہ لا رہا ہے. بعض کہتے ہیں یہ دنیا میں ہوگا اور بعض کہتے ہیں آخرت کی طرف اشارہ ہے. اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے, اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا. ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں, اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے اس قرآن کو ہلکے ہلکے ہولے ہولے اتارتے ہیں. مزہ تو بہت آتا ہے آرام سے پڑھنے پہ, پر وقت تو لگ جاتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, 24 گھنٹے تو ہمارے ہی ہیں نا, پیچھے کیا ہوگا. ہم سارے کام آرام آرام سے کریں, اور قرآن ہم جلدی جلدی بھاگ بھاگ کر کیوں کریں, کیا زبردستی ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تثبیت قلبی عطا فرمائے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی. اور اللہ نے جہاں جو باتیں کی ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ دکھا رہا ہے, اور آخرت میں بھی ہوگا. جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی ختم کرنے پہ قادر ہے. پھر آیت نمبر 106 سے 109, قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے کیونکہ قرآن پاک کی عظمت اور اس کی تاثیر بہت ہے. سمجھیے اور اس کو دل کے سکون کے ساتھ پڑھیے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ, قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں, اور ہم نے خود بھی اس کو بتدریج نازل فرمایا. کہہ دیجئے تم اب اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, تمہیں اس سے پہلے اس کا علم دے دیا, جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں, اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے, ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں, اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے. اللہ ہماری بھی بڑھا دے. آیت سجدہ بھی ہے, اور آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد جو دل کی کیفیت ہونی چاہیے یہ ہے. قرآن کی تاثیر کو دلوں پہ لیجئے. یہ چلے گئے اگر ادھر سے تو دل سخت ہو جائیں گے. آپ کہیں گے ایک اور قرآن پڑھ لیا, تو دل سخت نہ ہو جائے, سن سن کے سن نہ ہو جائیں, تو قرآن پڑھتے ہوئے رونا چاہیے. آج بھی اختیار کرنی چاہیے, تھوڑا سا جھک کے سجدے کی کیفیت بھی اختیار کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ جھکنا بھی پسند آئے گا. اور اس کے بعد پھر آخری آیتیں, آیت 110 سے 111 کو آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کی جا رہی ہیں. اچھے نام اور صفات اللہ ہی کے ہیں. قل ادعوا اللہ وعبدوا الرحمن, کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو, تمام اچھے نام اسی کے ہیں. نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھیے, اور نہ بالکل پوشیدہ, بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کیجئے, اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں. جو نہ اولاد رکھتا ہے, نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساجی رکھتا ہے, اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو, وہ تو پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے, اور تو پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے. دیکھیں سورت کا آغاز تھا سبحان اللہ سے, یا سبحان اللہ ہی سے. سورت کا اختتام ہے تکبیر یعنی اللہ اکبر سے, اور آگے سورت الکہف شروع ہوگی الحمدللہ سے. تو تثبیت قلب کے یہ تین نسخے یاد رکھیے گا کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس میں مدد دے. یہ آخری آیت کو آیت العزہ بھی کہتے ہیں, عزت دینے یا عزت دلوانے والی آیت ہے, اور توحید باری تعالیٰ کا اس میں خزانہ بھی ہے, شرک کی نفی بھی ہے. شرک کتنا فی اللہ کی اولاد کے نہ ہونے, اس کے مختار مطلق ہونے, کوئی شریک نہ ہونے, اور کسی کی مجبوری اور کمزوری کی وجہ سے اللہ نے کسی اور کو یعنی اللہ کو کسی اور ولی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اس پوری صورت میں ہم نے جو پڑھا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی صورت ہم نے پڑھ لی, اور ایک اور خوبصورت صورت کا کچھ حصہ ہمارے آج کے پارے میں ہے جس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں. سورۃ الکہف ترتیب کے اعتبار سے 18 نمبر کی سورت ہے. 1 سے 74 آیتیں اس پارے میں ہم پڑھنے والے ہیں, اور پھر اگلی آیتیں انشاءاللہ کل ہم اگلے پارے میں 16 پارے میں پڑھیں گے. تھوڑا سا اس کو اوور ویو لیجئے گا. سورۃ کہف کے مضامین کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات تو یہ کہ دجالی فتنے سے محفوظ رہنے اور رکھنے والی سورت ہے. بڑی معروف روایت ہے, مستدرک حاکم میں بھی ہے, کہ جمعے کے دن جو پڑھے گا اگلے جمعے تک دل میں ایمان اور ہدایت کا نور روشن رہے گا. کم از کم پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں ضرور پڑھیے. پڑھنا بھی مشکل لگ رہا ہے تو سننا شروع کر دیں, اور سننے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے کی عادت کر ڈال لیجئے. انشاءاللہ دنیا کی جو مختلف چیزیں آپ کو دکھیں گی اس سے بچائے گی یہ سورت. چونکہ دجال کا لفظ قرآن میں نہیں آیا, دجل کہتے ہیں دھوکے کو, دنیا کو, तो ये क्या होगा, ये मादा प्रस्ती है, ये मटीरियलिस्टिक है, ये एक लंबी कहानी है जो इंशाल्लाह आपको डिटेल से सूरह काफ जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। इस वक्त बस ये समझ लीजिए कि इसके चार वाक़ियात ऐसे आने वाले हैं जिसमें मुख्तलिफ फितनों का तस्कर है, जिसमें सबसे बड़ा फितना दज्जाली फितना है, और वो कह के अल्लाह के अहकामात और उसके रसूल की बातों से ये दुनिया गाफिल कर देती है। तो इसमें मादा परस्ती, दुनिया परस्ती, जाहिर परस्ती से अल्लाह ने बचाकर आपको मुझे बेहतरीन तरीके से समझने की दावत दी है। पहली आयात को देख लें तो आयत नंबर 1 से 6 में अजमत कुरान है, 7 से 8 में दुनिया और इसकी जिंदगी की हकीकत है, 9 से 26 में साबे कहफ का वाक्य, 27 से 31 में दाई के लिए नसीहत है, 32 से 44 दुनियादारों के लिए इबरत अंगेज वाक्य है, 45 से 46 में दुनिया की हकीकत, दुनिया की जिंदगी की हकीकत बताई गई, 47 से 49 अहवाले आखिरा, और 50 से 53 में शैतान की पैरवी करने वालों का इंजाम, 54 से 59 रसूलों की तलीमात से पहलू तही का इंजाम, 60 से 82 हजरत मूसा और खिजर का वाकया, 83 से 89 जुलकरनैन का वाकया, 83 से 98 जुलकरनैन का वाकया, 99 से 101 जाहिर परस्तों का इंजाम, और 102 से 106 दुनियादारों का इंजाम, और 107 से 108 आखिरत के तलबगारों का इनाम, और 109 से 110 आखिरी आयतें तौहीद बारी ताला यानी तौहीद के जिक्र से शुरू और तौहीद के जिक्र से खत्म होने वाली सूरत है। आपको मुझे दावत देती है कि हम इसको समझें और इसको पढ़ें और इस पे गौर व फिक्र करें और इसको अमल के लिए समझें। चार बड़े वाक़ियात हैं इसमें और 2 मिसालें हैं, कुल 6 चीजें हम इस सूरत में पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह आज हम इसको पढ़ेंगे और चूंकि वक्त आखिर का होता है मुख्तसर, लेकिन कल हम शुरू में इसमें मजीद बातों पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिही अल-किताब वलम यजअल लहू इवजा। पहली 5 आयतें, इस किताब में कोई टेढ़पन नहीं, कुरान की अजमत और उसका पैगाम क्या है आइए पढ़ते हैं। इस किताब में कोई टेढ़पन क्यों नहीं, क्योंकि तमाम तारीफें इसी अल्लाह के लायक हैं जिसने अपने बंदे पर यह कुरान उतारा और इसमें कोई कसर बाकी न छोड़ी, बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास से सख्त सजा से होशियार कर दे और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे कि इनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और इन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद रखता है। यानी शुरू में ईसाइयत नसारा के बातिल अकायद पे तनकीद है इस सूरत में। दर हकीकत ना तो खुद इन्हें इसका इल्म है ना इनके बाप दादों को, ये तोहमत बहुत बुरी है जो इनके मुंह से निकल रही है और वो निरा झूठ बोल रहे हैं। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयात में कुरान की अजमत भी बताई गई और अल्लाह की पकड़ का भी खदशा बताया गया और गलत अकायद की जोरदार नफी भी की गई। अब आगे आयत नंबर 6, अल्लाह के नबी की तलब और तड़प, अल्लाह मेरे और आपके अंदर पैदा कर दे, और वो क्या है, फल अल्लकबाखियुन नफ्सक अला आसारिहिम, बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान न लाएं तो क्या आप इनके पीछे इस रंज में अपनी जान हलाक कर डालेंगे। जवाब दीजिए, हम कहते हैं हमारे दिल में कोई तड़प नहीं, जो करते हैं करते रहे, क्यों बुरे बने, हमको सबको पता है, सबके किताबें हैं, सबको सब पता है, अब मैं क्या पैगाम दूं। नहीं, ठंडे ठंडे दिल से दिल ठंडे नहीं होंगे। दूसरों की हिदायत की फिक्र ना होना इस बात की दलील है कि आप खुद भी हिदायत पे नहीं। पूरी हिदायत जब आती है तो बंदा सो नहीं सकता, खा नहीं सकता, वक्त जाया कर नहीं सकता। आगे 7 से 8 दुनिया और इसकी जिंदगी की हकीकत भी है और क्यामत की कुछ झलकियां भी हैं। इन ना चाल नमा अल अर्द जी नतल्लहा, रूए जमीन पर जो कुछ है हमने इसे दुनिया की जिंदगी की रौनक का बायस बनाया कि हम इन्हें आजमा लें कि इनमें से कौन नेक अमाल करने वाला है, और इस पर जो कुछ है हम इसे एक साफ मैदान कर देने वाले हैं। जरा अपने घर को जहन में लाइए, चटियल मैदान हो जाएगी ये दुनिया, एक वक्त आएगा जिसमें आपको मुझे फिर कोई चीज छुपी हुई नहीं दिखेगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आप देख सकते हैं कि कैसे अल्लाह ताला दुनिया में हमें मुख्तलिफ चीजों को बनाकर दिखा रहे हैं कि एक दिन सब घर जमीन के अंदर चले जाएंगे और पीछे रह जाओगे। अल्लाह ताला हमें उस वक्त से पहले ही हिदायत दे दे, ऐसा ना हो कि हम किसी पकड़ का शिकार हो जाएं और उसके बाद फिर अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए। आयत नंबर 9 से 20 तक असहाबे कहफ का किस्सा है और ये वो किस्सा है कि जिस नाम पे इस सूरत को सूरत अल कहफ कहा जाता है। लिखिए, ये ईमान का फितना है, जो मुख्तलिफ फितनों का हम इसमें हल पढ़ने वाले हैं उसी में इधर आपको मुझे ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। पूरा किस्सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसे जब अल्लाह ताला की आजमाइश आती है तो इंसान को अल्लाह थाम लेता है। रबत नाला खलूबी इन पे गौर करिएगा, इस वाक्य पे काफी कुछ तो इसका पढ़ गए लेकिन अभी बहुत कुछ रहता भी है। अम हसिबतन असहाबुल कहफ व रकीम, क्या तू अपने ख्याल में गार और कतबे वालों को हमारी निशानियों में से कोई अजीब निशानी समझ रहा है? इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे, आमीन तो कह दीजिए। बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल इसी गार में पर्दे डाल दिए। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, तरतीब में चलने वाली दुआओं में से अगली दुआ। यहाँ रुश्त का लफ्ज आया तो जरा सा रुश्त को देख लीजिए, हिदायत और इस्तकामत के मानों में होता है रुश्त। अल्लाह से दुआ करने वाले लोगों में हिकमत का नूर होता है। नाजुक मरहलों पे वो अल्लाह से रहनुमाई की दुआएं कर लेते हैं, यानी किसी से गाइडलाइन नहीं मांगते क्योंकि लोग तो आपको रास्ते से उतार देंगे। तो जब दीन के रास्ते में कोई आजमाइश आए या गाइडलाइन चाहिए हो तो या तो किसी अल्लाह वाले से पूछिए जो खुद भी उस पे चल रहा है, और या फिर किस अल्लाह ताला से ही मांग लीजिए। दुनियादारों से पूछेंगे तो फैसला बहुत गलत कर देंगे आप भी। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि हम ये मालूम कर लें कि दोनों बिरों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी है किसने ज्यादा याद रखी। हम इनका सही वाक्य आपके सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनको हिदायत में तरक्की दी थी। हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे जबकि ये उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान और जमीन का परवरदिगार है, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और माबूद को पुकारें। अगर ऐसा किया तो हमने निहायत ही गलत बात कही। शतता कल्बुल मरबूत, आयत नंबर 14 में। क्या होता है ऐसा दिल, जरा सा नोट कीजिए, ये आपके लिए एक बहुत ही प्यारा क्राइटेरियन बन जाएगा। पहली बात तो देखिए, रबतना अला खुलूबिहिम इस कामू, आपको खड़ा होना पड़ेगा फिर दिल जमेगा। हिदायत की तरक्की से दिलों की मजबूती कैसे होती है? तौहीद परस्ती से। जब बंदा तौहीद परस्त होता है तो अल्लाह दिल जमा देता है, फिर ईमान पर साबित कदमी से, अल्लाह ताला से उम्मीद और तवक्को रखने से, और इसी तरह से काम के पुख्ता अजम से, आजमाइशों पर सबर करने से और आखिरत की फिक्र से। अल्लाह हमारे दिल को ऐसा ही बना दे। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना रखे हैं, इनकी खुदाई की कोई साफ दलील क्यों पेश नहीं करते? और अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधने वालों से ज्यादा जालिम कौन है? जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा और इनके माबूदों से किनारा कश होगे, नोट करिए किनारा कश होंगे, फिर मदद मिलेगी। हम कहते हैं यहाँ बैठे हुए मदद आए, हम भी गुनाह में साथ शामिल है, फिर मदद आए तो नहीं आती। फरमाया जब वो एक तरफ हो गए तो अब तुम किसी गार में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। अल्लाह हमारे कामों में भी सहूलत फरमा दे। आप देखेंगे कि सूरज यानी आफ्ताब बवक्ते तुलू इनके गार से दाई जानिब को झुक जाता है और बवक्ते गरूब इनके बाई जानिब कतरा जाता है, और वो इस गार की कुशादा जगह में है, यानी अल्लाह ने गार को एक छोटा सा इंक्यूबेटर बना दिया, ना तो डायरेक्ट धूप पड़ती रही और ना बिल्कुल सर्दी। ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला जिसकी राहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है, और जिसे वो गुमराह कर दे नामुमकिन है कि आप इसका कोई कारसाज और रहनुमा पा सकें। आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं हालांकि वो सोए हुए थे, खुद हम इन्हें दाएं बाएं करवटे दिलाया करते थे ताकि बर्ड सोल ना हो जाए। इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। आप अगर झांक कर इन्हें देखना चाहते तो जरूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और इनके रोब से आप पर दहशत छा जाती। इसी तरह हमने इनको जगाकर उठा दिया कि आपस में पूछ घिच कर ले। एक कहने वाले ने कहा, क्यों भाई, तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने जवाब दिया, एक दिन या एक दिन से भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ताला ही को है। अब तुम अपने में से किसी को अपनी ये चांदी देकर शहर भेजो, वो खूब देखभाल ले कि शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर है, फिर इसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए। और वो बहुत एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। अगर ये काफिर तुम पर गलबा पा जाएंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें अपने दीन में लौटा लेंगे, फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो सकोगे। देखिए, उठते वह फिर दीन के और ईमान के फिक्र का खतरा। इसीलिए अब अगली आयत देखिए, 21, कब्रों पर मस्जिद बनाना मना है। असाबे कहफी का किस्सा आगे चलता जा रहा है। वक़ज़ालिका असरना अलैहिम लियालमू अन्न वअदल्लाहि हक़। हमने इस तरह लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान लें कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शक नहीं। जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे तो कहने लगे, इनके गार पर एक इमारत बना लो, यानी इनका मजार। फिर इनका रब ही इनके हाल को ज्यादा जानने वाला। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो इनके आसपास मस्जिद बना लेंगे। आयत 22, अटकल 25 देखिए। सयकूलूना सलासतु रावियुहुम कल्बुहुम। कुछ लोग तो कहेंगे कि असाबे कहफ तीन थे और चौथा इनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे कि पांच थे और छठा इनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल के तीर तुक्के चलाते हैं, निशाना देखे बगैर पत्थर चला देने की तरह। कुछ कहेंगे सात हैं, आठवां इनका कुत्ता है। आप कह दीजिए, मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके बारे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगु ही करें और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ गिछ भी ना करें। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या पता चला कि इस पूरे वाक़े में, अभी आगे भी थोड़ा सा वाक़ वहां तक लेके चलती हैं तो फिर कुछ चीजें आपको ऐड कराऊंगी कि कैसे अल्लाह ताला हमें इन बातों से अपने लिए ईमान की गजा लेने वाला बनाते हैं। आयत 23 से 24, इंशाअल्लाह कहने का हुक्म है, फिर अल्लाह की मदद आएगी। वला तकूलन अली शैन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा। और हरगिज हरगिज किसी काम पर यूं मत कहिए कि मैं इसको कल कर लूंगा, मगर साथ ही इंशाल्लाह कह लेना। और जब भी भूले अपने परवरदिगार की याद कर लिया करो और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत के करीब की बात की राहबरी करे। नोट करें, हिदायत की बातें मोमिन का रद्द अमल है। अगर कोई इंशाल्लाह कहना भूल जाए तो याद आने पर कह लिया जाए। काम में बरकत के लिए अल्लाह का जिक्र करने में आसानी है। आयत 25-26, गैब की बातें अल्लाह के इल्म में है। वला भी सूफी काफी सलासमियत सिनीन वज़दादू तिसआ। वो लोग अपने गार में 300 साल तक रहे। हाईलाइट करें, अल्लाह ने कितना लंबा अरसा इनको सलाह दिया। हम तो कहते थोड़ी सी देर में दिल भर जाता है, लेकिन अल्लाह जब दिल बांध दे 300 साल लगे और 9 साल और ज्यादा हुए, यानी 309 साल हो गए। शमसी और कमरी का फर्क कर लें तो ये 9 साल का डिफरेंस समझ आ जाएगा। आप कह दें कि अल्लाह ही को इनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है। आसमानों और जमीनों का गैब सिर्फ इसी को हासिल है। वो क्या ही अच्छा देखने सुनने वाला है, सिवाय अल्लाह के इनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। असहाबे कहफ का किस्सा। डिटेल्स थोड़ी पीछे हो गई, बाकी आपको डिटेल कोर्स कराएंगे। आज फिर दिल चाह रहा है कि एक बार फिर डिटेल से आपको पढ़ाऊं सूरत अल कहफ, लेकिन यहां आपके मेरे लिए जो बात है वो क्या है कि ईमान, ईमान और ईमान। असहाबे कहफ के पूरे किस्से में से जो बात मेरे आपके लिए है वो चंद जेम्स की सूरत में नोट कीजिए, ताकि आपको भी कभी ऐसे हालात से दो चार होना पड़े तो आप भी अपने आप को समझें। आप देखिए कि इन्होंने अमली तौर पर वो सब करके दिखाया जो उस वक्त एक सच्चे मोमिन का फर्ज था, तो अल्लाह ताला ने भी इनको सारी मदद दी जो आपने अभी देखी है। इन्होंने जन्नत की पूरी कीमत चुका दी तो अल्लाह ने भी इनकी मदद कर दी। उनको ये सब क्यों समझ आया? क्योंकि वो दुनिया की हकीकत को पहचान गए। आज हम भी जन्नत की दुआएं भी मांगते हैं, ख्वाहिशें भी करते हैं, लेकिन अपने पैरों की बेड़ियों को नहीं खुलने देते। हम पहले सबको राजी करना चाहते हैं, फिर रब को राजी करेंगे। सब कुछ देकर जब रब की रहमत का सवाल किया जाए तो अल्लाह इतना देता है जितना इधर असाबे कहफ को दिया गया। कुछ दिए बगैर सब कुछ लिया नहीं जाएगा। मजलूम भी थे और मोमिन भी थे, इसीलिए दुआ सीधी अर्श पर पहुंची। और याद रखिए कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े तो आपकी क्या कैफियत है। ये मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देने लगी हूं, फ्री में आप टेस्ट करवा लीजिए, पैसा नहीं मिलेंगे, लेंगे हम आपसे। जब आपके ऊपर कोई बहुत प्रेशर पड़ता है, कोई अनयूजुअल हालात आ जाते हैं, प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, अनयूजुअल है, कोई दुख सुख के नाम पे, तो उस वक्त आपका क्या हाल होता है? दो में से एक सूरत नोट करें, या तो आपका दिमाग नहीं चलता या फिर बहुत चलता है। अब आप में से हर एक अपना सोच ले, मत अपने शौहर को सोचिए और ना घर वालों को सोचिए, बस अपने आप को सोचिए। अगर मुश्किल हालात में, एडवर्स कंडीशन में आपका दिमाग खूब काम करने लगता है, आपको आइडियाज आते हैं, सूझते हैं और आपको सब कुछ एकदम, यानी आप जिसको कहें कि मैन ऑफ एक्शन बन जाते हैं और मल्टीटास्किंग भी हैं और आप फिर मसले का हल भी ढूंढते हैं, तो आप मोमिन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन की ये शान है कि जितनी मुश्किलें पड़ती हैं उतना उसका दिमाग काम करता है। इसके बरक्स जो गैर मोमिन है उसका तो दिमाग ऐसे वक्त में माउफ हो जाता है। फिर आप देखिए किस में हमने देखा कि अल्लाह ने उनको थपक थपक के सुला दिया। क्या आपके जहन में नहीं आया कि जैसे माँ बच्चे को सुलाती है? जरा इतनी उन्होंने स्ट्रेस लिए में से गुजरे, इतने ट्रॉमा में से गुजरे, थक गए ना। जब भी किसी आप मुश्किल हालात से गुजरते हैं या आपके हमारे यहाँ तो एक शादी से ही गुजर जाए तो बाद में देखिए जो हालात होते हैं, फिर चार दिन सोते हैं, कहते हैं अब थक गई हूँ, शादी से गुजरी हूँ। क्यों भाई, जंग करके आए आप? नहीं, वो आपने शादी निभाई है, रोज जागते जाते थे तो अल्लाह ने इनको थपक थपक के सुला दिया, ट्रॉमे से गुजरे थे। जब भी जिंदगी में कोई मामला अपने हाथ से निकल जाए तो अल्लाह पर डाल दीजिए। यह आपके लिए मेरी एक छोटी सी एडवाइस है। और ईमान के फलों में से ये एक फल होता है कि बंदा मोमिन मुश्किलात में इर्तबात कल्ब का शिकार हो जाता है। जब मुश्किल गुजर जाए तो फिर उस वक्त इंसान सोचता है कि मैं कहां से गुजर गया हूं। और आप देखिए कि उनके कानों की बात हुई कि वो सुनते थे, जब हम मरेंगे ना तो मौत की सूरत में सबसे आखिर में इंसान का जो उस काम करना छोड़ता है वो कान छोड़ते हैं। लोगों को नरम गद्दों पर नींद नहीं आती, उनको पत्थरों पर नींद आ गई। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ईमान की कीमत चुकाई। लिखिए जरा ईमान के सफर को। ईमान का शुरू का कदम मुश्किल होता है। इस ईमान शुरू में मुश्किलात की तरफ से आसानियों में लेके आएगा, जबकि दुनिया की जिंदगी में देखे तो पहले आसानियां फिर मुश्किलात। मसलन आपके बच्चे की मैथ की बुक 2+2, 2+4 खत्म, अगले साल 2×2, फिर आगे रेसिप्रोकल, फिर आगे क्वेश्चंस। दुनिया की किताबें मुश्किल होती जाती है ना, आपको दुनिया में पहले थोड़ी चीजें देते हैं फिर आगे और मुश्किलों में डालते हैं। अल्लाह की सुन्नत इससे उलट है। शुरू में इतना मुश्किल लगता है हिदायत पे आना, और मैं सारे हिदायत के तालिबीन को यहां कहूंगी कि हिदायत पे आना शुरू में मुश्किल है, कोशिश कीजिए इस थ्रेश होल्ड से निकल आइए। आप एक दफा शुरू हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आसानी है, क्योंकि फाइन नमल उसरी युसरा। आप जब ईमान के तकाजे शुरू में पूरे करने लगते हैं, ऐसे लगता है किसी ने आपको पानी में धक्का दे दिया और आपको तैरना नहीं आता, सब सहारे छूटने लगते हैं। और ऐसे पहाड़ी के ऊपर से ऊपर नीचे आने को जहन में लाइए, एक ऐसी स्टेज बंदे की जिंदगी में ईमान के तकाजों को पूरा करते हुए आती है कि आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि स्लोप है, आप अगर स्लोप पे खड़े तो नहीं होंगे, या आप नीचे जाएंगे या ऊपर आएंगे, दो में से एक फैसला करना पड़ेगा। थोड़े दिले लोग फिर नीचे जाने का फैसला करते हैं, नो वी कैंट हैंडल दिस, आई कैंट कॉप विद दैट। कई लोग कोर्सेज छोड़ देते हैं बीच में, सबको कहूंगी वापस आ जाएं, अधूरे कोर्सेज से पूरी हिदायत नहीं मिलती। और कुछ कहते नहीं हम ऊपर जाएंगे, जरा सी हिम्मत करके आप ऊपर जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला आसान कर देगा। और यहां इन पर आजमाइश आई थी बादशाह की तरफ से कि आपको मुझे भी खुदा ना खास्ता किसी मुल्क का बादशाह ही ऐसे रोकेगा दीन पे और आप निकाब ना करिए और हिजाब ना करिए, ऐसा नहीं होगा। हम पर आजमाइशें दूर वालों से नहीं करीब वालों से आती हैं। कभी मलामतों की सूरत में हम पे छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं। घर की मुलाजमा छुट्टी पे चली गई, आपकी आजमाइश आ गई कि अब आप क्लास लेते हैं कि नहीं लेते। छोटा ईमान छोटी मुश्किल, बड़ा ईमान बड़ी मुश्किल, कोई बात नहीं। दुनिया चली गई तो जाने दीजिए, जरा सा 19-20 बर्दाश्त नहीं कर सकते, आज हम दुनिया के बारे में परेशान है, तो लिहाजा आपको मुझे दाव पे लगाना पड़ेगा। जाती है दुनिया जाए, लोग रूठते हैं तो रूखे रूठे, तुम रूठे हम छूटे, वैसे भी तो जानी थी, लोग आपको छोड़ देंगे, आपकी सहेलियां आपसे प्यार नहीं करेंगी, तो क्या हुआ कब्र में जाकर भी तो आप नजरों से ओझल होंगे। कभी लोगों की रजामंदी कबूल करनी पड़ती है, कभी छोड़ना पड़ता है, कभी कुर्बान करेंगे शोहरत को, कभी तारीफ को, सब कर लीजिए, मोमिन के अंदर एक बेनियाजी आ जाती है। आप देखिए जिसकी नई गाड़ी होती है ना, सड़क पर डालते उसकी जान निकली होती है, कहीं पत्थर ना लग जाए, कहीं कीचड़ ना पड़े। पुरानी सुजुकी गाड़ी चलाने वाले को परवाह भी कोई नहीं, लोगों ने बचना है तो खुद ही बच जाए, जितने डंट पड़े हैं पड़ते रहे, मुझे कैसे लगे। बिल्कुल इसी तरह जब दुनिया ज्यादा बढ़ाते हैं तो पुरसकून नहीं रहेंगे। रिबाते कल्ब मिलता ही उसको है जो दुनिया को दिल से निकाल दे। इंसानों को देखिए वो कितना अच्छा, ऊपर की कवरिंग क्या पहनना, रिंग्स पहनी, डायमंड पहनना छोड़ दीजिए। और याद रखिए कि दो चीजों में तो तकाबल हो सकता है ना जो एक जैसी हो, मतलब गोल्ड के दो सेटों में एक ज्यादा अच्छा दूसरा अच्छा, डायमंड के दो सेटों में चूज कीजिए एक लेना है कि दूसरा, लेकिन कोयले और डायमंड का फर्क कौन लेगा, लोहे का एक सेट और एक सोने का, उसका क्या तकाबुल है। दुनिया कोयला है, आखिरत हीरा है। हर वक्त प्रोज एंड कॉन मत तोलिए, उन्होंने भी फॉर वाइज काम खड़े हो गए, प्रोज एंड कॉन नहीं तोले, जरा भी उनके कदम नहीं डगमगाए, उम्मीद और मायूसियों के बीच में नहीं लटके, डोलते नहीं रह गए, जरा भी इनके कदम नहीं डगमगाए, और उन्होंने ये वजन नहीं किया कि मेरे इस अमल का कि मैं अब सब छोड़कर घर से जा रहा हूं तो रिएक्शन क्या होगा। आपके मेरे लिए ये पैगाम है कि जब अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए तो सारी ऑप्शंस को खत्म कर दीजिए, और फिर जब दिल दुखता है ना लोगों की बातों पे, तो रबतना अला कुलूबिहिम, अल्लाह ईमान की पट्टी बांध देता है ऐसे लोगों के दिलों में, लेकिन कुछ लोगों का ईमान नकली होता है। लिखिए कैसे पता चलेगा आपका ईमान नकली है असली, अलामतें बोल देती हैं एक दो सिर्फ। नकली ईमान गूंगा होता है, बुराइयां देखता है खामोश रहता है, लोगों को गलत काम करते देखता है कुछ नहीं कहता, हराम में मुल्तला देखता है कुछ नहीं होता, खुद भी गलत काम करता है उनके रहने में, तो ये गूंगा ईमान है। असली ईमान वोकल होता है, और खास तौर पे नया नया ईमान तो इतना वोकल इतना ब्लंट होता है, और आपके इसकी तो जुबान ही बड़ी लंबी होती है, ऊंची आवाज में बोलता है कि रोकना पड़ता है, अच्छा जरा सबर सबर, जैसे पीछे पढ़कर आए ना सूरत रात में, एक वादी में जो पानी पत्थरों पर टकराता है तो आवाजें आती हैं ना, तो चुप नहीं रहा जाता नए ईमान वाले से, जैसे छुरी चुभे तो सी की आवाज तो आती है ना, इसी तरह याद रखिए नए ईमान के साथ जो फैसले करने हैं कर लें। आप में जितने साथी इस वक्त पहली दफा कुरान सुन रहे हैं वो फैसले कर लें, दूसरी बार कुरान पढ़ेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, और याद रखिए कि अल्लाह सुभान व तआला फिर हक से दूर नहीं जाने देता, और एक वक्त आता है कि इंसान फिर नेक लोगों का साथ रखता है। ये एक एक निकला था और इनके अच्छे कॉज ने इनको इकट्ठा कर दिया। आपके मेरे लिए भी यही पैगाम है इस किस्से के एंड पे कि बुरी सोहबतों से निकलकर अच्छे लोगों की सोहबत रखिए, ताकि अल्लाह ताला भी और वो भी आपको अगर कहीं आप इधर से उधर होने लगे तो बचा ले। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हमारे ईमान को खोटा होने से बचा दे। आगे चलते हैं 27 से 28 है। वत्लुमा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, सबर आजमा हालात में, दाइये दीन के लिए नसीहतें हैं इसमें कि सुबह शाम अपने रब को पुकारते रहिए। कैसे, तेरी जानिब जो तेरे रब की किताब वही की गई है इसे पढ़ता रह, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, तो इसके सिवा हरगिज हरगिज कोई पनाह की जगह न पाएगा, और अपने आप को इनके साथ रखा कर जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं और इसी के चेहरे के इरादे रखते हैं, रजामंदी इसकी चाहते हैं, खबरदार तेरी निगाहें इनसे हटने न पाए कि दुनिया की जिंदगी के ठाठ के इरादे में लग जा, लेकिन इसका कहना ना मानना, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। नोट करें ऑपोजिट है उस आयत से, असाबे का आपके साथ जो हुआ अब ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट किरदार है, और जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम ही हद से गुजर चुका है, ऐसे ही होता है। याद रखिए जितना ख्वाहिशों में पड़ेंगे उतना हिदायत से दूर होते जाएंगे। अलकल्बुल गाफिल की बात है आयत 28 में, कौन होता है, ख्वाहिशात का असीर दिल होता है। चार सिफात लिख लीजिए ऐसे दिल की, अल्लाह की याद से गाफिल रहने वाला, अल्लाह की नाशुक्री करने वाला, मुसीबत के वक्त इमदाद से कतराने वाला, और उजर बहाने बेसब्री करने वाला, अल्लाह ताला हमें सबर आजमा हालात में भी दीन पर जमा के रखे ताकि हम बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला की मदद को पा सकें। आयत 29 से 30 जहन्नम की कुछ झलकियां हैं इसमें। वकुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम वकुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शा फलयुमिन, और ऐलान कर दीजिए कि ये सरासर बरहक कुरान है तुम्हारे रब की तरफ से है, अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे। जालिमों के लिए हमने अब आग तैयार कर रखी है जिसके शोले इन्हें घेर लेंगे। जरा से इन आयतों पे दुआ कर लीजिए रिक्कते कल्बी के साथ कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी इस आग के अंदर न डालना, कहां हमारे दोस्त जाए इसमें। अगर वो फरियाद रसी चाहेंगे तो इनकी फरियाद रसी इसी पानी से की जाएगी जो तेल की गर्म धार जैसा होगा जो चेहरे को भून देगा। बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी बुरी आरामगाह है, यानी ये दोजख बड़ी बुरी है। इसके बरक्स यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब जाया नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। आयत 31 जन्नत की खूबसूरतियों का जिक्र है। उलाइक लहुम जन्नातु अदनिन तजरी, इनके लिए मिश्की वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वहां ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। अल्लाहुम अजअलना मिनहुम, और सबस रंग के नरम और बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे, वहां तख्तों के ऊपर तकिये लगाए हुए होंगे। क्या खूब बदला है और किस कदर उमदा आरामगाह है। ये था जी पहला वाकया सहाबे कहफ का, और उनके साथ सारे उनके जो बाकी लवाजमात थे वो इस पे पूरे हुए। अगला किस्सा लीजिए बाग वालों का किस्सा। ये दो ही किस्से इधर हम देखते हैं। ये है माल का फितना। आयत नंबर 32 से 44 तक चलेगा ये किस्सा, और इसको पढ़ते वक्त दुनियादार मेंटेलिटी मटीरियलिस्टिक माइंड मादाप्रस्ताना सोच को जहन में रखिएगा। इबरत आमेज वाकया है दुनियादारों के लिए। वद्रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा, और इन्हें इन दो शख्सों की मिसाल भी सुना दीजिए जिनमें से एक को हमने दो बाग अंगूरों के दे रखे थे और जिन्हें खजूरों के दरख्तों से भी हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगा रखी थी। दोनों बाग अपना फल खूब लाए और इसमें से किसी तरह की कमी न की, और हमने इन बागों के दरमियान नहर जारी कर रखी थी। अलगरस इसके पास मेवे थे। एक दिन इसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूं। देखिए शोए मार रहा है, कैसे इसके दिल में इर्तबात नहीं है। बाज लोगों को माल मिल जाता है तो शोहे और छिछोरे होने लगते हैं और लोगों को जलाने के लिए पहनते और खाते पीते हैं और खिलाते भी इसलिए कि जल जाएं कि इतनी डिशेज बना दी मैंने आपके लिए अपने घर में बुलाकर, और जलते कुड़ते जाएं लोग आपके घर से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जत्थे के एतबार से भी मैं बहुत मजबूत हूं। लोगों को खोल खोल के अपनी दिखाते हैं स्टेटमेंटें और अपने बंगले और ये कोठियां और ये मेरी डायमंड की रिंग्स हैं, ये मियां साहब ने तब दिया था, ये शादी में मिला, ये मुंह दिखाई पे मिला। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, सब डिस्प्ले कल्चर दिखाया जा रहा है इसमें। और ये अपने रब में और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा कि मैं ख्याल नहीं कर सकता कि किसी वक्त भी ये बर्बाद हो जाएगा। ये भी एक जुमला लिख लें, दुनिया जब मिलती है तो लगता है कभी नहीं जाएगी, और जब चली जाती है तो ऐसे लगता है कि पानी की तरह पिघल गई, जैसे बर्फ पिघलती है तो पता भी नहीं चलता किधर गई। और एक और जो इंसान के अंदर गलती पैदा होती है दौलत से वो आगे है, और वो क्या, और न मैं क़यामत को कायम होने वाली ख्याल करता हूं, और अगर बिलफर्ज मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया, यानी उम्मीद तो नहीं लेकिन चलो बिलफर्ज चले भी गए, तो यकीनन मैं इस लौटने की जगह इससे भी ज्यादा बेहतर पाऊंगा। इसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा, क्या तू इस माबूद से कुफर करता है जिसने तुझे मट्टी से पैदा किया फिर नुतफे से फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया, लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूं कि वही अल्लाह मेरा परवर दिगार है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करूंगा। मतलब शो ऑफ करने को ये शिर्क कह रहा है। तूने अपने बाग में जाते वो क्यों ना कहा कि अल्लाह का चाहा होने वाला है, कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कम देख रहा है बिल्कुल मायूस नहीं हो रहा। ये है सच्चा मोमिन, किसी के घर बंगले कोठी कपड़े जूते को देकर राल ना टपकाएं। ये आपके ईमान की दलील है इंशाल्लाह। बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग इस बाग से भी बेहतर दे दे और इस पर आसमानी आफत भेज दे तो ये चटियल और साफ मैदान बन जाए। ईमान की निगाह से दुनिया ऐसी ही दिखती है। एकदम जमीन फटे और ये सब कुछ उसमें चला जाए तो क्या इन घरों की वजह से अल्लाह को नाराज करना। अब तो हम सब तौबा कर लें, क्या नाफरमानियों के साथ हम दुनिया से जाना चाहेंगे। और एक और आफत भी आ सकती थी, वो क्या, या इसका पानी नीचे उतर जाए और तेरे बस में ना रहे तो तू इसे ढूंढ लाए और इसके सारे फल घेर लिए गए। देखिए वही हुआ जो होता है ऐसे वक्तों में, बस वो अपने इस खर्च पर जो इसने इसमें किया था अपने हाथ मलने लगा और बाग तो उंधा उल्टा पड़ा था। और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को भी शरीक ना करता। क्या इसने किसी कब्र को सजदा किया, किस शिर्क की बात है। शिर्क फिल हुक्म, अल्लाह की बात मानने की बजाय दूसरों की मानी और मालो दौलत पे तकिया किया, मादा प्रस्ती का शिर्क है इसका। आज की तो सारी अप्रोच ही यही है, इसकी हिमायत में कोई जमात ना उठी कि अल्लाह से इसका कोई बचाव करती और ना वह खुद बदला लेने वाला बन सका। यहीं से साबित है कि इख्तियारात अल्लाह बर हक के लिए हैं, वो सवाब देने और इंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर है। आगे एक मिसाल है, इसको जरा तसव्वुर की निगाह से सुनिए, कैसे अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारी बातों को पढ़ने के बाद, और आपने इधर देखा कि उसकी बातें, अपनी प्लानिंग की बातें, अपनी शो मारना और अपने आप को बड़ा समझना और दीनदारों को बुरा और इनको क्या पता जी इन्होंने क्या कमाया है, हमारी मजबूरियां, ऐसी बातें करते हुए अब हयात जिंदगी की हकीकत लीजिए। इनके सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो, जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं और इससे जमीन का सब्जा मिला जुला निकलता है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। बात तो सच है ना, दुनिया आती दिखती है जाती नहीं दिखती, कैसे सब्जा हरियाली खूबसूरती है और जब फिर सब चला जाता है तो इंसान हाथ पे हाथ मलता। इसलिए 46-47 माल और औलाद दुनिया की जीनत है, ये पीछे वाली मिसाल के बाद अल्लाह ताला आपको मुझे अपने माल और अपने औलाद की तरफ लेके आ रहा है। कहते हैं कि लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, तो ना आए अपनी मर्जी से ना जाना अपनी मर्जी से है, तो फिर इस दुनिया में रहकर क्या करिए। इसको ये बड़ी अहम आयते हैं, इस पे बात हो सकती है लेकिन अभी वक्त नहीं है, इस पे बहुत दफा बात होती है खास तौर पे बच्चों के प्रोग्रामों में कि अपने माल और औलाद को कैसे बाकियातु सालेहात में बदले। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जीनत है और हाल बत्ता बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के एतबार से और आइंदा की अच्छी तवक्को के एतबार से बहुत बेहतर है। अल्लाह औलादों को आंखों की ठंडक बना दे और वाकई हमें ऐसी तरबियत की तौफीक दे और इस माल को भी हमारी आखरत के लिए अल्लाह ताला इस्तेमाल करवा दे। आज अपने हाथों से दे जाए, ऐसा ना हो कि बाद में लोग इसको लेने के लिए लड़ भी रहे और हमसे बदगुमान होते फिरें कि इतना छोड़ गए और जिंदगी में तो कभी उन्होंने पानी ना हमें पूछा। और जिस दिन हम पहाड़ों को चिल्लाएंगे और जमीन को तो साफ खुली हुई देखेगा, दिल को उदास करने वाली आयत है, और तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे इनमें से एक भी बाकी न छोड़ेंगे। अब आगे देखिए, हाजिरी का वक्त है, क्यामत का मंजर, आयत 48 बल्कि 47-49 में भी आपको यही दिखेगा। वो उरीदु अला रब्बी का सफ़ा लक़द जीतुमूना, अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे। दिल को यकीन दिला लीजिए, कब्र में जब लोग डालेंगे तो कोई प्यारे से प्यारा भी साथ नहीं आएगा और सब के सब तेरे रब के सामने सफ बस्ता हाजिर किए जाएंगे। यकीनन तुम सब हमारे पास इसी तरह आए थे जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, लेकिन तुम तो इस ख्याल में रहे कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ना करेंगे। और उससे भी अगला मुश्किल मरहला, इंसान के अपने आमाल, वबुदियल किताब फतरुल मुजरिमीन, वबुदियल किताब फतरुल मुजरिमीन मुशफिकीन, और नामे अमल सामने रख दिए जाएंगे पस तू देखेगा गुनाहगार इसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे होंगे। देखिए क़यामत के दिन सबसे ज्यादा किसका डर होगा, जहन्नुम का नहीं, अल्लाह का नहीं, अपने लिखे हुए का, अपनी करतूतों का, अपने बुरे मामलात से बंदा डर होगा। आज दुनिया में बैठकर अनडू कर दीजिए अपनी सारी लिस्टों को ताकि कल वहां खौफजदा ना हो। और कह रहे होंगे हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा गुनाह बगैर घेरे बाकी ही नहीं छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म सितम ना करेगा। अल्लाह हमारे नामे वालों को धो दे, पाक कर दे, साफ कर दे। आगे दोबारा इबलीस की दुश्मनी, आयत 50-53, شیطان کی پیروی کرنے والوں کا برا انجام بھی ہے اور ابلیس کی دشمنی بھی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. یہ جنوں میں سے تھا, اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو, حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے. غور کیجیے, ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے. میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں, اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں. اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے ان کو پکارو, یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا. ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر ہی سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں, لیکن اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اور اس سارے برے انجام سے بچنے کا راستہ کتاب. تو لہذا آیت 54 سے 57, منکرین قرآن. قرآن کے منکر کا کیا انجام ہوگا, ان کی خط دھرمیوں کو دیکھیے. 54 سے 57, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ, ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں, لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سب معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو. دیکھیے, ایک ہی سنت ہے لوگوں کی. ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں. کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں. انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جاتا تھا ان کو مذاق بنا لیا. غیر سیریس لوگ, نان سیریس ایٹیچیوڈ. اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا اسے بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے, گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے, لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہ پائیں گے. پکاریے ہدایت سے ہدایت کے طالب دل کو. کیا واقعی ایسا تو نہیں ہے میرے ساتھ؟ تو دعا کریے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. 57 میں قلب مقنون کا تذکرہ ہے. کون ہوتا ہے وہ دل جو پردوں میں ہو, جو بھلی بات پر توجہ نہ دے اور وہ ہدایت جاپ نہیں ہے, یعنی اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے کہ گمراہ راہ راست پر آ جائیں, اور اللہ معافیاں بھی دیتا ہے کہ گناہگار توبہ کر لیں. اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے. آگے آخری حصہ شروع ہو رہا ہے پارے کا, 58-59, اللہ کی شان رحیمی کا تذکرہ بھی ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا, وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کر دے, بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے. یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا, اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی. روئنس کو دیکھنے والے عبرت پکڑیں, کیسے ہڑپا اور موجو دھوڑوں میں جا کر بھی لوگ فن اور مزہ کرتے ہیں. اب آگے سے ایک اور قصہ جس کو موسیٰ اور خضر کا قصہ کہتے ہیں. یہ تیسرا فتنہ ہے جس کو آپ علم کا فتنہ کہیں گے, اور اس پہ انشاءاللہ اگلے پارے میں بات کریں گے ہم لوگ. 60 سے 74, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ, جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں. کتنی محبت تھی موسیٰ کو علم لینے کی. آپ تو کہہ رہے ہوں گے وقت اوپر جا رہا ہے, موسیٰ نہ تھکے تو ہم کیوں تھکے. ہاں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جو آپ کا وقت اوپر لے رہی ہوں چند منٹ, کوئی بات نہیں ہے, آپ بھی معاف کر دیں, اللہ بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ. جن کو جلدی وہ چلے جایا کرے, بعد میں سن لیں, لیکن بات تو بہرحال پوری ہوگی. جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں. علم پانے کے لیے کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور دینے کے لیے بھی, خواہ مجھے سال ہر سال چلنا پڑے. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. یہ بھی شیطان کا ایک ہتھکنڈا. 100 से ज्यादा सबक लिखे हुए पड़े मेरे पास सिर्फ सूरत कहफ में से। अल्लाह करे कभी वो भी आपको देने के काबिल बन जाऊं। जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा नाश्ता दे, हमें तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी, यानी जब जरा सी डायरेक्शन बदली तो थकन भी हो गई। इसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, बल्कि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने यह कहा, यही था जिसकी तलाश में हम थे, चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापिस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास से खास रहमत अता फरमाई थी। अल्लाह हमें भी खास रहमत दे दे, हिकमतों वाली रहमत दे दे, और इसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। ये भी देखिए लदुन्नी इल्म है। इससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे इस नेक इल्म को सिखा दे जो आपको सिखाया गया। इसने कहा, आप मेरे साथ हरगिज़ सबर नहीं कर सकते। ये है इल्म की जान, सबर। इन नकलन तस्ती मैं यह सबरा, वो तालिब इल्म कभी आगे नहीं पहुंचता जो इल्म के लिए सबर नहीं कर पाता, टेम्पटेशन से अपने आप को नहीं बचाता। हाँ, साथ ही साथ रुख्सत भी देते हैं, और जिस चीज को आपने अपने इल्म में ना लिया हो इस पर आप सबर कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहि सलाम ने जवाब दिया कि इंशाल्लाह आप मुझे सबर करने वाला पाएंगे, यानी मुझे आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, और मैं आपके मामले में बिल्कुल रूल्स को फॉलो करूंगा। अल्लाह हमें भी ऐसे ही स्टूडेंट्स बना दे SJ21 के हम सारे रूल्स को खुशी से कबूल करके आगे बढ़ने वाले बन जाएं, और जो मौजूदा कोर्सेज में हम लोग हैं, हम अल्लाह करे कि उन सारे रूल्स को भी फॉलो करते रहें। इल्म का सफर बगैर रूल्स एंड रेगुलेशंस के नहीं हो पाता। फिर फरमाया, इसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज की निस्बत मुझसे मत पूछिए जब तक कि मैं खुद इसके बारे में कोई तस्करा न कर दूं, यानी उस्ताद के आगे भड़बड़ कर नहीं बोलना। फिर दोनों चले, यहां तक कि कश्ती में सवार हुए। खिजर ने इसके तख्ते तोड़ दिए। देखिए उस्ताद कैसा काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हिकमत ही नहीं समझ आती, जैसे आपको भी कई दफा नहीं समझ आ रही होती कि आप इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती वालों को डबो दें, ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खिजर ने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया था कि आप मेरे साथ सबर नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़ी, यानी सॉरी कहने लग गए। अकड़ नहीं होती ना तो इंसान खुश होता है, अकड़ होती है तो फिर तनकीद करता है। हा? क्या कहा, और मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले, यहां तक कि एक लड़के को पाया, खिजर ने उसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के इवज मार डाला, बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। अब यहां उस्ताद है मुर्दे इल्जाम और शागिर्द के दिल में है बहुत से सवाल। अल्लाह ताला आपको मुझे भी बेहतरीन तरीके से लेने देने वाला बना दे। आज इधर ही रुकेंगे। अलामा इकबाल की एक पोएम है जिसका एक ही शेर पढ़ दूं क्योंकि वक्त पहले ही ऊपर हो चुका। मीरे पाको निगाह बुलंदो मस्तीए शौक, न मालो दौलते कारून न फिक्रे अफलातून। और आपको एक लफ्ज़ नहीं समझ आया मेरे इस शेर का, मुझे ये भी पता है, इसलिए आगे क्या पढ़ू है, पढ़ दूं। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं। ये कायनात भी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमा दम सदाए कुन फया खून। पूरी इस पारे के अंदर जो मजामीन थे वो सिर्फ इन तीन अशार में आपको मिल गए। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो, हमें कारून की दौलत जमा करने से बचाए। अल्लाह हमें ऐसी चीजों से बचाए जो फलातूनी हो, और हमें नबी सल्लम के दीन पे कायम रखे। और वो मेराज जो आपको आसमानों पे मिली अल्लाह ताला हमें जमीन पे दे। सुभानक अल्लाहि व बिहम्दिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।